आइए एक क्षण के लिए हम खड़े रहें, जैसा कि अब हम अपने सिर झुकाए हुए हैं और प्रभु की ओर देखते हैं। यदि कोई निवेदन परमेश्वर को बताना है, या आप इस समय अपने हाथ को उसकी ओर उठाएंगे इस प्रकार से, और अपने हृदय पर जो आप चाहते हैं थामे रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, एक और दिन के लिए हम आपके आभारी हैं, और अब ये चिन्हित होने लगा है कि ये इतिहास होगा। इस प्रातः की सेवाएं पहले ही हो चुकी हैं, वे वचन जो कहे गए हैं हवा में हैं, टेप पर हैं, और हमें किसी दिन मिलना होगा। यह या तो सही होगा या गलत, और हम विश्वास करते हैं कि ये सही है, क्योंकि ये आपका वचन है। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप हमें जो हम निवेदन करते हैं प्रदान करेंगे। अपने उठे हुए हाथों के साथ निवेदन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारी क्या आवश्यकता है और हम क्या मांग रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें उत्तर देंगे और हमारे हृदय की इच्छा हमें प्रदान करेंगे, जो कि यदि हम इसे आपके सम्मान के लिए उपयोग करें, प्रभु इसे प्रदान करें। हमारे बीच में बीमारियों को चंगा कर दें, सारे पाप और अविश्वास हटा दें। प्रभु हमें अपना दें, फिर से अपनी आशीषों का भाग आज रात्रि। प्रभु जैसा कि हम आपके वचनों पर ध्यान करते हैं और समय जिसमें हम जी रहे हैं, पिता हम किसी और उद्देश्य से यहाँ जमा नहीं हुए हैं, परंतु ये सीखने का यत्न करते हैं कि कैसे अच्छा जीवन जिए और आपके समीप जिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वो दिन आ रहा है और हमें आप में एक दूसरे से अक्सर मिलना चाहिए और आपसे निर्देशन ले। पिता इसे ग्रहण करें यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। मैं जानता हूँ ये बहुत ही गर्म है और सारा स्थान ठसाठस भरा हुआ है जैसा कि ये है, और इसलिए हमें खेद है कि हमारे पास कोई वातानुकूल नहीं है। और मैं, हो सकता है ये होगा, दो बातें हैं जो मैं कलीसिया के लिए करना चाहता हूँ जितनी जल्दी मैं वापस जा सकता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं सभाओं में ठीक से वापस आ सका। मैं एक पियानो चाहता हूँ जो इस प्रकार से हो कि बजाने वाला भक्त मंडली की ओर देख रहा हो, और मैं एक ऑर्गन इस ओर चाहता हूँ, और एक वातानुकूलित की मशीन। तब मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे ये होगा, और इस प्रकार से हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे और ये जानते हैं कि वो हमें ये प्रदान करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया, भाई हिकर्सन ने इसे लिया है पत्रिका में से, उसने ये मेरे डेस्क पर रखा है। ये वो स्वर्गदूतों का झुंड जो उस पत्रिका में था जिसके लिए बोला गया था। देखिए पैरामिड के आकार में, देखिए इस वाले को इस ओर से नुकीले पंख अपना सीना बाहर को निकाले हुए है, इस प्रकार से मेरे सीधे हाथ की ओर, जैसा कि मैंने इस प्रचार मंच से बोला था महीनों 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 पहले। देखिए ये यहाँ पर है, और लुक पत्रिका या लाइफ पत्रिका में ये है, मई के संस्करण में, मई 17वां। मैं विश्वास करता हूँ ये ठीक है, मई 17 का संस्करण। श्रीमती वुड ने आज बता रही थी कि बहुतों ने फोन करके और मांगा है, ये मई के संस्करण में है, मई 17। ये एक भेद भरा बादल, 26 मील ऊंचा बादल और आर पार 30 मील, और यही जिसके लिए हम ये बोल रहे थे, यही जहां प्रभु के स्वर्गदूत नीचे आए और स्थान को हिला दिया, और सारा ये जोरदार आवाज। मैं जानता हूं वहां एक मनुष्य है, यदि मैं सोचता हूं भाई साउथमैन, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें देखा था यहीं कहीं, वो यहां है, वो खड़ा था, जी हाँ ठीक यहां पर, वो वहीं पास खड़ा था जब ये घटित हुआ। मैं समझता हूँ मैं उससे अधिक दूर नहीं था, मैंने बस उसे देखा और हाथ हिलाने की कोशिश की, केवल मेरे पास उनकी दूरदर्शी थी। वे जानवर जिनका हम शिकार कर रहे थे इस पहाड़ पर नहीं थे, अब ये दूसरे पहाड़ पर चले गए थे। मैंने उन्हें एक दिन पहले पाया था और उन्हें बताया कि कहाँ जाना है। मैं इधर की ओर चला गया जहाँ यदि वे वहाँ आते हैं इस ओर, मैं बस हवा में गोली चलाऊंगा और उन्हें वापस दौड़ा दूंगा ताकि वे अपने जानवर पा सकें, इसलिए वे जंगली सुअर थे। और इसलिए मैं इस ओर चला गया और वे नहीं थे, वे किसी भी ओर नहीं थे। मैंने देखा भाई फ्रेड बाहर निकल कर आए और वे वहाँ नहीं थे, वो वापस चला गया और भाई नॉर्मन पहाड़ पर चले गए, और मैं घूमा और नीचे छोटी घाटी में चला गया और ऊपर आया, बस स्वयं ही लगभग एक मील और आधा, बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह है, और मैं बैठ गया था और आसपास देख रहा था। ये दिन में ऊपर आ रहा था और मैं उन्हें निकाल रहा था, जो हम वहाँ उन्हें बकरी के गोखरू कहते हैं, ये कांटे के समान होते हैं, अपने पेंट के पांचों पर से हटा रहा था, उसी प्रकार से जो मैंने अपने आप को करते देखा था। मैं आपको दर्शन के विषय में बता रहा था लगभग 6 महीने पहले, इसके पहले कि ये घटित हुआ। मैंने कहा ये विचित्र है, देखिए कितना सिद्ध। मैं ट्यूसान के उत्तर में एक प्रकार से उत्तर पूर्व बनता है। ट्यूसान आपको याद है, मैंने कहा थोड़ा दक्षिण पश्चिम, और मैंने कहा ये विचित्र है। मैं गोखरू देख रहा था इस प्रकार से और उन्हें निकाल रहा था अपने, उनमें से बहुत से पांचों में से निकल गए थे। यदि आप वहाँ कभी नहीं गए तो ये रेगिस्तानी जगह है, ये यहाँ जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। लगभग 20 गुना चमकदार, वहाँ कोई पेड़ नहीं है जैसा ये यहाँ पर है, यहाँ बस कैक्टस और रेत। इसलिए मैं बस इसे देख रहा था। मैंने अपनी आंखें उठाई और मैं कहूँगा मुझसे लगभग आधा मील दूर मैंने जंगली सूअरों का पूरा झुंड देखा, सिरे पर से आ रहा है, जहां वे कुछ खरपतवार खा रहे थे। और मैंने सोचा अब यदि मैं भाई फ्रेड को बुला सकूं और वहां भाई नॉर्मन को, तो वो ये स्थान है। और सांझ से पहले वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पड़ाव में जोरदार थी कि वो मुझे बातें बता रहा था जो घटित हुई थी और जो घटित हो रही थी। मुझे उठकर पड़ाव से बाहर दूर जाना पड़ा और तब उस अगली प्रातः मैं वहां चला गया था और मैंने आरंभ कर दिया। मैंने कहा यदि अब मैं फ्रेड को ला सकता हूँ, मैं उसे इस पहाड़ के आसपास ले आऊँ, जो कि इधर से लगभग 1 मील होगा, जो मुझे लगभग जाना होगा, या 2 मील, और अच्छा हो उसे ले आऊँ, हो सकता है 3। यहाँ पीछे इधर जिसे हम सुअर की पीठ कहते हैं, यहाँ इस प्रकार से आता है, यहाँ चोटी पर इन टेढ़ कठिन पहाड़ों पर, और इधर की ओर नीचे चला जाता है, समतल होकर ऊपर इस दिशा में नीचे चला जाता है, और उसे ले आऊँगा। तब उसे पहाड़ की तलहटी की ओर जाना पड़ेगा कि भाई नॉर्मन को ले, जो कि लगभग 4 या 5 मील होगा, तब वापस आए। और तब मैं वहाँ क्लिनिक्स का छोटा सा टुकड़ा रखने जा रहा था, जो कि मैं वहाँ एक झाड़ी में लगाने वाला था, ताकि मैं अपना दिशा निर्देशन कर सकूं कि वापसी पर कौन सी पहाड़ी पर जाऊं। और मैं वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर आ गया जहाँ बहुत सारी उबड़ खाबड़ चट्टाने थी और दूसरी ओर हिरणों की एक पगडंडी थी, और उस दर्रे के 40-50 गज नीचे, ये लगभग था, ओ ये दिन में था, मैं कहता हूँ 8 या 9 बजे। क्या आप ऐसा कुछ सोचेंगे भाई फ्रेड, हो सकता है 9 बजे कुछ। मैं इधर की ओर भागा जल्दी से कि वे जानवर मुझे ना देख लें। आप जानते हैं वहाँ जंगली सुअर हैं और वे अच्छे डरावने हैं। इसलिए मैं इधर से होता हुआ पहाड़ पर गया और छोटा करते हुए पहाड़ की ऊपर की ओर दौड़ा, और छोटी सी पर दौड़ा, पर हम उसे क्या कहते हैं, एक कुत्ते की तेज चाल। और अचानक से सारा इलाका गूंज गया। मैंने ऐसा भयानक धमाका कभी नहीं सुना, बस हिला दिया और पत्थर लुढ़क गए, और मुझे ऐसा लगा मैं जमीन से 5 फीट ऊपर उछल गया हूँ, ऐसा लगा। इसने बस मुझे डरा दिया। सोचा ओ प्रभु, मैंने सोचा मुझे गोली लग गई कि कोई, मैंने काली टोपी पहन रखी थी, मैंने सोचा उन्होंने सोचा होगा कि कोई सुअर पहाड़ पर भाग रहा है, किसी ने मुझे गोली मार दी। ये मेरे ऊपर इतनी जोर से आवाज हुई इस तरह से, तब एकदम से किसी ने कहा ऊपर देखो, ये वहाँ पर था। तब उसने मुझे बताया ये 7 मोहरों का खुलना है, घर वापस जाओ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं भाई फ्रेड और भाई नॉर्मन से लगभग 1 घंटे बाद मिला। जब मैंने उन्हें पाया वे उत्तेजित थे और इस विषय में बातें कर रहे थे, ये यही है। और विज्ञान कहता है किसी भी प्रकार से ये असंभव है कि धुंध या कोई चीज, कोहरा या भाप इतने ऊंचे पड़ जाए, समझे, ये केवल जाएगा, बस मैं नहीं जान पाऊंगा। मैं जब हम समुद्र पार जाते हैं, हम 9000 फीट पर यात्रा करते हैं, ये तूफानों से ऊपर है, ये लगभग 4 मील है, और कहते हैं चलिए माने 15 मील, यहाँ तक आप कोई भाप नहीं पाते, परंतु ये 26 मील है, और ये वहाँ पूरे दिन रहा, समझे। वे नहीं जानते कि ये क्या है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो हमें मालूम है। धन्यवाद भाई हिकरसन, मैं इसे वहाँ अपनी मेज पर रखूँगा, और जब हम पुस्तक लिखते हैं क्यों, तब हम इसे ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास छोटी सी टिप्पणी है, मुझे दी गई थी, मैं विश्वास करता हूँ हमारी गिनती में बढ़ोतरी हुई है जब से मैं पिछली बार यहाँ था। मैं सोचता हूँ उसका नाम है, ये कम से कम उसके पिता का नाम डेविड वेस्ट है, और एक छोटा जन यहाँ है जिसे वे प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं, क्या ठीक बात है, या आज रात्रि था या बुधवार रात्रि, मैं नहीं जानता, इसके पास आज रात्रि, ये अच्छा है। अच्छा उस विषय में क्या है, आप डेविड हैं क्या, आप हैं, मैंने यही सोचा कि आप हैं, ठीक है। उस छोटे बालक को लाने के विषय में क्या है, यदि हमारी बहन यहाँ पियानो पर आ जाए और वो गाना उन्हें अंदर लाओ, पास्टर यदि वे यहाँ पर आए और हम इस लड़के को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अब हम इसे वचन में रखने का यत्न करेंगे। भाई वेस्ट, ये आपका पोता है, ऐसा लगता नहीं है, क्या है बहन वेस्ट? आप इस विषय में क्या सोचती हैं? क्या नहीं, आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ यद्यपि आप जानते हैं मैं भी दादा हूँ। इससे मुझे भाई देमा शिकेरियन की याद आती है। वो लोगों की बहुत बड़ी भीड़ के सामने खड़ा था। वो बहुत सी बातों में मेरे समान गड़बड़ा जाता है, आप जानते हैं। वो वहाँ खड़ा था, उसने कहा, आप जानते हैं, कहा मैंने रोज को बताया मुझे लगता है कि वो उसकी पत्नी है। कहा अपने आप को बूढ़ा अनुभव करता हूँ जब से मैं दादी बना। उसने कहा नहीं, मेरा मतलब दादा। आप जानते हैं मैं भाई वेस्ट, आप अकेले नहीं हैं, यहाँ बहुत सारे हैं और ये ठीक है। मैं सोचता हूँ हम वास्तव में अपने पोते पोतियों की सराहना करते हैं, नहीं क्या? आशा करता हूँ ये सुनने में बुरा नहीं लगता, परंतु हम उनके साथ अधिक समय बिता सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, जितना हमने अपने बच्चों के साथ बिताया। उस दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, कहा निश्चय ही तुम उन्हें थोड़ी देर ही प्रेम करती हो और वापस उनकी माँ को दे देती हो और चलता रहता है। भाई मेरे पास एक छोटा पोता है, उसने कहा पापा प्रचार, पापा प्रचार। और बीते रविवार रात्रि उन्होंने भेंट ली और उसे मेज पर रख दिया। वे उसे अंदर लाए वहाँ पीछे और उसने मुझे माइक पर से सुना। उसने कहा पापा प्रचार करते हैं, पापा प्रचार करते हैं। और बिली ने कहा हाँ वहाँ पर। उसने कहा नहीं, और चंदा सारे फर्श पर बिखर गया और वो यहाँ पर आना चाहता था, आप जानते हैं। वो हमेशा मुझे देखकर शोर करता है, जानता है मुझे किसी भी बेदारी में देखता है वो चिल्लाता है पापा प्रचार करते हैं, जोर से चिल्लाता है, इसलिए मैं जानता हूँ वे सुंदर हैं। कहूँ मुझे अचरज हो यदि इनमें से कुछ बाल मुझे उधार मिल जाएं, उसे इस समय इसकी जरूरत नहीं है, मुझे है। इसका क्या नाम है? डेविड जोनाथन। क्या ये सुंदर नाम नहीं है? अच्छा, मैं आशा करता हूँ उसका जीवन उसके समान हो जिस पर उसका नाम आता है। डेविड, राजा दाऊद, कौन मसीह को उसके सिंहासन पर बैठना है और जोनाथन को भी। प्रिय मित्र, मैं आपको बताता हूँ, वे छोटे प्यारे बच्चे हैं, हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। मैं वो जाग रहा है और वो सकता है, वो आमीन का शोर मचा सकता है उतनी ही अच्छी तरह जितने बाकी आप जानते हैं। इससे हमें कोई परेशानी होने वाले नहीं, हम उसे प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा है कि युवा जोड़ा जिनकी देखभाल में इस छोटे बालक को रखा है इस प्रकार से और उसे प्रभु को देने के लिए आए हैं। और जब आप ये करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप नहीं, कि आप परमेश्वर को वापस दे रहे हैं वो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर उसे आशीष दे। अब यदि आप इसे पकड़ना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ माँ इसे अच्छी तरह ले सकती है बजाय मेरे। और हमारे लिए कैसे हैं? उसके ऊपर अपना हाथ रखना, बल्कि क्या आप ये करेंगे? क्योंकि मैं डरता हूँ कि मैं गिरा ना दूँ या उसे गिराऊ ना, तोड़ ताड़ दूँ कुछ, और आप जानते हैं। और मैं सदा डरता हूँ कि उन्हें तोड़ मरो ना दूँ, आप जानते हैं। ओ, मैडा ने वहाँ पीछे कहा, मैं सोचता हूँ प्रचार मंच पर ये एक काम है, वो एक प्रकार से मुझसे प्रसन्न नहीं, आप जानते हैं, वो उठाना पसंद करती है। ठीक है, इधर देखिए, वो मेरी ओर देखने जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। जी हाँ श्रीमान, मुझे अचरज होगा यदि मैं इसे पकड़ सकूं। ओ बहन, नहीं, मैं आशा करता हूँ वो गिरेगा नहीं। ये क्या ये सुंदर नहीं? सुंदर है। आप कैसे हैं? अच्छा, अब ये प्यारा है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु बहुत वर्षों पहले जब मसीहत मनुष्य के रूप में जन्मी, मसीह कहलाई, वो अभिषेक मसीह यीशु उसका नाम था। लोग अपने छोटे छोटे बालकों को उसके पास लाए ताकि वो अपने हाथ उन पर रखे और उन्हें आशीष दे। और उसने कहा छोटे बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ये छोटा प्यारा जोड़ा, इनके दादा दादी और वे वचन के सच्चे मानने वाले रहे हैं। प्रभु यीशु, मैं लाता हूँ और आपको पकड़ाता हूँ आज रात्रि, वो पास्टर और मैं, ये छोटा प्यारा डेविड जोनाथन वेस्ट, मैं इसे माता पिता से लेकर आपको देता हूँ, प्रभु स्वस्थ शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर के सम्मान के लिए लंबा जीवन जो इसे इस संसार में लाए हैं। होने पाए परमेश्वर की आशीषें इन पर आए, होने पाए पवित्र आत्मा बालक पर आए। यदि कल का दिन है तो वो इस सुसमाचार को ले चले जो उसके माता पिता और दादा दादी आज इतने आनंदित हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। अब यीशु मसीह के नाम में मैं ये बालक आपको देता हूँ, उसके जीवन के समर्पण में, आमीन। मैं सोचता हूँ कि वे इसका चित्र उतारना चाहते हैं, इस छोटे बालक का। मैं भी उछला। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे, होने पाए आप सदा प्रभु यीशु से प्रेम और हृदय में संजोए रखें, और ये छोटा बालक परमेश्वर की चेतावनी में बढ़ता जाए और एक अच्छा छोटा लड़का हो। मैं निश्चित हूँ परमेश्वर आपके संग है। मैं समझता हूँ कि उसने अपनी चुस्नी गिरा दी है, उन्हें मिल गई। ओ, अब आइए उस छोटे गाने को गाते हैं, उन्हें अंदर लाओ। अब हर कोई एक साथ मिलकर इस छोटे बालक के लिए, ठीक है बहन? उन्हें अंदर लाओ, उन्हें अंदर लाओ, उन छोटे वालों को यीशु के पास। मुझे इससे अच्छे हाथ नहीं मालूम कि जिनको मैं दूं, क्या आप प्रभु यीशु के हाथ? अब मैं जानता हूं यहां गर्म है। मैं ये जेनिटर अपने भाई डॉग से कहना चाहता हूं, या वे दूसरे जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, कुछ बहनें अपनी स्कर्ट खराब कर रही हैं उस चिकनाई से जो कि उनकी कुर्सी पर है। उनमें से कितनों के ऊपर ये लग गया है, मैं जानता हूं। वहां मेरी पत्नी है, मेरी दो पुत्रियां हैं, छोटी बेटी कॉलिंस, श्रीमती बीलर, उनमें से कुछ, ये वहाँ पर कुछ चिकनाई है, यदि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, डॉक, तुम जब ये कर सको, मैं विश्वास करता हूँ ये वहाँ जहाँ वे ये चिकनाई या रंग या कुछ और, ठीक वहीं जहाँ उन्होंने काम किया कुर्सियों पर, और ये नहीं है, मुझे नहीं पता वो क्या है। फिर कुछ जो मुझे बताया गया और मैंने कहा इसे डॉक को बता दूंगा, ठीक है। अब बुधवार रात्रि प्रार्थना सभा है, क्या कोई और जिसकी आपने घोषणा की है? आपके पास अपनी घोषणाएं हैं भाई नेविल, इसी में सारी घोषणाएं हैं। अब यदि प्रभु ने चाहा, अगले रविवार प्रातः मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, इस पीढ़ी पर मसीह को क्रूस चढ़ाने का दोष। आप कहते हैं ये पीढ़ी ऐसा नहीं कर सकती, मैं देखूंगा कि उन्होंने ये किया है या नहीं वचन के अनुसार। अब अगली रविवार प्रातः यदि प्रभु चाहेगा, यदि कुछ घटित हुआ है, इस सप्ताह मुझे हॉस्टल में होना है और बेदारी सभा में भी, जो मुझे रविवार को लेना है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं लेने योग्य होऊंगा या नहीं, परंतु हमारे पास कुछ और रविवार हैं कि इस पर रहें, इसके पहले जो भी है, तब हम बेदारी के लिए शिकागो जाएंगे या शिकागो की सभा में इस महीने के अंतिम सप्ताह में, और फिर मुझे परिवार को वापस एरिजोना ले जाना है, उनकी छुट्टियां पूरी हो गई हैं और बच्चों को वापस विद्यालय को जाना है। अब कितने वचन के पढ़ने में आनंद लेते हैं और प्रभु की आशीष है, हम सब इसे अच्छी तरह करते हैं। अब ये गर्म है और मैं जानता हूँ आप में से कुछ को आज रात्रि घर वापस जाना है। मैं जानता हूँ भाई रॉडनी और चार्ली, वे लंबी यात्राओं पर गाड़ी चलानी है। एक मिनट रुकिए, आप छुट्टियों पर हैं क्या? नहीं भाई, मैंने सुना है आप मछली पकड़ने जाने वाले हैं। प्रभु मनुष्य के लिए समय नहीं ठहराता जब वो मछली पकड़ रहा है। मछली पकड़ते समय आप बूढ़े नहीं होते, इसलिए अब आप लड़कियों उनके साथ जाएं, समझे, और मैं आऊंगा और आपके साथ हो जाऊंगा यदि मैं कर सका। और आप जानते हैं वो भला प्रभु, उन्होंने कहा व्यक्ति के लिए समय नहीं ठहराओ जब वो मछली पकड़ने गया है, बहुत कुछ करो। जब आप सताव अनुभव करें, सबसे अच्छी बात है कि विश्राम करें, जो कि मैंने कभी अपने जीवन में पाया है कि मछली पकड़ने जाऊं। एक बार श्री ट्राउट के पास से मुझे एक कार्ड आया, किसी को कभी श्री ट्राउट मैन की याद है? न्यू एल्बनी की बर्फ की कंपनी, वहां उनके पास एक छोटा कार्ड था जिस पर लिखा था मछली पकड़ने गया है, और कहते हुए आगे बढ़ गए, एक मनुष्य जिसके पास, हर व्यक्ति, उसका भाई बाहर मछली पकड़ने को एक सहायक के साथ, वे हमेशा बाहर मछली पकड़ने जाएंगे। उनके पास 8-10 विभिन्न चीजें थी, तब जब वो नीचे तलहटी में पहुंच जाता है, कहा मनुष्य परमेश्वर के समीप होता है जब वो बाहर मछली पकड़ने पर होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ ये लगभग ठीक है। मछली पकड़ने में धनी और निर्धन सब एक से हैं, समझे, एक मददगार, वो सदा बाहर मछली पकड़ने पर होगा, और हर चीज लगभग बाहर मछली पकड़ने को। भाई मैं आपको दूसरी मछली पकड़ना बताता हूँ जो मैं लगभग पिछले 33 वर्षों से कर रहा हूँ, मनुष्य के प्राणों को पकड़ रहा हूँ, जीतने में प्रभु हमारी सहायता करे, हर कोई जिसे हम ढूंढ सकते हैं। अब आज रात्रि ये टेप हो रहा है, अब इस प्रातः है, यदि जिम यहाँ पर है या टेप हो रहा है, मैं सोचता हूँ टेप पर किसी ने मेरा ध्यान खींचा है। मैंने कहा दूसरा निर्गमन, मेरा मतलब दूसरा नहीं, ये तीसरा निर्गमन है। पवित्र आत्मा अग्नि स्तंभ के रूप में परमेश्वर प्रगटीकरण में नीचे आ रहा है, पहला निर्गमन लाया और पीछे इसराइल को मिस्र से बाहर लाया, दूसरा निर्गमन मसीह कलीसिया को यहूदीवाद से निकाल कर लाया और तीसरा निर्गमन वो जब है जब वही अग्नि स्तंभ दुल्हन को कलीसिया में से लेता है, समझे, स्वाभाविक से, आत्मिक में से, आत्मिक में से आत्मिक, बल्कि कलीसिया में से आत्मिक। तब हमें तीन मिलते हैं, इसके तीन युग। अब आज रात्रि मैं दूसरा टेप बनाना चाहता हूँ जो कि कहलाता है क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है। संभवतः अधिक लंबा नहीं होगा। अच्छा, कुछ पवित्र लेख और टिप्पणियां यहाँ मेरे पास हैं, परंतु पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। इसके पहले हम ये करें, अब एक क्षण के लिए अपने हृदयों को उसके सामने झुकाएं। प्रभु यीशु, स्वाभाविक रूप से कोई पुरुष या स्त्री या बालक बाइबल के पन्नों को पीछे पलट सकता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो इसे प्रकट करे सिवाय आपके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस पाठ को लेते हुए जैसे ये मेरे हृदय पर है कि इसे पूरे राष्ट्र में भेजूं लोगों के लिए, ताकि वे जान सकें कि उनके लिए किस प्रकार के जीवन की आवश्यकता है कि वे जिए। क्योंकि बहुतों ने मुझसे पूछा है क्या मसीही जीवन कलीसियाई सभा का जीवन है, क्या ये निर्धनों और जरूरतमंदों की सहायता है, या ये निरंतर सदस्यता का जीवन है, क्या ये कलीसिया के साथ ईमानदारी का जीवन है, इस प्रकार के प्रश्न। पिता, होने पाए आज रात्रि सही उत्तर इन वचनों के द्वारा आए, जैसा कि हम प्रोत्साहित करते हैं कि इन्हें लोगों तक लाएं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अब अपनी बाइबलों में निकालें संत लूका की पुस्तक और हम 14वें अध्याय के 16वें पद से आरंभ करेंगे। आधार भूमिका के लिए कुछ पवित्र वचन पढ़ेंगे। इसके लिए 30-40 मिनट के भाग के लिए यत्न करने जा रहे हैं। अब 16वां पद 14वें अध्याय का संत लूका का। तब उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को आकर सारी बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, ध्यान दे, ये दासों नहीं, दास है। नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जा, कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। और दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। क्या आपने ध्यान दिया, वहाँ 3 खिंचाव थे या इसके 3 मोड़। जब वे बाहर गए पहले और उन्हें बुलाया जो थे, या आने के लिए निमंत्रण दिया और वे नहीं आए। इस प्रकार वहाँ चंगाई अभियान के लिए बाहर निकले, अंधे और अपाहिजों को लेने गए, और फिर भी वहाँ जगह थी, इसलिए वो वहाँ गया, अच्छे बुरे विभिन्न लोगों को बाध्य किया कि उन्हें भीतर आना चाहिए। अब आप इसका दूसरा दृष्टांत पढ़ते हैं, कुछ इसी के क्रम में, मत्ती 22:1-10, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं बाद में। परंतु मैंने ये विषय वहीं से लिया है, क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है। अब यहाँ यीशु यहाँ कह रहा है, मनुष्य ने सदा बहाने बनाने की कोशिश की है कि उसके निमंत्रण पर परमेश्वर के वचन को स्वीकार न करे। यद्यपि ये दृढ़ता से उन पर सिद्ध कर दिया गया है कि ये ये उसका भोज है और उसका निमंत्रण है, परंतु मनुष्य निरंतर बहाने बना रहा है। और यदि आप संत मत्ती 22 को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ भी बहाने बनाए गए और उन्होंने कोशिश की। ये सारे युगों में हुआ, ये पिछले युग में हुआ, और एक मनुष्य से उन्हें बुलाने को कहा और उसके पास दाख की बारी थी, और हम उस दृष्टांत को पाते हैं और कैसे उसने अपने दासों को दाख की बारी से इकट्ठा करने को भेजा। पहला दास आया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे भगा दिया। अगला दास आया, उसे भी पथरवा किया, और उन्होंने एक के बाद एक दासों को भगा दिया, क्रूर लोग। तब अंत में राजा ने अपने पुत्र को भेजा, और जब उसका पुत्र आया, हम पाते हैं कि उन्होंने कहा, ये तो वारिस है, हम इसे मार डालेंगे, तब हम ये सब ले लेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, राजा ने भेजकर उन हत्यारों को मार डाला और उनके नगरों को जला डाला। अब हम देखते हैं जब परमेश्वर ने एक मनुष्य को निमंत्रण दिया और कुछ करने के लिए, या उसे निमंत्रण स्वीकार करने को जो उसने उसे दिया और उसने ये वापस कर दिया, तब कुछ ना रहा सिवाय न्याय के, जब अनुग्रह को ठुकरा दिया गया। यदि आप अनुग्रह की सीमा को लांघ जाते हैं, तब केवल एक चीज बचती है और वो न्याय। और हम पाते हैं मनुष्य ने ये सारे युगों में किया है। बाइबल में ये अधिकांश हर युग में हुआ है। जब परमेश्वर ने नूह को भेजा अपने दास को, और बच निकलने का मार्ग बनाया सारे लोगों के लिए जो चाहते थे कि बच जाएं, परंतु लोगों ने केवल नूह की हंसी उड़ाई और तिरस्कार किया। परंतु परमेश्वर ने मार्ग बनाया, परंतु उनके पास बहाने थे। ये उनके आधुनिक विचार से नहीं था, ये नहीं, ये उस प्रकार से नहीं था जैसा वे चाहते थे। इसलिए उन्होंने नूह के दिनों में बहाने बनाए, उन्होंने मूसा के दिनों में बहाने बनाए, उन्होंने एलिया के दिनों में बहाने बनाए, उन्होंने मसीह के दिनों में बहाने बनाए, और वे आज बहाने बनाते हैं। अब वो इसराइल से सीधे सीधे बात कर रहा है, वे जो भोज में बुलाए गए थे, जिसे मैं आज के लोगों पर लागू करूंगा, कलीसिया जिनसे भोज में आने के लिए निवेदन किया गया, और ये नहीं करेंगे प्रभु का आत्मिक भोज, और वे ये नहीं करेंगे, वे ये नहीं करना चाहते। उनके पास करने के लिए दूसरी चीजें हैं, उन्होंने बहाने ढूंढे। अब यदि इसराइल ने 2000 वर्षों पहले निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता जो उन्हें दिया गया, वे ऐसे ना होते जैसे वे आज हैं। 2000 वर्षों पहले इसराइल ने निमंत्रण ठुकरा दिया कि विवाह के भोज में आए, उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया और न्याय में चले गए। परंतु यीशु ने कहा, उन्होंने भविष्यवक्ताओं को पथरवा किया और मार डाला, जिन्हें उनके पास भेजा गया बहाने बनाने के द्वारा। अब वे हर दिन बहाने बनाते हैं। हम पाते हैं कि यीशु के दिनों में वो उनमें से किसी से संबद्ध नहीं था। उन्होंने कहा, इस मनुष्य ने ये सब कब सीखा? ये कौन से विद्यालय से है? क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माँ मरियम नहीं कहलाती? क्या इसके भाई योसेस, याकूब इत्यादि नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे साथ नहीं हैं? तो फिर इस मनुष्य को ये अधिकार कहाँ से मिल गया है कि ये करे? समझे, दूसरे शब्दों में वो उनसे संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, ये बाल जबूब है, ये एक सामरी है, उसमें शैतान है और वो पागल है। वो है, वो एक, ये वो मनुष्य है जिसमें दुष्ट आत्मा है, धर्म पंक्ति में वो पागल हो गया है, और यही है जो उस जंगली मनुष्य के समान है, उस पर ध्यान न दें। और हम जानते हैं कि इसराइल का क्या हुआ, और वे चिल्लाए, और वे अपने में बहुत ही निश्चित थे कि वो मनुष्य गलत था, जब तक उन्होंने उसे दोषी ना ठहरा दिया। उसने कहा उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, और ये तब से यही है। यीशु उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था, उनके बहाने ही थे जिनसे भविष्यद्वक्ता मार डाले गए और जिससे जो आने वाले धर्मी मार डाले गए, उन्होंने अपने मत्सर स्वीकार किए जो मनुष्यों के द्वारा दिए गए थे, बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन लेते और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रभाव रहित कर दिया। अब या तो आपको ये कहना होगा इसमें कि ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की मंशा, या कुछ और जो आप छांट सकते हैं और जो इससे अधिक अच्छा है। अब आपको या ये वो लेना है। आप परमेश्वर और शैतान की सेवा नहीं कर सकते, और आपको ये कहना ही पड़ेगा यही सत्य है, या ये सत्य का भाग है, या ये सारा सत्य नहीं है, ये कुल मिलाकर ठीक नहीं है, या इसका अनुवाद सही नहीं है। और बाइबल ने कहा परमेश्वर के वचन का कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है, किसी को अपना व्यक्तिगत अनुवाद नहीं करना है। ये उसी प्रकार लिखा है जैसा परमेश्वर ने अनुवाद करना चाहा है। ये जो कहता है यही जो होना चाहिए, इसे वैसा ही लें जिस प्रकार इसने कहा, जिस प्रकार से ये यहाँ लिखा है। अब वे अपने मत्सार को स्वीकार करते हैं, वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने लिए प्रभाव रहित बनाते हैं, वे इसे छोड़ जाते हैं, वे इससे अलग चले जाएंगे। अब यदि रूस ने पेंतिकोस्तल आशीष को स्वीकार किया होता 75 वर्षों पहले जब पवित्र आत्मा रूस में उतरा था, तो वे आज साम्यवादी नहीं होते। अब 75 वर्षों पहले वहाँ रूस में एक महान बेदारी थी, परमेश्वर उनके बीच में आया और उनमें एक महान बेदारी थी वहाँ साइबेरिया में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। और आज राष्ट्र बेकार हो गया और कलीसियाएं आराधना नहीं कर सकती केवल अनुमति से, और वे न्याय में नाश हो गए और साम्यवाद की इस असभ्य जलजलाहट में चले गए, शैतान के लिए बिक गए। 50 वर्षों पहले पवित्र आत्मा इंग्लैंड में उतरा, ठीक उसके बाद जॉर्ज जेफरी आया और एफ बोसवर्थ और चार्ल्स प्राइस स्मिथ विगलवर्थ, वे विश्वास के महान योद्धा 50 वर्षों पहले, और इंग्लैंड को पवित्र आत्मा की बेदारी दी। परंतु उन्होंने क्या किया, वे उन पर हंसे, उन्हें जेल में डाल दिया, उन्हें पागल कहा, सोचा कि उनका चित्त ठिकाने नहीं है। कलीसियाओं ने लोगों को आकर उनकी सुनने से मना कर दिया, उन्होंने बीमारों को चंगा किया और प्रेत आत्माएं निकाली और महान कार्य किए। और क्योंकि इंग्लैंड ने एक राष्ट्र के समान सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया और उनके पाप समस्त संसार में जाने गए, बड़ी कठिनता से सारे संसार में कोई स्वधर्म त्यागी राष्ट्र है, यहाँ तक कि रोम और फ्रांस को मिलाकर, तब इंग्लैंड वो स्वधर्म त्याग की माँ है, जहाँ फिनी और बहुत से महान पुरुषों ने प्रचार किया, हे मार्केट बाजार में, और चार्ल्स जी फिनी और वेस्ली और दूसरे, और इसने इसे अस्वीकार कर दिया। और अब यहाँ तक कि पिछले सप्ताह या दो अखबारों में पाया जहाँ उनके महान पुरुष इतने निर्बल कि महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए जब तक कि जासूस अंदर नहीं आ गए, और उनके अध्यक्ष और दूसरे और पत्रिकाओं ने इसे प्रकाशित किया, उनकी बुराइयों के पाप ठीक उनकी सरकार में, और उनकी बदनामी पूरे संसार में हुई। क्यों? उसने सत्य का इनकार कर दिया, उसके अपने बहाने थे और वो समाप्त हो गए। इंग्लैंड बहुत पहले परमेश्वर की संगति से साफ हो गया। यदि अमेरिका 15 वर्षों पहले जब महान चंगाई बेदारी पेंटिकोस्टल से निरंतर सारे राष्ट्र में निरंतर चलती रही, और वहां राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बेदारी थी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महान लोग गवर्नर महान बातें हुई गवर्नर्स आदि और लोग चंगे हुए, जैसे कांग्रेस का अपशव 66 वर्षों से अपाहिज था और वे अपना मुंह न घुमा सके और कहते ये ऐसा नहीं था, ये ठीक उनके सामने था, परंतु उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया। और आज रात्रि यही कारण है कि ये राष्ट्र टिका हुआ है, ये नष्ट हो गया, इसके लिए कोई आशा नहीं, इसने न्याय और अनुग्रह के बीच की रेखा को पार कर दिए, और वो उसमें से चुनी गई जो उसके पास है कि राष्ट्र को नियंत्रित रखे, और वो जड़ से ही सड़ गई। उसकी राजनीति सड़ी हुई है। इस संसार का आचरण किसी भी चीज से नीचा है जो मैं सोच सकता हूँ, और उसकी धार्मिक व्यवस्था आचरण से भी अधिक सड़ी हुई है। वो ऐसा करने में हो गई। उसने अपने आप को इन सारी कलीसियाओं में सम्मिलित कर लिया है, और राष्ट्र से कलीसियाओं के संघ में, और पशु की छाप ले ली है। क्या ही बात है। क्यों? मसीह ने उन्हें सुअवसर दिया, मेरे भोज में आ जाओ, पेंतिकोस्त के उत्सव में, जिसका अर्थ है 50। जब पवित्र आत्मा रूस पर उंडेला गया, उन्हें पेंतिकोस्तल के उत्सव में बुलाया गया, आत्मिक उत्सव, और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इंग्लैंड, पवित्र आत्मा इन पर उंडेला गया और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। अमेरिका, पवित्र आत्मा इस पर उंडेला गया और इसने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने तीन बार बुलाया, तीन बार उसने भेजा, और उन्होंने उत्सव की बात नहीं सुनी। तब उसने फिर से भेजा और उसने कहा, जाकर उन लोगों को बरबस करके ले आओ, मेज बिल्कुल तैयार है, मेज तैयार है, अब भी जगह है। और मैं विश्वास करता हूँ, हो सकता है अगले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों या ये जो भी है, परमेश्वर एक और राष्ट्र को हिलाने की बेदारी भेजने वाला है, क्योंकि वहाँ बाहर अब भी कहीं कोई है जो पहले से ठहराया हुआ बीज है, जिस पर ज्योति चमकनी है। कहीं कहीं संसार में राष्ट्र स्वयं में समाप्त हो गया। मैं इस लाइफ पत्रिका में देख रहा था, वहाँ नीचे लिटिल रॉक में उस दिन, या बल्कि हॉट स्प्रिंग्स, और मैंने वहाँ देखा, मैं विश्वास करता हूँ कि ये न्यूयॉर्क प्रांत का गवर्नर था, जो एक प्रकार से एक नंगी लड़की के साथ होनालुलु में नाच रहा था। अब और यहाँ उसके नीचे एक दूसरा विख्यात पुरुष था। ओ, क्या ही लज्जाजनक है। आज हमारे राष्ट्र को देखो, हमारे राष्ट्र की स्थिति को देखो। देखिए वो कहाँ चले गए, कितने नीचे धस गए हैं। आज हमारी धार्मिक व्यवस्था को देखें, किस प्रकार से ये कलीसियाएं इस स्थिति में कभी पहुंच सकती थीं जो वे आज हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार और मना कर दिया है, उस उत्सव के निमंत्रण को। क्या आप ऐसे जीवन को सुसमाचार के योग्य कह सकते हैं? क्या आप ऐसे जीवन को कह सकते हैं जो तय और अनुमति दे सके अपने अपने लोगों को ये चीजें करने के लिए कि धूम्रपान करें? उस दिन वहाँ कोई विशेष कलीसिया, एक छोटा संगठन झुंड वहाँ पार्क में खेल रहा था, और मेरा बहनोई का छोटा लड़का उनमें से एक पक्ष के लिए गेंद फेंक रहा था, और इस प्रकार से वो वहाँ उनके लिए गेंद दे रहा था, और वहाँ वो कलीसिया का संगठन खेल रहा था, और वहाँ एक पास्टर था, इन छोटे छोटे लड़कों के साथ वहाँ मैदान में खेल रहा था, और पास्टर सिगरेट के बाद सिगरेट फूंक रहा था, ठीक यहाँ पड़ोस की कलीसिया हमारे पास का। क्या आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं? और यहाँ तक कि भक्त मंडली के लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात पर ध्यान दिया, परंतु ये इस प्रकार से था, यहाँ तक कि उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक विशेष बड़ी कलीसिया, एक बैप्टिस्ट कलीसिया जिसे मैं जानता हूँ, चलिए कलीसिया के लोग संडे स्कूल से 15 मिनट अधिक, ताकि वो पास्टर और वे सारे के सारे बाहर खड़े होकर और धूम्रपान करें, इसके पहले कि वे वापस अंदर आकर प्रभु की सेवा करें। जॉन स्मिथ, उस कलीसिया का संस्थापक, इतनी जोर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर ने एक बेदारी भेजी, जब तक कि उसकी सूझ कर बंद नहीं हो गई रात में, और उसकी पत्नी उसे हाथ पकड़कर खाने की मेज पर ले गई और चम्मच से खाना खिलाया। यदि वो मनुष्य अपनी कब्र में करवटे लेगा, यदि उसे मालूम पड़ जाए कि कलीसिया ऐसी स्थिति में है, ये क्या है? उन्हें आने की दावत दी और उन्होंने मना कर दिया, केवल यही बात है। और आपको याद है, यहाँ यीशु ने कहा, वे जो बुलाए गए थे और मना कर दिया, वे उसके भोज को ना चखेंगे। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजता है और मनुष्य के द्वार पर खटखटाता है और वो जानबूझकर मना कर देता है, कभी कभी वो अपने लिए अंतिम बार मना करता है, और तब आप एक चरित्र सौभाग्यशाली ना होगा। आप कलीसिया में बैठ सकते हैं और सुसमाचार सुनते हैं और सुसमाचार के साथ सहमत होते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसा कि कहते हैं, मैं जानता हूं, ये सही है, परंतु इस पर कभी भी उंगली नहीं लगाते कि इसमें सहायता करें अपने आप से, समझे? आप बस ये सुनते हैं क्योंकि आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं कि ये सही है, ये बस इसके साथ एक सहानुभूति है। मैं कह सकते हैं मैं विश्वास करता हूं कि ये $10,000 है, इसका ये अर्थ नहीं कि ये मुझे मिल गए हैं, समझे? मैं कह सकता हूं ये अच्छा ठंडा पानी है, परंतु पीने को मना कर दें, आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है, और ये अनंत जीवन है और इसे करने के लिए मना करते हैं। एक दिन आप न्याय और अनुग्रह की रेखा को पार कर जाएंगे और तब आपको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा कि आकर इसे स्वीकार कर लें। आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ जो या दूसरे सेवक बोल रहे हैं, परंतु यदि ये सही है तो आपको जीवन के लिए आभारी होना चाहिए। इससे अधिक आप कभी क्या पा सकते हैं जो आपके लिए इससे अधिक लाभकारी होगा, तब ये जानते हुए कि आपको अनंत जीवन मिल सकता है। क्या हो यदि मैं यहाँ एक कैप्सूल दे रहा होता जो वैज्ञानिक रीति से सिद्ध किया हुआ हो, वैज्ञानिक रीति से सिद्ध हो कि इससे आप 1,000 वर्षों का जीवन जी सकते हैं? भाई मुझे यहाँ एक नागरिक सेना लेनी पड़ेगी और उस झंड को इस स्थान से हटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको वेदी पर बुलाना नहीं होगा, आपको भगाना होगा इससे कि 1,000 वर्षों के लिए जिएं। और फिर भी वैज्ञानिक रीति से सिद्ध हो गया कि अनंत परमेश्वर उसकी सारी सामर्थ्य पुनरुत्थान के लिए जो आपसे अनंत जीवन के लिए प्रतिज्ञा करती है, और शैतान वहाँ अपनी सेना रखेगा और आपको इससे अलग करता है, समझे? फिर भी आप देख सकते हैं और इतनी समझ रखते हैं कि उसकी मुख को ताकें और देखते हैं कि ये सही है, परंतु फिर भी आप इसे अस्वीकार कर दें, समझे? कुछ किसी प्रकार का बहाना, ये बहुत गर्म है, मैं थका हुआ भी हूँ, मैं कल करूँगा, बस एक प्रकार का बहाना कुल मिलाकर वे करते हैं। उस मुलाकात के दिन को अस्वीकार करने के द्वारा ये आपको परमेश्वर से अलग करता है। अब हम ध्यान करते हैं और पुराने नियम में उनके पास एक जुबली वर्ष कहलाता था, ये जब सारे लोग जो गुलाम थे जुबली की आवाज पर स्वतंत्र होकर जा सकते थे, और फिर यदि कोई मनुष्य नहीं जाता, यदि वहाँ उसके पास कोई बहाना हो जो वो कर सकता था कि वो अपने देश को नहीं लौटना चाहता, तो उसके कान में एक चिन्ह कर दिया जाता था सुतारी से मंदिर की चौखट पर, और फिर कोई मतलब नहीं कितनी जुबलियाँ आती हैं, वो मनुष्य बिक गया, वो अब कभी भी इज़राइल के नागरिक के समान वापस आ सकेगा? अब नहीं। उसने क्या किया? उसने अपना निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, अब उसे कोई भुगतान नहीं किया, कुछ नहीं, उसकी गुलामी का कर्जा समाप्त हो गया था, उसका परिवार स्वतंत्र था, वो वापस अपने देश को जा सकता था और अपनी संपत्ति को लेता, परंतु यदि वो इसे करने के लिए मना कर दे, तब उसका इज़राइल में कोई भाग नहीं और उसकी संपत्ति दूसरे को दे दी गई। अब यही चीज स्वाभाविक से आत्मिक में लागू होती है कि हम जो अनंत जीवन के वारिस हैं और हम सुसमाचार सुनते हैं और जानते हैं कि ये सत्य है और हम इसे अस्वीकार करते हैं और इसे करने के लिए मना करते हैं या इसे सुनने से हम पशु की छाप को लेते हैं। अब ये किसी ने कहा, अब ये पशु की छाप होने जा रही है, ये किसी दिन आने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये पहले ही आ चुका है, समझे? जैसे ही पवित्र आत्मा उतरना आरंभ हुआ, पशु की छाप लगना आरंभ हो गई, समझे? आपके पास केवल दो चीजें हैं, उनमें से एक की इसे स्वीकार करें, परमेश्वर की मोहर को लें, इसे अस्वीकार करना पशु की छाप को लेना, परमेश्वर की मोहर को अस्वीकार करना पशु की छाप लेना है। हर कोई इसे समझता है, परमेश्वर की मोहर को अस्वीकार करना पशु की छाप लेना है, क्योंकि बाइबल ने कहा वे सब जिन पर परमेश्वर की मोहर नहीं लगी थी पशु की छाप ली। जब तुरही बज गई और सारे जो जाना चाहते थे जा सकते थे, वे जो नहीं उन पर चिन्ह लगाया गया। अब आप देखते हैं पशु की छाप, यदि हम इसके विषय में भविष्य में बातें करते हैं, जब ये प्रकट होने जा रहा है, जब आप ये अनुभव करते हैं, ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, समझे? और ऐसे ही पवित्र आत्मा है, इसे प्रकट होना है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु महिमा में आ रहा है और उस रूपांतरण की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि मरे हुए कब्रों में से जी रहे हैं, और जानते हैं कि दूसरा देर बाद हम बदल जाएंगे और उसके समान की देह में होंगे, ये प्रकट होगा। तब उनको देखते हैं जिन्होंने इसे अस्वीकार किया, वे छोड़ दिए गए। क्या यीशु ने नहीं कहा कुंवारियां मसीह से मिलने के लिए निकली, उनमें से कुछ सो गईं, पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें घंटे तक। परंतु सातवें घंटे में तब आवाज आई, देखो दूल्हा आता है, तुम उससे मिलने को बाहर आओ। और जो सोई हुई थी जाग गईं, सारे पीछे युगों में पेंतिकोस्तल तक जाग गए। समझे, सातवीं युग से, सातवीं कलीसिया युग से, वहाँ पीछे से सारे जाग उठे और ये जो इस कलीसिया युग में थे जीवित बदल गए और भीतर चले गए। और ठीक जिस समय वे भीतर गए, सोती हुई कुंवारियाँ आ गईं और कहा, हम तुम्हारा कुछ तेल खरीदना चाहते हैं। परंतु उन्होंने कहा, हमारे पास हमारे लिए ही पर्याप्त है, उनके पास चले जाओ जो ये बेचते हैं। और जब वे इस तेल को लेने का यत्न कर रही थी, दूल्हा आ पहुंचा। संसार के इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया कि एपिस्कोपलियन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन अखबार भरे हुए हों। धार्मिक अखबार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि वे सोने वाली कुंवारियां अब पेंतिकोस्तल लेने का यत्न कर रही हैं, पवित्र आत्मा पाने का यत्न कर रही हैं। और क्या लोग ये अनुभव नहीं करते हैं कि ये नहीं होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार? जबकि वे वापस आने का यत्न कर रहे थे, दूल्हा आकर और दुल्हन को ले गया और वे बाहर अंधकार में न्याय के लिए डाल दिए गए, क्योंकि उन्होंने अपना निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सारे लोगों को आने के लिए रोका गया। परमेश्वर ने हर युग में अपना प्रकाश भेजा और ये अस्वीकार किया गया। और आज और किसी दूसरे दिन से भिन्न नहीं है कि मुलाकात के दिन को अस्वीकार करे। जब परमेश्वर कलीसिया से मिल रहा है और लोग इसे ले रहे हैं, इसे अगले वर्ष के लिए न टालें, अगली बेदारी के लिए। यही घड़ी है, आज ही वो उद्धार का दिन है। और याद रखें, परमेश्वर ने कभी कोई संदेश नहीं भेजा किसी भी दिन में सिवाय जो उसके अलौकिक चिन्ह के द्वारा प्रमाणित किया। यीशु ने स्वयं कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को ना करूं, तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं कामों को करता हूं, तो कामों का विश्वास करो। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, और जब तुम इसे स्पष्ट देखते हो और प्रकट करते हो, अब समय आ गया है कि वो इसे अस्वीकार करे। तब सुतारी से उसके कान छेद दिए गए, तब वो इसे कभी नहीं सुनेगी। अब वो अपने आप को कलीसियाओं के संग में ले जाएगी और सीधे उसमें पशु की छाप लेने को। एक बड़ी महान मनोकामना किसी ने मुझे अखबार दिया अभी, इस नए पोप ने कहा है कलीसियाओं को आपस में जोड़ना है। वे इसे ऐसे ही निश्चित रूप में करेंगे जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पेंतिकोस्तल भी इसके लिए गिर गया। समझे, क्योंकि कलीसिया, बाइबल ने कहा, भविष्यवक्ता पौलुस प्रभु का बोला, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पहले गिरावट ना हो और फिर इसके पहले कि पाप का पुरुष प्रकट होगा। वो जो परमेश्वर के मंदिर में बैठता है अपने आप को ऊंचा ठहराता है और सबसे जो परमेश्वर के ऊपर, जैसे वो परमेश्वर है, पृथ्वी पर पापों को क्षमा करता है और आदि आदि। कैसे ये बात घटित हुई? परंतु ये घटित नहीं हो सकती थी जब तक गिरावट नहीं होती, जब तक कलीसिया आत्मिक भोज से अलग नहीं हो जाती, अपने आप को अलग कर और संगठित हो जाए, और फिर प्रकाशन कलीसिया के साथ नहीं रहेगा। स्मरण रखें, इसराइल अग्नि स्तंभ के साथ दिन और रात चला। जब अग्नि स्तंभ चलता, वे इसके साथ चलते। और स्मरण रखें, ये रात्रि में एक आग और बादल दिन में, इसलिए ये दिन या रात्रि किसी भी समय आ सकता था। परंतु ये जहाँ कहीं भी था, वहाँ उसे प्रसन्न किया गया कि वे इसे देखने में असमर्थ न रहे। ये रात्रि में ज्योति और दिन में बादल, और वे इसके पीछे चले। जी हाँ श्रीमान, वही चीज। मार्टिन लूथर ने इसे देखा, उसने क्या किया? वो कैथोलिक वाद से बाहर आया, परंतु उसने क्या किया? उन्होंने छोटी हदबंदी चारों ओर कर ली, कहा हम लूथरन हैं, यही है। तब वेस्ली ने इसे वहाँ से हटते हुए देखा, वो गया, वे क्या करेंगे? इसके चारों ओर एक घेराबंदी करेंगे, कहा यही है, ज्योति क्या करेगी? फिर से आगे बढ़ती गई। पेंतिकोस्तलियों ने इसे देखा, वे क्या करेंगे? वे वेस्लीवाद और नाजरीन से बाहर आ गए और आदि आदि। वे क्या करते हैं? पेस के चारों ओर छोटी बाड़ बांधते हैं और अपने आप को कहा हम वननेस हैं और हम ट्रिनिटी हैं और हम यूनाइटेड हैं और ये सब उसने क्या किया, परमेश्वर इससे बाहर आ गया, समझे? हम वो नहीं कर सकते। हमें हर दिन, हर घंटे, दिन के मार्ग के हर कदम पर अनुकरण करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अगुवाई प्राप्त करनी है। यदि हम नहीं करते तो हम संस्थागत जीवन को लेते हैं और एक जीवन जो प्रतिदिन मसीह का अनुकरण नहीं करता वो योग्य नहीं है। एक मनुष्य जो रविवार को मसीही है और आराधनालय को जाता है और पीछे बैठता है और सोचता है कि ये आराधनालय उसका है क्योंकि वो ये वो करता है और सोमवार को चोरी और झूठ बोलेगा और स्त्रियां वहाँ लोगों के बीच समुद्र के किनारे जाती और बाहर सड़कों पर उन अनैतिक वस्त्रों को पहने हुए। मैंने उस प्रथम महिला के विषय में विचार किया, वो श्रृंगार भी नहीं करेगी पोप के सामने जाने से पहले और वापस आती है और वाटर हेड फैशन के बाल काटने के लिए फिजूल खर्ची करती है उन स्त्रियों के कारण जो राष्ट्र में हैं और सारी वेशभूषाएं। जब वो माँ हो जाती है राष्ट्र में हर स्त्री उन माओ जैसी वेशभूषा पहनना चाहती है। अब ये ठीक बात है, इसका उदाहरण वे जानते हैं कि वे लोग ये करेंगे। वे संसार की आत्मा को लेते हैं और वे जीवित परमेश्वर की कलीसिया के नहीं हैं। स्त्रियों को यीशु की ओर देखना चाहिए, आपको सारा और उनकी तरफ देखना चाहिए जो पुराने नियम के हैं। अब उन्होंने पा लिया इसलिए ताकि उस रात्रि में प्रचार कर रहा था कहीं पर इस बारे में कि स्त्रियों को अपने पतियों की आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा मानना, जी हाँ, ये विवाह विधान से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, परंतु वे ये नहीं करना जा रहे हैं। नहीं श्रीमान, वे अमेरिका में रहते हैं इसलिए वे आपको ये बता देना चाहते हैं वे आज्ञा पालन नहीं करने जा रहे हैं। परंतु जब तक आप ये नहीं करते हैं अपने आप को कभी भी मसीह कहने का यत्न न करें क्योंकि आप नहीं हैं। मैं चिंता नहीं करता कि आप कितना नाचते और अन्य भाषाओं में बात करते हैं। यदि आप अपने पति की आज्ञा नहीं मानती हैं आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। एक स्त्री जो छोटे वस्त्र पहनती है और इन चीजों को करती है वो जो सड़क पर करती है अपने आप को मसीही ना कहे। आप संसार को लेना चाहते हैं और फिर भी अपनी गवाही थामे रहते हैं। आप ये परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं कर सकते जब आप इससे अच्छा करना जानते हैं। ध्यान दें, कान में छेद कर दिया, निशान लगा दिया, तब आप कभी नहीं सुनेंगे। याद रहे, ये बंद कानों का चिन्ह है। आप अब और नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप इसके लिए कभी भी योग्य ना होंगे कि इसे फिर करें। ओ, वो इसका विश्वास नहीं करती। ओ प्रभु, उसे ना बताएं। वो इसका विश्वास करती है। नहीं, वो आपको ठीक बताएगी। वो इसे नहीं जानती। कैसे एक महिला सखी, आपसे पूछें, कैसे एक महिला सखी, जैसा कि मैंने रविवार में कहा, बीते रविवार रात्रि, आज रात्रि एक सप्ताह पहले, लाल चमकती बत्ती, कैसे ये स्त्रियों की दौड़ सुंदरता में पहले से अधिक हो गई है जो पहले कभी थी। अब ये स्त्रियों के विरोध में कुछ नहीं है, अब बस ये, परंतु वो इसे कैसे नियंत्रित रखती है, समझे? उसे वो मार्ग मिल गया है कि उसे परीक्षा में डाले, जैसे हवा को पेड़ के सामने रखा। हर मनुष्य, हर पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है उसे परीक्षा की घड़ी में होकर निकलना है। ये स्त्रियों का युग है, ये राष्ट्र जहाँ इसे इन परीक्षाओं में से निकलना है। और क्या वो एक सुंदर स्त्री, एक बहन के समान व्यवहार करती है? प्रभु की आशीषें उस पर हैं। परंतु जब अपने में इस बात को जान सकती है और अपने आप को दिखाती है, पूरी रीति से दिखाती है कि उस पर बुरी आत्मा है, उसका ऐसे होने का अर्थ नहीं होता। मैं नहीं सोचता, उनमें से बहुत सी नहीं जानती, परंतु वे इसे अनुभव नहीं करती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक सभ्य विचार वाली स्त्री अपने आप से ये छोटे कपड़े पहन सकेगी जो वे वहाँ सड़क पर पहनती हैं? मेरे पास दो युवा लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं। मैं नहीं जानता इन बालकों का आगे का समय कैसा होगा। मैं बस उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज बालक, मैं नहीं जानता, आप नहीं बता सकते, मैं नहीं जानता, वे इसके लिए सुन नहीं है। उन्हें अपने ही दोनों पांव पर खड़ा होना है यीशु मसीह के सामने और उत्तर देना है। वे इसमें नहीं जा सकते जो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ और उनकी माँ क्या विश्वास करती है। मैं नहीं जानता कि वे क्या करती है, परंतु वास्तव में मैं इस घड़ी में विश्वास करता हूँ। यदि ये लड़कियाँ सड़क पर उस प्रकार के कपड़े पहनकर जाती हैं और एक व्यक्ति उनका अपमान करता है उस प्रकार के कपड़ों में, मैं विश्वास नहीं करता यदि मुझे ये मौका मिले कि मैं उस व्यक्ति को दोषी भी ठहराऊं। ये ठीक बात है, मैं लड़कियों को दोषी ठहराता हूँ। उनका ये करने का कोई मतलब नहीं था। सुनिए, यदि व्यक्ति सोचता है और वे सिखाते हैं कि मनुष्य पशु से कुछ अधिक नहीं है, वो पशु जाति से आया है, और देखिए तब आप उसे वहाँ इस प्रकार रखते हैं, आप एक कुत्ते को एक निश्चित समय पर मादा के पास ले जाएं, उन बाड़ों इत्यादि में होकर, क्योंकि वो छोटी मादा उस दशा में है, सुअर, गाय और हर वो जानवर, और यदि हम पशु जीवन वाले हैं, जो कि हम हैं, शारीरिक भाग, और तब जब एक स्त्री अपना प्रदर्शन करती है इस प्रकार से, वो ये सिद्ध करती है कि वो भी वही चीज है जो वो छोटा कुत्ता है, या वही चीज, ठीक वही, क्योंकि वो नहीं करेगी, वो जानती है, प्रकृति उसे सिखाती है कि पुरुष उसकी ओर देखने जा रहा है, और बाइबल ने कहा जो कोई स्त्री को कामुक दृष्टि से देखता है वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका अपने हृदय में, ये परीक्षा के समय में डालता है, और शैतान उन स्त्रियों को सुंदर बनाता है और उन्हें नंगा करता है और उन्हें वहाँ रखता है कि आपकी परीक्षा ले। पुरुषों, अपना सिर घुमा लें, परमेश्वर के पुत्र बने। स्त्रियों, तुम परमेश्वर की पुत्रियों के समान वस्त्र को पहनो। उस दिन व्यभिचार के लिए उत्तर नहीं देना होगा। यदि वो स्त्री, वो चाहे कितनी निर्दोष हो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, उसके विचार में भी नहीं होगा कि गलत करे, परंतु जब एक पापी जो उसकी सुंदरता के रूप को देखता है उस स्त्री को, और जानता है कि वो एक नर है और मादा लिंग एक ग्रंथि है और एक नर दूसरे में, और उस पापी को उस दिन उत्तर देना होगा न्याय में, जिसने ये किया, कौन दोषी है? वो नहीं, आप वहाँ अनैतिक हैं। इस राष्ट्र को देखें, ऐसा होता था जब वे घुटनों से ऊपर के वस्त्र पहनते थे जो स्त्रियाँ पहनती हैं, हमें उन्हें पेरिस भेजना पड़ता था कि उसे ले आए। आज पेरिस यहाँ उन्हें लाने के लिए भेजता है। ये इतना गंदा हो गया है कि पेरिस इसे बनाए नहीं रख सका। ये ठीक बात है सारा, क्यों? सुसमाचार को अस्वीकार कर रहे हैं, क्यों? पेरिस के पास ये नहीं था, ये 100% कैथोलिक वाद है। प्रोटेस्टेंट वहाँ जा भी नहीं सकते। टेलीग्राम को देखिए, मैं सोचता हूँ कि वहाँ केवल 600 मसीही हैं, सारे पेरिस में लाखों में से 600 प्रोटेस्टेंट मसीही, वे पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, ये बस पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट हैं, उनमें से 600 उन लाखों लाखों में से, उन्होंने इसे अस्वीकार करने का मौका नहीं लिया, परंतु इन लोगों के पास सुसमाचार है। जब वे संदेश से हट गए और उन्होंने सुसमाचार का प्रदर्शन करते हुए देखा, इसका उपहास उड़ाया, क्योंकि किसी पुरानी व्यभिचारी शिक्षा ने उन्हें चारों ओर से जकड़ लिया, और कोई पास्टर वहाँ प्रचार मंच में खड़ा है जो डॉलरों और खाने के कूपन के विषय में अधिक सोच रहा है बजाय प्राणों के लिए, वे लोग जिन्हें वो प्रचार कर रहा है, ये ठीक बात है जिसने ये किया है, अब वो संसार की अगुवाई कर रही है। आपको याद है, अधिक समय नहीं हुआ इस आराधनालय में, 20 वर्षों पहले मैंने एक विषय पर प्रचार किया था, मैं तुम्हें अमेरिका की देवी दिखाऊंगा, छोटे लटकते हुए टुकड़ों के साथ वहाँ बैठी है, यही जो है। अब उन्होंने ये ले लिया है, जो उन्होंने मांगा है वही पा रहे हैं, और वे उसे पाने जा रहे हैं, बस यही है। नहीं, वे ये विश्वास नहीं करेंगे, नहीं श्रीमान, वे आपको बताते हैं कि वे अमेरिकन नागरिक हैं और उनके पास अधिकार है कि वे किसी भी प्रकार का कार्य करें जो वे चाहते हैं। मेरी जरा इच्छा थी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको अब बताऊंगा, नहीं श्रीमान, राजनीतियाँ कभी नहीं काम नहीं करेंगी, नहीं श्रीमान, लोकतंत्र कभी काम नहीं करेगा, लोकतंत्र हड्डियों तक सड़ा हुआ है। यदि ये मसीही झुंडों के बीच चल सकता था ये अच्छा होता, परंतु जब आप इसे संसार में डालते हैं ये सारा बहाव बढ़ता जाता है और कोई रुकावट नहीं। बिल्कुल ठीक बात है ये। आज इधर की ओर देखें, कुछ भी घटित हो सकता है और वे बस कोई भी चीज, थोड़ी सी राजनीति लें और वे इसे हत्या करके लेते हैं। जब मैंने इसे वहाँ प्रचार किया उस रात्रि की, उन दो छोटे बालकों का जीवन बचाऊं, वे उतने ही दोषी थे जितने वे हो सकते थे। यहाँ तक कि वकील वहाँ मेरे पक्ष में था और उसने कहा ये ठीक बात है, उसने कहा मैं लोगों का जीवन लेने में विश्वास नहीं करता। उसने कहा यदि आप आपराधिक अभिलेखों पर ध्यान दें, वो कौन है जो बिजली की कुर्सी से मारे गए और आदि आदि, ये धनी नहीं है। वो एक वकील को अपने लिए कर सकता है और कुछ खींचतान, कुछ गंदी विधियाँ, कुछ चक्कर इधर उधर और रिश्वतबाजी। उसने कहा ये बेचारा बच्चा है, इस प्रकार इनके पास इतने पैसे नहीं है कि अच्छा खाना खरीदें, इस प्रकार से वे इसे लेते हैं। इस प्रकार के लोगों को वे बिजली से मारते हैं, कोई इस प्रकार का जिन्हें वे अनपढ़ लोगों का झुंड कहते हैं, और वे उनके नामों को फांसी के लिए रोके रखते हैं। मैंने कहा पहली हत्या जो कभी संसार में हुई, एक भाई ने दूसरे भाई को मारा और इसके लिए परमेश्वर ने उसका जीवन नहीं लिया, उसने उस पर एक निशान कर दिया कि कोई उसका जीवन ना ले ले। ठीक है, ये सबसे बड़ा न्यायी है। मैं देखता हूँ उन्होंने उन पर से मृत्यु दंड हटा दिया, अब वे दूसरा मुकदमा करने जा रहे हैं। निसंदेह उन्हें अब आजीवन मिलेगा जो कि 11 वर्ष होगा और हो सकता है कि पैरोल भी मिले। निश्चय ही वे दोषी हैं। उन्हें जीवन भर के लिए प्रायश्चित गृह में भेजना चाहिए, परंतु उनका जीवन नहीं लेना चाहिए। किसी मनुष्य को अधिकार नहीं कि दूसरे मनुष्य का जीवन ले। नहीं श्रीमान, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। नहीं, वास्तव में नहीं। ओह, वे कहते हैं, क्यों नहीं वे ये विश्वास करते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं हैं? क्योंकि वे इस विषय में इतना ही जानते हैं, वे सब इसी बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने अपना कान सत्य के विरोध में फेर लिया है जो उसमें है। न ही वे मिस्री ये जानना चाहते थे कि यह पवित्र शोर करने वालों का झुंड वहाँ प्रभु की इच्छा से था। वे कैसे इस बात को जानना चाहते हैं कि कोई पागल मनुष्य वहाँ आया, वहाँ जंगल से लंबी लटकती हुई दाढ़ी के साथ इस प्रकार से, और कहा, फिरौन, मैं प्रभु के नाम से आया हूँ, इन बालकों को छोड़ दे। फिरौन कहेगा, कौन, मैं? इसे बाहर फेंक दो। समझे, मैं? यदि आप ये नहीं करते हैं तो प्रभु परमेश्वर इस राष्ट्र को नष्ट करने वाला है। फिर भी इस बूढ़े सनकी को कहीं बाहर कर दो, इसे जाने दो। सूरज ने इसके मस्तिष्क को गर्म कर दिया है, समझे? परंतु ये उनके लिए न्याय लाया, क्योंकि वो मनुष्य एक भविष्यद्वक्ता था, उसके पास यहोवा यूं कहता है था। ठीक बात है, वे इसका विश्वास नहीं करना चाहते हैं। रोम इसका विश्वास नहीं करना चाहता था क्या? तो परंतु ये वैसे ही घटित हुआ। इसराइल इस बात का विश्वास नहीं करना चाहता था कि वो मसीहा था। वे कैसे कर सकते थे? गलीलियों का झुंड कह रहे हैं, क्या ये सारे गलीली नहीं? ये लोग कहाँ से आए हैं? ये किस प्रकार की भीड़ के साथ जाता है? बहुत ही निर्धन जिन्हें इकट्ठा किया जा सकता है, ऐसी भीड़ के साथ वो जुड़ा रहता है। वे ही उसकी सुनने को आते हैं जो गरीब होते हैं, वे लोग जो कुछ नहीं जानते। वे चुने हुए नहीं हैं, वे हमारे समान बुद्धिमान की तरह नहीं हैं जैसे हम हैं। वे गरीबों का झुंड। तुमने इस विषय में ये कहते सुना है कि इस दिन की बेदारी उन्हें किस प्रकार की भीड़ सुनती है, किस प्रकार के लोग इन सभाओं में जाते हैं, वे किस तरह के लोग हैं। मैंने एक व्यक्ति को कहते सुना है, अधिक समय नहीं हुआ, भाई वो ऐसा था, वो होप का सौतेला पिता था, और मैं उसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बता रहा था। उसने कहा, इस प्रकार की बात का कौन विश्वास करेगा जब तक कि तुम्हारे जैसा झुंड वहाँ ना हो। उसने कहा, आप अमुक अमुक व्यापारी को जो यहाँ नगर में ले, उन सब के समान दुष्ट, वो कहे कि उसे पवित्र आत्मा मिला, तब मैं इसका विश्वास करूंगा। मैंने कहा, मैं चिंता नहीं करता, वो ये कभी नहीं कहेगा। वो व्यक्ति तुरंत ही बिना परमेश्वर के मर गया, समझे? आप ध्यान से रहें कि आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से कि आप क्या कह रहे हैं। आप सुसमाचार के योग्य जीवन चाहते हैं, ठीक है। इसराइल ने इसका विश्वास नहीं किया। उस समूह के लोग, वो पागल मनुष्य जिसका नाम यीशु नासरी है, जन्मा, उन्होंने सोचा एक अवैध जन्म, और लोगों ने इसका विश्वास किया क्योंकि उन्होंने कहा, ये उसका नहीं है। क्यों? उसका पिता यूसुफ है और मरियम के पास ये बालक इसके पहले कि वे जन्मा। क्यों? ये अवैध, और वो क्या है? बस एक पागल मनुष्य, ये उन विचित्र लोगों में से एक है, उसकी सुनने मत जाना। उन्होंने क्या किया? वे अपने प्राणों को नरक में भेज रहे थे। उन्होंने लिया, यीशु ने कहा, उन्हें जाने दो, यदि अंधा अंधे की अगुवाई करेगा, क्या वो दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे? ये ठीक बात है, उन्हें नहीं मालूम, वे इसका विश्वास नहीं करेंगे, वे नहीं कर सके। वे नहीं देख सके कि कैसे साधारण लोग साधारण संदेश के साथ अस्वीकार हुए, कारण हुए, एक महान राष्ट्र नष्ट होने के लिए गिरा। अब सुनिए, वे इसे समझ नहीं पाए, साधारण आम समूह के लोग। आप जानते हैं, बाइबल ने ये कहा है कि साधारण लोग यीशु की आनंद से सुनते थे। अधिक समय नहीं हुआ, मेरे साथ मेक्सिको में कुछ छोटा सा घटा। जनरल वाल्डेन, परमेश्वर का चुना हुआ, एक बार उसके मार्ग में ज्योति चमकी किसी सभाओं में से। वो महान कैथोलिक योद्धा, मेक्सिको के बड़े जनरलों में से एक, नम्रता के साथ वेदी पर आया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। वो वापस मेक्सिको को चला गया। वो मेरे लिए रोता रहा कि मैं वहाँ आऊँ। अंततः मैंने जाने का निर्णय लिया। प्रभु ने मेरी अगुवाई की, दर्शन मिला, मैंने अपनी पत्नी को बताया, वहाँ गया, और जब हुआ, उसने उनका मुख्य जनरल होने के नाते, चार सितारा जनरल, वो मुख्यालय गया सरकार के पास। वे लोग प्रोटेस्टेंटों के बहुत ही विरोध में थे, आप जानते हैं, इसलिए वे जानते थे कि जबरदस्त सभाएं होने जा रही हैं, इसलिए वो वहाँ गया और सैनिक रक्षक लिए, और जब उन्होंने किया तो उन्होंने बड़ा रंगस्थल लिया, और वे मुझे इस प्रकार से अंदर लाना चाहते थे, मुझे सरकार अंदर ला रही थी। इसलिए जब उन्होंने ये किया, वो बिशप, कैथोलिक कलीसिया का एक बड़ा बिशप, उसके पास गया, गवर्नर के पास जाकर कहा, और कहा, श्रीमान, मैं समझता हूँ कि आप एक को ला रहे हैं जो कैथोलिक नहीं है। कहा, हाँ, इस विषय में क्या है? क्यों? उसने कहा, आप इस तरह के पुरुष को यहाँ नहीं ला सकते, ये सरकार, इसने कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं किए हैं। परंतु कहा अब हम ये कर चुके हैं। उसने कहा क्यों? कहा वो मनुष्य एक सम्मानित पुरुष है, मैं समझता हूँ हजारों लोग यहाँ उसकी सुनने वो आएंगे। जनरल वाल्डेन वो मेरा प्रिय मित्र है। उसने कहा और राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेस्टेंट था, आप जानते हैं मेथोडिस्ट, इसलिए उसने कहा वो पुरुष सम्मानित व्यक्ति है जहाँ तक मैं जानता हूँ। कहा जनरल वाल्डेना यहाँ वो इस मनुष्य की अधीनता में मत परिवर्तक हुआ। कहा क्यों? वो जहाँ तक मैं जानता हूँ एक सम्मानित व्यक्ति। कहा हजारों लोग दावा करते हैं वे उसे सुनने आएंगे। और इस बिशप ने कहा श्रीमान ये किस प्रकार के लोग हैं, बस अनपढ़ ऐसे ही जाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति को सुनने। राष्ट्रपति ने कहा श्रीमान ये लोग आपके पास 500 वर्षों से हैं, वे क्यों अनपढ़ हैं? यही पर्याप्त था, ये तय हो गया। ओ प्रभु, उनके सींग उखड़ गए। जी हाँ श्रीमान, जी हाँ। तब जब वो छोटा बालक मरे हुए से जीवित हो गया, उसने व्यक्ति के पीछे किसी को दौड़ाया। वो महिला स्पेनिश में कह रही थी बालक मर गया था इसी प्रातः 9 बजे, और वहाँ वर्षा हो रही थी। लगभग 10,000 मसीह में परिवर्तक हो गए हर रात्रि। उस रात्रि के पहले एक बूढ़े व्यक्ति को अपनी दृष्टि वापस मिली थी प्रचार मंच पर। ओ, इस आराधनालय से 3-4 गुना बड़ा और लगभग इतना ऊंचा, पुराना दुशाला और टोपी पहनी हुई थी। और बस उन्होंने मुझे रस्सियों से उस रंगमंच पर उतारा कि मुझे अंदर लाए। मैं बस वहां से बाहर निकल गया और विश्वास के द्वारा प्रचार आरंभ कर दिया। बिली ने आकर कहा पिताजी आपको कुछ करना पड़ेगा। वो स्त्री बोला वहाँ 300 प्रवेशक खड़े हैं, वे उस छोटी सी स्त्री को नहीं रोक पा रहे हैं। लगभग 100 पाउंड की है और वो छोटी सुंदर सी लगभग इतनी लंबी है। ओ शायद पहला बालक है, मैं कहूँगा वो 23 या 25 वर्ष की थी। और वो वहाँ खड़ी थी, उसके बाल लटके हुए और छोटे बालक को पकड़े हुए थी, और वो उस पंक्ति के लिए झोंका बन गई थी। वे लोग उसे पीछे धकेल रहे हैं, वो उनके ऊपर को चढ़ी जा रही है, बच्चा उसके कूले पर है, किसी तरह से उनके पैरों के बीच में से घुस रही है या जो भी है। वे उसे वहाँ ले जाएंगे और उसे प्रचार मंच से धक्का देना पड़ेगा। उसे देने के लिए उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है। उसने कहा डैडी यदि मैं उसको यहाँ आ जाने दूँ, उस मरे हुए बच्चे के साथ प्रार्थना पत्र नहीं है। और कहा वे दूसरे वहाँ खड़े हैं, यहाँ 2-3 दिन से वर्षा और धूप में खड़े हैं, और उनसे पहले आने दें। कहा ये यहाँ पर उपद्रव का कारण हो जाएगा। मैंने कहा ये ठीक बात है, भाई मूर वहाँ पर थे, वो भी मेरी तरह गंजे हैं। और मैंने कहा वो नहीं जानती कि कौन कौन है, बहुत से लोग हैं। मैंने कहा भेज और कुछ भाई लोग, और यहाँ के आराधनालय से एक भाई, अब तो वो महिमा में चला गया, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, परंतु वो वहाँ पीछे खड़ा था। इसलिए मैंने कहा भाई मूर आप जाओ उस बालक के लिए, वो कभी नहीं जान पाएगी कि कौन, कि ये मैं हूँ या आप, बस चले जाएं, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाती है। इसलिए भाई मूर ने कहा ठीक है भाई ब्रणम। वो नीचे जाने लगा। मैंने कहा जैसे कि मैं कह रहा था पिता, और मैंने एक छोटे से मैक्सिकन बालक को अपने सामने बैठे देखा, बस हंस रहा था। मैंने कहा एक मिनट रुको, और मैंने कहा उस छोटी महिला को आने दो। बिली ने कहा मैं ये नहीं कर सकता डैडी वो। मैंने कहा बिली मैंने दर्शन देखा है, बोला तो ये तो अलग बात है। इसलिए हमने भीड़ में से इस प्रकार रास्ता बनाया और उसे निकलने दिया। वो यहाँ आकर घुटनों के बल हो गई और प्रार्थना की मोती की माला उसके हाथ में थी। मैंने कहा उठो। इसलिए मैंने कहा स्वर्गीय पिता अब मैं नहीं जानता कि आप क्या करने जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप केवल इस स्त्री को संतुष्ट करने जा रहे हैं कि इसके बालक के लिए प्रार्थना करूं या क्या, परंतु मैंने कहा मैं अपने हाथों को यीशु मसीह के नाम में इस छोटे बालक पर रखता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाई वे के ऊपर रखे थे जो फर्श पर मरा पड़ा था उस दिन। और कंबल में लात लगी और छोटा बालक रोने लगा और ये फिर से जीवित था। जब और मैंने भाई एस्पिनोजा को आगे आगे भेजा उसके साथ डॉक्टर के पास कि उस डॉक्टर से शपथ पत्र ले कि बालक मरा हुआ था। ये उस रात के लगभग 10 बज रहे थे, उस दिन प्रातः 9 बजे उसके दफ्तर में निमोनिया से मरा था। उसने डॉक्टर से शपथ पत्र लिया, अखबार इस पर शांत ना रहे आप जानते हैं, इसलिए उन्हें आना पड़ा। उन्होंने मेरा साक्षात्कार लिया और उन्होंने मुझसे कहा, उसने कहा क्या आप सोचते हैं कि हमारे संत भी ये कर सकते थे? मैंने कहा यदि वे जीवित होते। ओ उसने कहा आप तब तक संत नहीं हो सकते जब तक कि आप मरते नहीं, आप उसी स्थिति में हैं, समझे? और लोग आप देखिए उस दिन जहां उन्होंने उस नन का एक अखबार में वर्णन किया, इसलिए कि एक नई संत मर गई, ओ 100 वर्षों पहले या कुछ इस तरह, और उन्होंने बनाया और उसे अब संत घोषित किया, उसमें से संत बनाया। और उन्होंने कहा कि वो मरे हुओं में से आई और किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जिसको लहू का कैंसर था, क्या ऐसा नहीं था? ये किसी एक पत्रिका में था। जरा सोचें कैसे ये खिलवाड़ करने का यत्न करते हैं, और जब सैकड़ों सैकड़ों मामले यहाँ लोगों की नाक के नीचे हैं, वो क्या चीज है? एक बात के लिए प्रोटेस्टेंट कलीसिया का खिलवाड़, इसमें सीधा सीधा इस चीज को कुछ बना दिया, और फिर प्रभु का वास्तविक कार्य जहां पूरी रीति से सच और सिद्ध है, उनमें साहस नहीं कि अखबार इसे छुए। आप उसी स्थिति में हैं, इन्हें निमंत्रण मिला और उसे ठुकरा दिया। जी हाँ श्रीमान, वे नहीं समझ सके कैसे सादा संदेश, एक साधारण लोग इस प्रकार की बात को अस्वीकार करते हैं, जिसके कारण वे अव्यवस्था में चले जाते हैं। एक स्त्री ने मुझसे ग्रैंड पास के ओरी गांव में कुछ समय पहले कहा, एक कैथोलिक लड़की वहां आई कि दोषी ठहरा कर और लिखे। वो अखबार की रिपोर्टर थी, हाथ में सिगरेट थी, और वो बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, वो क्या है जो आप कहना चाहती हैं? उसने कहा, मैं आपके धर्म के विषय में कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। और मैंने कहा, आप क्या पूछना चाहती हैं? और उसने कहा, आप किस अधिकार से ये करते हैं? मैंने कहा, दिव्य बुलाहट से यीशु मसीह के नाम में। और वो आगे बढ़ी, बन रही थी। मैंने कहा, एक मिनट। उसने कहा, यदि मुझे इस प्रकार के अज्ञानियों के झुंड के साथ रखना पड़ता, उसने कहा, मैं मसीह भी नहीं होना चाहती। उसने कहा, और यदि वे कहते हैं कि वे लोग किसी दिन पृथ्वी पर राज्य करेंगे, उसने कहा, मैं आशा करती हूँ मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा, चिंता ना करें, आप नहीं होंगी। मैंने कहा, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी है। क्यों? वो बोली, ये सब वहाँ चल रहा होगा और चिल्लाना। मैंने कहा, आप कैथोलिक होने का दावा करती हो? उसने कहा, मैं हूँ। मैंने कहा, क्या आप जानती हैं कि वो धन्य मरियम को पवित्र आत्मा पाना और अन्य भाषा में बोलना या आत्मा में नाचना उन्होंने उसी रीति से किया इसके पहले कि वे परमेश्वर उसे स्वीकार करता। आप उसे परमेश्वर की माँ कहते हैं? वो बोली, ये निरर्थक बात है। मैंने कहा, जरा एक मिनट, मैं मुझे बाइबल में नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा, तो आप कैसे जानने जा रही हैं कि सत्य क्या है या नहीं है? उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया का वचन लेती हूँ। मैंने कहा, ये परमेश्वर का वचन है, ये ठीक यहाँ पर है, इसे देखें। मैं आपको चुनौती देता हूँ। और मरियम वहाँ उनके साथ उस ऊपर वाले कमरे में थी, और बाकियों के समान उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, और आप उसे परमेश्वर की माँ कहते हैं? मैंने कहा, और उस झुंड को कूड़ा करकट और पीछे धोने वालों का झुंड कहते हो? मैंने कहा, चिंता ना करें, आप वहाँ नहीं होंगी। आपको इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास यही चिंता है, अच्छा हो कि लड़की तुम अपना पापी प्राण के विषय में चिंता कर लो। और मैंने उसे जाने दिया। अब इस सब के लिए सोचते हैं, एक साधारण, परमेश्वर ने इसे साधारण बनाया है। कैसे अहाब सका, कैसे इजाबेल सकी कि वे लोग सके जिन्हें सिखाया गया था कि एलिया एक जादूगर, सोचा वो एक आत्मिक था। यहाँ तक कि आहाब ने कहा, यहाँ एक है जो इसराइल की परेशानी का कारण है। उसने कहा, तू ही है जिसने इसराइल को सताया है। वो राष्ट्र कैसे सोच सकता था कि वो इस प्रकार का रोएदार चेहरे वाले का संदेश अस्वीकार कर दे? कोई भी याजक वस्त्र पहने हुए नहीं, और आदि आदि इस बात का दोषी होगा। कैसे मिस्र संसार पर राज्य कर सकता था? फिरौन और उसके वर्ग के और मान्य लोग, संसार उस स्थान पर फिर कभी नहीं आ पाया। विज्ञान और आदि में वे कैसे सोच सके कि उस 80 वर्ष के भविष्यद्वक्ता को अस्वीकार कर दें? लटकती हुई दाढ़ी, सफेद बाल, वहाँ कदम मारता हुआ आ रहा है एक भगोड़ा, और एक संदेश के साथ आया, तुम या तो उन्हें जाने दो या परमेश्वर इस राष्ट्र को नष्ट कर देगा। फिरौन कैसे सकता था? तुम मेरी बात मानोगे फिरौन? फिरौन ने कहा, मानूंगा। ओ वो फिरौन और एक बूढ़ा मनुष्य, कोई पुराना सनकी। उन्होंने सोचा इस प्रकार के व्यक्ति को अस्वीकार करना जो राष्ट्र को नष्ट कर दे, परंतु उसने ये किया। ओ प्रभु, आइए हम रुकें, कुछ मिनटों के लिए रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं, हम किस दिन में जीवित हैं, हम कहाँ हैं? दूसरा आधुनिक युग, विज्ञान युग। अच्छा हो कि हम सोचें, संभव है आप रुकें, लोग रुकें, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें और थोड़ा सोचें। ऐसा करते हुए आप कुछ अच्छा अनुभव करेंगे। ये ठीक बात है। एक मसीही औजार नहीं है या किसी प्रकार का मशीन रिंच एक बड़े धार्मिक शासन प्रणाली का। ये ठीक बात है। एक मसीही किसी प्रकार का कोई औजार नहीं है जो धार्मिक संगठन को चलाए रखता है। और एक मसीही जो मसीही नहीं हो सकता, एक मसीह को मसीह के समान होना है। और एक मसीही मसीही नहीं हो सकता है जब तक कि मसीह उस मनुष्य के अंदर नहीं आता। मसीह का जीवन उसमें है, तब ये उस जीवन को उत्पन्न करता है जो मसीह ने जिया। और आप वो चीजें करते हैं जो मसीह ने की। मैं किस विषय में बातें कर रहा हूँ? मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, ये क्या है? क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है? अब मैं ये पृष्ठभूमि वहाँ रख रहा हूँ कि आपको ये दिखाऊं कि पुरुषों और स्त्रियों जो कि मशहूर स्त्रियों और पुरुष थे, बाइबल ने कहा, क्या आपने ध्यान दिया? बीते रविवार रात्रि मैं इसमें कुछ डालना भूल गया था, उत्पत्ति का 6वां अध्याय और 4वां पद। वे लोग जिन्होंने उन्हें स्त्री होने के लिए ले लिया, पत्नी होने के लिए, वे पुरुष पुराने लोकप्रिय थे, लोकप्रिय लोग जिनके फिर से आने की भविष्यवाणी है। जैसा नूह के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। लोकप्रिय लोग स्त्रियों को ले रहे हैं, न कि पत्नियां। स्त्रियां अपरिचित देहों के पीछे जा रही हैं। इंग्लैंड में देखिए, लगभग कुछ सप्ताहों पहले, संयुक्त राज्यों में देखें, हर कहीं देखें, वैश्यवृत्ति से भरा पड़ा है। महान लोग, महान ऊंचे कार्यालय राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं। वहाँ इंग्लैंड में महान पुरुष एक प्रकार का युद्ध भार, जैसे क्यों? आपने ध्यान दिया, उसके पास सुंदर पत्नी थी, उसका चित्र वहाँ पर था। उस रूसी वेश्या को देखें, केवल कामुकता वाले वस्त्रों में और अपने आप को दिखा रही है कि अपने शरीर का प्रदर्शन करे, और मनुष्य इसके लिए गिर जाता है। आज हमारी आवश्यकता परमेश्वर के पुत्रों की है। हमें सरकार में पुरुषों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के पुत्र हों। ये ठीक बात है। इसलिए एक अच्छा धर्मी राजा इन सब निरर्थक बातों पर रोक देगा। वहाँ खींचने के लिए कोई धागा ना होगा, जैसा दाऊद ने किया, उसने इस पर रोक लगा दी, निश्चय ही किया, क्योंकि वो एक राजा था। और वहाँ केवल वास्तविक मार्ग है, परमेश्वर राजा होने के नाते, और परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता भेजता है। क्या सैमुएल ने इन्हें नहीं बताया? इसके पहले कभी उनके पास राजा होता? उसने कहा, परमेश्वर तुम्हारा राजा है, क्या मैंने कभी तुम्हें कोई ऐसी बात बताई जो घटित ना हुई हो? उन्होंने कहा, नहीं, ये ठीक बात है। क्या मैंने तुम्हारी जीविका से अपने लिए कुछ मांगा? नहीं, तूने कभी हमसे जीविका के लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने तुम्हें कभी कुछ ऐसा नहीं बताया जो प्रभु के सामने ठीक ना हो। कहा, परमेश्वर तुम्हारा राजा है। ओ, हम ये अनुभव करते हैं और हम जानते हैं कि तू एक अच्छा मनुष्य है, सैमुएल। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन तेरे पास आता है, परंतु जो भी है, हम एक राजा चाहते हैं, समझे? यही जो उन्हें मिला। जो भी हो, पेंटिकॉस्टल एक संगठन चाहते थे, ये मिला, ये ठीक बात है। बाकी कलीसियाओं के समान होना चाहते हैं आप लोग, आगे बढ़ें, ये यही जो ये लेता है, परंतु परमेश्वर हमारा राजा है, परमेश्वर हमारा राजा है। जी हाँ श्रीमान, ये क्या है? ये क्योंकि वे लोग, जैसा उन्होंने मसीह के दिनों में किया, जैसे वे हर युग में थे, उन्हें एक बहाना मिल गया, उनके पास उनके अपने मत्सार थे। आप ये ना कहना चाहते हो, मैंने गाय खरीदी है और मुझे देखने जाना है कि वो काम करेगी या नहीं, या दूध देगी, या किस पशुधन की है। हो सकता है आपके पास ये बहाना ना हो, परंतु यहाँ एक प्रकार का बहाना है जो लोग कह सकते हैं, मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, हम इसमें विश्वास नहीं करते, मैं बैप्टिस्ट हूँ, हम इस प्रकार की चीज में विश्वास नहीं करते, भाई मैं लूथरन हूँ, भाई इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मसीही हैं, इसका अर्थ है कि आप एक झुंड के से लोग हैं जो संगठित है, और लूथरन की सराय से हैं, बैप्टिस्ट की सराय, पेंटिकॉस्टल की सराय। पेंटिकॉस्टल कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है, बैप्टिस्ट कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है, ये बैप्टिस्ट सराय है, प्रेस्बिटेरियन सराय, परंतु वहाँ केवल एक ही कलीसिया है और केवल एक ही विधि है कि आप उसमें आ सकते हैं, और वो जन्म पाने के द्वारा। आपको यीशु मसीह की कलीसिया में जन्म लेना है और उसकी देह के एक सदस्य होना है, स्वर्ग के आत्मिक प्रतिनिधित्व, तब चिन्ह की मसीह आपके साथ है, आपके द्वारा जीता है। मसीहो, तुम्हारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना ही चाहिए कि परमेश्वर के पुत्र हो जाओ। आपको परमेश्वर का संबंधी हो जाना चाहिए, उसे आपका पिता होना चाहिए आपके लिए, कि आप उसके पुत्र हो जाएं, और केवल उसके पुत्र और पुत्रियां बचे हुए हैं, ना कि कलीसिया के सदस्य लोग, परंतु पुत्र और पुत्रियां। केवल एक ही चीज है जो इसे उत्पन्न करेगी, और वो नया जन्म। नया जन्म ही केवल एक चीज है जो परमेश्वर से संबंध बनाती है। ये ठीक बात है, पुत्र और पुत्रियां। तब जब ये घटित होता है, तब लोग, यहाँ एक प्रश्न जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मनुष्य कहता है, जब हम फिर से जन्म लेते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुतों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? भाई बहनों, यदि आपने नया जन्म पाया है तो आपका सारा स्वभाव बदल गया, आप उन चीजों के लिए मर गए जो आपने कभी सोची। अच्छा, आप कहते हैं, भाई बहनों, जब मैं कलीसिया का सदस्य बना, मुझे वो मिल गया। अच्छा, तब जब परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो अब भी दर्शन दिखाता है। परंतु भाई ब्रैनम, मेरी कलीसिया, अब आपने नया जन्म नहीं पाया है, समझे? आप नहीं सकते, क्योंकि यदि वो परमेश्वर, यदि उसका जीवन आप में है, जैसे आपके पिता का जीवन आप में है और उसी परमेश्वर का जीवन आप में है, वही आत्मा जो मसीह में था आप में है, कैसे वो आत्मा जो यीशु मसीह में रहता है और ये लिखता है और फिर आप में वापस आता है और उसका इनकार करता है, समझे? ये नहीं कर सकता। ये हर वचन को वैसे ही विराम चिन्ह लगाता है। तब यदि आप कहते हैं, भाई मैं कलीसिया का अच्छा सदस्य हूँ, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं मूर्ति पूजकों को जानता हूँ अफ्रीका में, अपने अश्वेत भाइयों के बीच में, वहाँ पर मैंने उन लोगों का आचरण अमेरिकन लोगों से 90% अधिक अच्छा पाया है। क्यों? उनमें से कुछ जनजातियाँ वहाँ, यदि एक युवा लड़की निश्चित आयु तक विवाहित नहीं है या जब वो एक निश्चित माप की है और उसे अभी तक किसी ने नहीं अपनाया, वे जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, वे उसे निकाल देते हैं, उसका जाति वाला रंग हटा देते हैं और वो शहर में चली जाती है। तब वो त्यागी हुई हो जाती है और जब उसका विवाह हो गया तो उसके कोमरिये की जांच होती है। यदि कोमरिये का पर्दा टूटा हुआ है तब उसे बताना होता है कि किसने ये किया है और वे उन दोनों को एक साथ मार डालते हैं। यदि ये अमेरिका में होता तो क्या बहुत से ना मारे जाते, समझे? आप उन्हें मूर्ति पूजक कहते हो? ओ प्रभु, वे आकर लोगों को सिखा सकते हैं जो अपने को कलीसिया का सदस्य कहते हैं कि कैसे शुद्ध रहें। ये ठीक बात है। अपनी सारी दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा के चलते एक भी यौन रोग का मामला नहीं मिला, उनमें ऐसी चीज नहीं होती। आप वही हैं, समझे? ये तो हमारे अपने गंदे बेकार मार्ग हैं, एक श्वेत लोगों जैसे। ये ठीक बात है, परमेश्वर से अलग हो गए। जब ये होता है, वो चीज जो आपने तब की, आप पाएंगे कि आत्मा जो आप में आता है, नए जन्म से आप विश्वास करेंगे और हर वो बात करेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में करने के लिए कहा है, और हर चीज जिसे करने के लिए बाइबल उल्लेख करती है, आप इसे आमीन से पूर्ण विराम लगाते हैं और दिन रात आप नहीं रुकेंगे जब तक आप इसे पा ना लें। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। और इस सारे समय में आप निश्चित रूप से इन बातों से ऊपर रहेंगे, आत्मा के फल लगेंगे। आप कहते हैं, क्या मैं अन्य भाषाओं में बात करूंगा? आप वो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्या मैं चिल्लाऊंगा? आप वो कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। परंतु एक निश्चित बात जो आप करेंगे, आप में आत्मा के फल लगेंगे, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, धैर्य, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता है। आपका क्रोध नहीं करेगा। ध्यान रखें, जब ये आप में होता है, ये पवित्र आत्मा को विषायुक्त करके आपसे अलग हो जाता है, समझे? जब आप एक स्थान पर पहुंचते हैं कि आप हरेक से झगड़ा करना चाहते हैं जो आपके संपर्क में आता है, तो कुछ गड़बड़ है। जब आप एक स्थान पर आते हैं जहां एक सेवक बाइबल में से पढ़ेगा कि ऐसा विशेष करना गलत है, और आप बस इसमें रखें, वहां बिल्कुल भी कोई मसीहत नहीं है, ये अब कि उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जान लोगे, यही जो यीशु ने कहा, समझे? यदि ये वचन है और परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो आत्मा जो आप में है वचन से मेल खाता है हर बार, क्योंकि वास्तविक पवित्र आत्मा वचन से मेल खाएगा, क्योंकि वचन जीवन और आत्मा है। यीशु ने कहा, मेरे वचन जीवन है, और यदि तुम्हारे पास अनंत जीवन है और वो वचन है, तो फिर वचन को कैसे नकार सकता है? तो आप परमेश्वर को किस प्रकार का व्यक्ति बनाएंगे? ये एक चीज जो मालूम करनी है कि आप एक मसीही हैं, जब आप परमेश्वर के हर वचन के ऊपर पूरी रीति से सहमत हो सकते हैं और आप अपने आप को अपने शत्रुओं के साथ प्रेम में पाएंगे। कोई कहता है, भाई वो कुछ नहीं, बस एक पवित्र शोर करने वाला है, और आप आरंभ हो जाते हैं, चौकस रहें, चौकस चौकस रहें। परंतु जब आप वास्तव में पाते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं, वे चाहे जो करें, आप फिर भी उनसे प्रेम करते हैं, समझे? तब आपको मालूम पड़ने लगता है और आपका धैर्य इतने लंबे समय संभाले है, यहाँ तक कि इसका कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके विषय में कुछ कहता रहता है, भाई मैं चिंता नहीं करता आप क्या कहते हैं, विचलित ना हो। यदि आप विचलित होते हैं तो अच्छा है कि आप पहले जाकर प्रार्थना करें, इसके पहले कि आप उनसे फिर से बातें करें। जी हाँ, जी हाँ, विवाद में ना फंसें, विवाद में नहीं पड़ना चाहते। यदि आप चाहते हैं कि किसी को कलीसिया में उठते हुए देखें, कहें, आप जानते हैं क्या, मैं आपको बताऊंगा, अमुक अमुक और अमुक अमुक, आप कहते हैं, अब भाई आपको लज्जा आनी चाहिए। यदि आप कहते हैं, ओ क्या ये ऐसा है, उस बुराई को सुनते हैं, ध्यान दे, पवित्र आत्मा हौदी नहीं है, समझे? नहीं नहीं नहीं, हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकार में है, ये पवित्रता से भरा हुआ है, शुद्धता से, कोई बुराई नहीं सोचता, कोई दुष्टता नहीं करता, सारी बातों का विश्वास करता है, सब बातों को सहता है, धीरज रखता है, समझे? झगड़िए नहीं। जब परिवार में विवाद होता है तो उनके साथ झगड़ा ना करें। आपकी माँ ने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम उस पुरानी कलीसिया में अब और मत जाओ। भाई आप वो सब जो आप इस विषय में सोचते हैं, आप अपने बालों को बढ़ने देते हैं, आप कोई बूढ़ी दादी जैसी दिखती हैं। उसके साथ विवाद ना करें। कहें, ठीक है माँ जी, ये ठीक है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ वैसे ही, और जब तक जीवित हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करती रहूंगी। समझे? अब विवाद ना करें। समझे? क्रोध क्रोध को जन्म देता है। पहली बात आप जानते हैं, आप पवित्र आत्मा को शोकित करके अपने आप से दूर कर देते हैं। आप पलट कर विवाद करेंगे तो फिर पवित्र आत्मा अपनी उड़ान भर लेगा। क्रोध को क्रोध जन्म देता है और प्रेम प्रेम को जन्म आता है। प्रेम से भर जाएं। यीशु ने कहा, इससे सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, जब तुम में दूसरों के लिए प्रेम होगा। ये पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम। और क्या आप जानते हैं कि आप अपने में एक छोटे सृष्टिकर्ता हैं? आप ये जानते हैं? निश्चय ही आपने लोगों को देखा है जिनसे आसपास में आपने प्रेम किया। आप नहीं जानते क्यों, बस वे प्रेमी प्रकार के व्यक्ति। क्या आपने ये देखा है? ऐसे नम्र कि आप उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। ये वे उस वातावरण को सर्जित करते हैं, उस जीवन के द्वारा जो वे जीते हैं, जिस प्रकार से वे बातें करते हैं, उनकी बातचीत। तब आपने उन्हें हर बार देखा है, आप उनसे दूर रहते हैं, सारे समय कुछ बुराई की बातें करना चाहते हैं और किसी के विषय में बात करते हैं। कहते हैं, ओ प्रभु, वहाँ वे आते हैं, वे वहाँ किसी की आलोचना करने जा रहे हैं, वो अब यहाँ है, वो इस पुरुष के विषय में बातें करने जा रहा है। कुल मिलाकर अब वे गंदे चुटकुले सुनाने जा रहे हैं, या कुछ स्त्रियों के विषय में, या कुछ ऐसे ही। आप उनके आसपास रुकना पसंद नहीं करते, समझे? वे उत्पन्न करते हैं, सुंदर अच्छे लोग लगते हैं, परंतु वे उस वातावरण को उत्पन्न करते हैं। और वे बातें जो आप सोचते हैं, वे चीजें जो आप करते हैं, व्यवहार, वे बातें जिस विषय में आप बातें करते हैं, एक वातावरण को उत्पन्न करता है। यहाँ इस नगर में मैं एक व्यक्ति के कार्यस्थल पर गया था, और वो व्यक्ति यहाँ किसी अच्छी कलीसिया में एक ट्रस्टी या एक डीकन है। मैं वहाँ उस व्यक्ति से किसी काम के विषय में मिलने गया, और वहाँ पर रेडियो था, उस रॉक एंड रोल या ट्विस्ट नाच के साथ, वो जो भी था, और जितनी तेजी के साथ वो जा सकता था। और मैं समझता हूँ वहाँ लगभग 40 अधनंगी नंगी स्त्रियों की तस्वीरें थीं। अब आप मुझे नहीं बता सकते कि कितने डीकन या कितने, और आप मुझे देखने दें कि आप क्या देखते हैं और आप क्या पढ़ते हैं और किस प्रकार का आप संगीत सुनते हैं, लोग जिनके साथ आप जुड़े हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि आप में किस प्रकार का आत्मा है। समझे? जी हाँ, आप एक व्यक्ति को कहते हुए सुनते हैं, मैं वो करता हूँ, वो झुंड। याद रखें, मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या कहता है। उसके वचन जोर से बोलते हैं, उसके कार्य अधिक जोर से बोलते हैं, बजाय इसके कि वो कुछ कह सके। वो गवाही दे सकता है, वो कहता है वो एक मसीही है, निश्चय ही, और कुछ भी कर सकता है। परंतु आप ध्यान दें, वो किस प्रकार का जीवन जीता है, वो ये बताता है कि वो क्या है। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुरुष उस जीवन के साथ जो कहेगा दिव्य चंगाई में विश्वास करने को, ये कुछ चिड़ियाओं के लिए है, ये वर्षों पहले था, आज ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या ऐसा जीवन सुसमाचार के योग्य है कि मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे? आप कहते हैं, परंतु मैं एक डीकन हूँ, मैं चिंता नहीं करता, आप एक बिशप हो सकते हैं। जब मैंने बिशप शीन को 2 वर्षों पहले ये कहते सुना आ रहा था, उसे फिर कभी दोबारा नहीं सुना। जब उसने कहा, एक मनुष्य जो विश्वास करेगा और उस बाइबल के द्वारा जिएगा, वो उसके समान है जैसे कोई गंदले पानी में होकर चलने का यत्न करे, बिशप शीन। तब पलट कर कहा, जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, आप जानते हैं क्या, जब मैं यीशु से मिलूंगा, मैं उसे बताने जा रहा हूं, मैं बिशप शीन हूं। और वो कहेगा, ओ हाँ, मैंने अपनी माँ से आपके विषय में सुना है। मूर्ति पूजा लोग जो वचन की आलोचना करते हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी हो, मैं न्यायी नहीं हूँ। समझे? वो वचन ही सत्य है, ठीक है। और परमेश्वर का आत्मा अपने लेख को पहचानता है, वो अपने लेख के द्वारा पहचाना जाता है, ये उसके विषय में बोलता है, और आप इस पर विश्वास करने के द्वारा प्रमाणित होते हैं, और ये आपको आपका प्रमाण पत्र देता है। दूसरों से विवाद ना करें, और ये पारिवारिक विवाद ना करें। जैसा मैंने कहा, प्रेम प्रेम को उपजाता है और क्रोध क्रोध को उपजाता है। अब आइए देखें, यीशु को देखें एक मिनट के लिए, वो आपका आदर्श था। मैं आशा करता हूँ कि आप थक नहीं रहे हैं। देखिए यीशु की ओर देखें एक मिनट, वो हमारा आदर्श था। उसने ऐसा कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक आदर्श दिया है कि तुम्हें दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। अब ध्यान दें, जब वो इस संसार में आया, जब वहाँ बहुत था, उस समय इतना अविश्वास था, उस समय संसार में जो कभी हुआ था, उसने इसकी गति को धीमा तक नहीं किया। वो वैसे ही प्रचार करता चला गया, वैसे ही चंगाई, उसे कभी परेशान नहीं किया। वहाँ आलोचनाएं थी जब वो बालक था, तभी से आलोचनाएं हुई जब तक कि वो क्रूस पर मर नहीं गया। क्या इसने इसे रोका? नहीं श्रीमान। उसका उद्देश्य क्या था? सदा वही करो जो पिता ने लिख दिया था, सदा वही करो जो उसे प्रसन्न करे। यीशु को देखें, हम अपनी नम्रता के विषय में बातें करते हैं। जब परमेश्वर स्वयं ही छोटा बालक बन गया, बजाय की आता एक छोटी सी खोर में, बजाय की कहीं अच्छे से घर में, चरनी में, खाद के ढेर पर, बछड़ों की आवाज के बीच, उन्होंने उसे जानवरों के कपड़ों में लपेटा जो बैल के जुए पर से उतारा गया था। निर्धनों में निर्धन, और फिर भी स्वर्गों और पृथ्वी का रचने वाला। एक ठंडी बारिश की रात में उन्होंने कहा, स्वामी हम तेरे साथ घर जाएंगे। उसने कहा, लोमड़ियों के भट्ट हैं और चिड़ियाओं के घोंसले, मेरे पास तो अपना सर रखने को भी जगह नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को नम्र किया और एक मनुष्य बन गया, आप में शरीर में प्रतिनिधित्व किया कि आपको और मुझे छुड़ा ले। तो फिर हम कौन हैं? वो हमारा आदर्श था। मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। इस दोपहर बाद में एक छोटी सी सभा में किसी को बता रहा था, मैंने कहा, परमेश्वर का हर पुत्र जो परमेश्वर से जन्मा उसे परखा जाना है, पहले ताड़ना के साथ। मुझे याद है जब मेरी हुई थी या मेरी महानतम घड़ी, जब एक मनुष्य नया जन्म लेता है तो उंगली के नाखून जितना निशान होता है जो परमेश्वर उसमें डालता है व्यवस्था, और ये उसके हृदय में चली जाती है और वो लंगर डालती है, तब शैतान उसे सिद्ध करता है, और यदि ये वहाँ नहीं है आप चले गए। मुझे याद है वहाँ अस्पताल में, मैं लगभग 22 वर्ष का था या हो सकता है 23 का, एक युवा लड़का, और मेरे पिता मेरी बाहों में मर रहे थे, और मैं परमेश्वर एक चंगाकर्ता से बातें कर रहा था, और मेरे अपने पिता हृदय घात में, उसके सिर को अपने हाथ में रखा और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और उन आँखों को घूमते देख रहा था, और मुझे देखा और खत्म हो गए कि परमेश्वर से मिलने को चले गए। मैंने उन्हें लिया और अपने भाई के बराबर में गाड़ा, और उसकी कब्र पर फूल अभी ताजा थे, और मैं प्रचार कर रहा था एक परमेश्वर जो चंगा करता है बीमारों को। लोक सेवा कंपनी के लिए काम कर रहा था, एक घंटे में 20 सेंट, और मेरी पत्नी कमीज की फैक्ट्री में काम करती थी हमारी सहायता के लिए, क्योंकि हमारा छोटा 18 महीने का लड़का बिली पॉल और एक 8 महीने की बच्ची जो गोद में थी। मैंने बहन विल्सन को सिर से इशारा करते देखा, उसे ये याद है, रॉय स्लॉटर और कुछ पुराने लोग। मैंने क्या किया? अपने हाथ में सैंडविच लिए सड़क पर जा रहा था, खम्बे पर सर उतर कर आया, आने जाने वाले हरेक को गवाही दे रहा था यीशु मसीह के प्रेम के विषय में। उनके मोटर मरम्मत की जगह जाकर और उनसे कहता, यदि मैं इसका प्रयोग कर सकूं, मिस्त्रियों से बातें करूं, वहां अंदर जाकर कहता, लोगों क्या अभी तुम लोग बचे हुए हो? मुझे अपने हृदय में कुछ मिला था। रात में प्रचून की दुकानों पर जाता, 2-3 बजे सुबह घर लौटता, सारी रात बीमारों के बुलावों पर नहीं सका, बस बैठकर बदलता और अपने काम के कपड़े पहनता और कुर्सी में बैठकर दिन निकलने तक आराम करता, उठकर चला जाता, और उपवास और प्रार्थना से इतना दुबला हो गया, जब तक जूते पहनता प्रार्थना करता रहता कि खम्बे पर चढ़ूं। प्रचार और प्रचार, परमेश्वर महान था, परमेश्वर दयालु था, परमेश्वर प्रेम था लोगों के लिए, और यहाँ मेरे पिता मेरी बाहों में मर रहे थे और मेरे भाई मारे गए जबकि मैं वहाँ छोटे से अश्वेत पेंटिकॉस्टल कलीसिया के प्रचार मंच पर खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था। आकर मुझे बताया, तुम्हारा भाई मारा गया, वहाँ राजमार्ग पर एक कार ने उसे टक्कर मारकर और उसे मार डाला। उसके अपने भाई का खून उसकी कमीज पर से गिर रहा था जहाँ उसने उसे राजमार्ग पर से उठाया, उसके बाद उसे गाड़ा, मेरे पिता मर गए। फिर वहाँ मेरी पत्नी वहाँ पड़ी थी और मैं चला गया, यहाँ इस आराधनालय में आया, यहाँ से हटकर जहाँ ये मंच खड़ा है, लोगों को 6 महीने पहले बता दिया था, इसके पहले कि ये घटित हुआ, कि वहाँ एक बाढ़ आएगी, और मैंने स्वर्गदूत को एक छड़ लिए हुए देखा और उसने स्प्रिंग सड़क पर इसे 22 फीट नापा था। सैंडी डेविस और वे यहाँ बैठे हुए हंसे, बोले, लड़के ये 1884 में केवल लगभग 8 या 10 इंच था, तुमसे कौन बातें कर रहा है? मैंने कहा, ये होगा क्योंकि मैंने उन दर्शनों में से एक देखा है और उसने मुझे ऐसा ही बताया है, और ये वहाँ होगा, और आज स्प्रिंग स्ट्रीट पर वहाँ निशान है, पानी के 22वें फीट पर। मैंने कहा, मैं इस आराधनालय की छत पर नाव से चढ़ा और मैंने किया। उस समय के चलते मेरी पत्नी बीमार हो गई, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैं यहाँ आराधनालय में आया, लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने कहा, वो मर रही है। ओ, ये तुम्हारी पत्नी है? वो मैंने कहा वो मर रही है। मैं वहां गया और प्रार्थना की और प्रार्थना की और प्रार्थना की और मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे। वो बोली, बिली मैं तुमसे प्रातः में उधर खड़ी होकर मिलूंगी। कहा बालकों को साथ कर लो और मुझे उस फाटक पर मिलो। मैंने कहा, बस चिल्लाना शुरू कर दिया, बिली मैं वहां पर होंगी, समझे? और वो चली गई। मैंने उसे वहां मोर्चरी में रख दिया, लेटने के लिए घर चला गया। और जब मैं लेटा, छोटा बिली पॉल श्रीमती ब्रॉय के पास रुका हुआ था और वे बहुत बीमार। डॉक्टर आशा कर रहा था कि वो किसी भी समय मर जाएगा। मैं बिली के लिए प्रार्थना कर रहा था और यहाँ भाई फ्रैंक आकर मुझे ले गए। कहा तुम्हारी बच्ची मर रही है, वो छोटी लड़की। मैं अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कहा उसे मस्तिष्क का बुखार है, तुम इसे लेकर बिली पॉल को भी कर दोगे। नर्स ने एक प्रकार की लालची चीज मुझे पीने को दी, एक प्रकार का बेहोशी का सा किसी चीज का कि मुझे शांत रखे। और मैं उनका कमरा छोड़ने को था, उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और पिछले दरवाजे की ओर जाकर नीचे तहखाने में चला गया। वहाँ वो बालिका लेटी हुई थी। इसके पहले अस्पताल उसे अलग वार्ड में करे, मक्खियाँ उसकी छोटी छोटी आँखों पर थीं। इस प्रकार से मैंने मच्छर वाली छड़ी लेकर उन्हें उड़ाया और इसे उस पर रख दिया। मैं झुक गया, मैंने कहा परमेश्वर वहाँ मेरे पिता और भाई हैं और उनकी कब्रों पर फूल हैं। वहाँ होप लेटी है, उधर सामने है और यहाँ मेरी बच्ची मर रही है, इसे ना ले प्रभु। उसने बस पर्दा नीचे खींच दिया, जैसे कि कहते हैं चुप रहो, मैं तुम्हारी सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बात भी नहीं करेगा। तब यदि वो मुझसे बात भी नहीं करेगा तो ये शैतान का समय था, उसने कहा। और मैंने सोचा, तूने कहा वो एक भला परमेश्वर था, यही जिस सब के विषय में तू शोर मचा रहा है। तू केवल एक लड़का है, चारों ओर नगर में देख, हर लड़की और हर लड़का जिससे कभी तेरा संबंध रहा, सोच तेरा चित्त ठिकाने पर नहीं है तेरा। अब वो मुझे ये नहीं बता सका कि कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही ये देख चुका था। परंतु उसने मुझे बताया कि वो तेरी चिंता नहीं करता। सारी रात बैठा रहा, सारे दिन मैंने परमेश्वर से ये कहा, मैंने क्या किया है मुझे दिखा प्रभु, मेरे लिए निर्दोष क्यों तुक उठाए यदि मैंने गलत किया है। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे परख रहा था, परंतु हर पुत्र को जो परमेश्वर के पास आता है उसे परीक्षा से निकलना ही है। मैंने कहा मुझे बता मैंने क्या किया है, मैं वो ठीक कर लूंगा। मैंने क्या किया है सिवाय पूरे दिन प्रचार करने के, सारी रात और अपना जीवन निरंतर उसे दे दिया, मैंने क्या किया है? शैतान ने कहा ये ठीक बात है, आप देखिए अब जब ये आपके पास आता है और आपने सबको बताया है कि तुम ये विश्वास करते हो कि वो महान चंगा करने वाला है और वहाँ तुम्हारा बालक पड़ा हुआ है मर रहा है, उसने सुनने से भी मना कर दिया। तेरी पत्नी टीबी निमोनिया से मर गई, तूने कहा वो कैंसर अच्छा कर सकता है और वहाँ वो है और तू उसका भला होने के विषय में बातें करता है और वो लोगों के लिए कितना भला है, तेरे विषय में क्या है? तब मैं उसकी सुनने लगा, ये तर्क है। मैंने सोचा ये ठीक बात है। कहा वो बता सकता है, उसके बोलने के लिए वचन नहीं है, बस अपने बालक को देख और वो जिएगा। मैंने कहा ये ठीक बात है और जितना तूने उसके लिए किया है और फिर भी ये जो वो तेरे लिए करता है, मैंने कहा ये ठीक बात है। मैं सोचने लगा भाई क्या है, समझे? हर चीज टूट कर बिखरने लगी जब ये तर्क पर आया, परंतु जब वो इस पर आता है ये रुक गया, ये वहीं टिक गया। मैं बस कहने के लिए तैयार था तो फिर मैं छोड़ दूंगा, परंतु जब वो अपने सारे तर्कों की सामर्थ्य से नीचे आ गया तो टूट गया, तब ये उस अनंत जीवन पर आ गया। वो नया जन्म क्या होता है यदि ये वहाँ नहीं होता, क्या होता यदि ये पास नहीं होता? हमने एक दूसरे को नहीं जाना होता जिस प्रकार अब हम जानते हैं। ये कलीसिया इस प्रकार से यहाँ नहीं होती, वे हजारों और लाखों सारे संसार में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो ये वहाँ था। तब जब मैंने सोचा क्या जो भी है मैं कौन होता हूँ कि महामहिमम से प्रश्न करूँ, मैं कौन हूँ जो उस सृष्टि कर्ता से जिसने मुझे मेरा जीवन इस पृथ्वी पर दिया है, मुझे वो बालक कहाँ से मिला, किसने उसे मुझे दिया? जो भी है मेरा नहीं, उसने बस मुझे कुछ समय के लिए उधार में दिया था। मैंने कहा शैतान मेरे पास से दूर हो, मैं आगे बढ़ा, मैंने अपना हाथ बच्चे पर रखा, मैंने कहा हृदय के टुकड़े परमेश्वर तुझे आशीष दे, एक मिनट में तेरा पिता तुझे नीचे ले जाकर तुझे माँ की बाहों में रख देगा, स्वर्गदूत तेरे छोटे से प्राण को ले जाएंगे और मैं तुझसे उस प्रातः में मिलूंगा। मैंने कहा प्रभु आप इसे मुझे दे दें, आप इसे ले जा रहे हैं, यद्यपि तूने मुझे घात किया है जैसा याकूब ने कहा, फिर भी मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरा विश्वास करता हूँ। यदि आप मुझे नरक में भेजते हैं मैं आपसे प्रेम करूंगा, जो भी हो मैं इससे अलग नहीं हट सकता, आप वही हैं। बुद्धि के अनुसार ये सब टूट गया था, परंतु आपका व्यक्तिगत नाता होना ही है, आपको नया जन्म लेना ही है। यही कारण है सेवकगण दूर हट जाते हैं, बड़े अभियोग और चीजें वे कहते हैं, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वे कभी उस पवित्र स्थान पर थे ही नहीं, जैसा कि मैं आज प्रातः बोल रहा हूँ। वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। वे कैसे ये कह सकते हैं कि वे परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं कि उस पवित्र आत्मा का इनकार करें जिसने आपको खरीदा है? ओह, बस याद रखें, यीशु ने अपने आप को मृत्यु तक नम्र बनाए रखा आपके लिए। वो बात बढ़ाने वाला नहीं था। जब उन्होंने उसके मुख पर थूका, उसने वापस उन पर नहीं थूका। जब उन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, उसने उनकी नहीं खींची। जब उन्होंने उसके एक और थप्पड़ मारा, दूसरी ओर उसने उनको कभी नहीं मारा। उसने उनके लिए प्रार्थना की, नम्रता में चलता रहा। वो नम्रता का एक आदर्श था। वो विश्वास से भरा हुआ था। क्यों? उसे मालूम था कि उसका वचन असफल नहीं हो सकता। वो वचन के द्वारा तब तक जिया कि वो वचन हो गया। ओ परमेश्वर, मैं अपने दोनों हाथ परमेश्वर को पकड़वा दूं इस भक्त मंडली के सामने। मुझे उस प्रकार से जीने दो, ये वचन ऐसा हो जाए कि मैं और ये वचन एक ही चीज हो जाएं। मेरे वचन ये वचन हो जाएं। मेरे हृदय का ध्यान वो मेरे हृदय में आ जाए, मेरे मस्तिष्क पर। मैं अपनी बुद्धि के खंभे पर उसकी आज्ञाओं को बांध दूं, उन्हें अपने हृदय के खंभे पर बांध दूं। मैं बस उसे देखता रहूं। जब परीक्षाएं उठें, मुझे मसीह को देखने दो। जब चीजें गलत हो जाती हैं, मुझे उसकी ओर देखने दो। जब मैं तैयार हो जाऊं और शत्रु मुझे क्रोध दिलाने का यत्न करे, मुझे यीशु को देखने दो। वो क्या करेगा? वो इतना वचन में था जब तक कि वो और वचन अपने में एक ही चीज नहीं हो गए। ध्यान दें, उसे विवाद नहीं करना था। उसे मालूम था कि वो और वचन एक ही चीज थे। उसे मालूम था कि वो परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन था और वो परमेश्वर की आज्ञा अंततः संसार को जीत लेगी। उसे मालूम था कि उसका वचन, उसके पास विश्वास था। उसे मालूम था कि वो कहां पर है। उसे इस पर विचार नहीं करना था और कहता, यहां तुम यहां आ सकते हो, यहां। शैतान ने कहा, अब देखिए, आप आश्चर्यकर्म कर सकते हैं। आप जानते हैं, आपके पास महान विश्वास है। आप आश्चर्यकर्म कर सकते हैं। मैं आपके लिए ओरल रॉबर्ट के भवन से दुगना बड़ा भवन बनवा दूंगा, क्योंकि लोग सारे एक ही चीज जो आपको करनी है उन्हें दिखाएं। यहाँ इस इमारत से कूद जाएं, सीधे नीचे जाएं, क्योंकि ये लिखा है, देखिए, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी समय तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। समझे? उसे मालूम है, या उसके पास सामर्थ थी। उसे मालूम था कि वो ये कर सकता था। उसे मालूम था कि ये उसमें था, परंतु उसने तब तक प्रयोग में नहीं लाना चाहा जब तक परमेश्वर ने उसे ना कहे। समझे? वो चाहता था कि परमेश्वर उसमें रहे, कुल मिलाकर वचन हो जाए। और उसे मालूम था कि जब उसने कुछ बोला कि वो परमेश्वर का वचन था। यद्यपि आकाश और पृथ्वी टल जाए, वो वचन किसी दिन जीतेगा। वो उपद्रव और परेशान करने वाला नहीं था। उसने बस परमेश्वर का वचन बोला। हर वचन जो उसके होठों से आता था परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ वचन था। क्या ये शानदार नहीं होगा यदि हम ये कह सकें, मेरा वचन और परमेश्वर का वचन एक से हैं। जो मैं कहता हूँ वो उसका सम्मान करता है, क्योंकि मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो मुझे पहले ना बताए। ओ, वहाँ आपका आदर्श है। वहाँ एक जीवन सुसमाचार के योग्य है। ना कि वे याजक, वे इतने शिक्षित और सक्षम, और वे सारे महान पद वाले पुरुष, और खड़े होकर लंबी प्रार्थनाएं करता हूँ, और विधवाओं के घर खा जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पद लेना सभाओं में, और वहाँ वे सारी चीजें। वे थे, वो जीवन सुसमाचार के योग्य न थे, परंतु वो सुसमाचार के योग्य था। इतना कि परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूँ, उसकी सुनो। मेरा वचन वो है, वो मेरा वचन है, वो और मैं एक ही हैं। जानते हैं, अब इस पर ध्यान दें। उसे मालूम था कि उसका वचन अंततः संसार को जीत लेगा। उसे मालूम था कि उसका वचन कहां से आया है। उसे मालूम था कि ये कभी असफल नहीं हो सकता। इसी कारण उसने कहा, आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी असफल नहीं होगा। समझे? वो ये कह सकता था। वो एक मनुष्य था, वो जो और परमेश्वर का वचन एक हो गए। उसने उनसे कहा, तुम्हें ये वो करना चाहिए। उसने कहा, पाप से मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? कौन मुझ पर दोष लगाता है? पाप अविश्वास है। यदि मैं परमेश्वर की उंगली से शैतानों को निकालता हूँ, तुम्हारे पुत्र किसके द्वारा उन्हें निकालते हैं? समझे? ये वो नहीं था, इसलिए उसे कुछ और होना चाहिए। समझे? यदि मैं, उन्होंने कहा, भाई हमने शैतान निकाले हैं। उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से ये करता हूँ, परमेश्वर से समर्थन प्राप्त वचन, तो तुम्हारे पुत्र उन्हें कैसे निकालते हैं? तब तुम ही न्याय करो। उसके दिनों के लोग और लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, उसके विषय में बातें की, परंतु वो उन्होंने उसे सताया हर तरह से जैसे वे सकते थे, उसके विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें कही, परंतु वो बढ़ता गया। अब मैं एक मिनट में ये कहते हुए बंद करना चाहता हूँ, इन दिनों के लोगों का झुंड तंत्रिका रोगी है। इस दिन के लोग तंत्रिका रोगियों का झुंड है। वे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेने से डरते हैं। कलीसिया के लोग, कलीसिया संगठन, कलीसिया के संगठन परमेश्वर के वचन की चुनौती को लेने से डरते हैं जो इस दिन की है। वे महसूस करते हैं जो वे प्रचार करते हैं वो इस घड़ी की चुनौती का सामना नहीं करेगा, समसून से अधिक नहीं कि वो अपनी स्थिति में मुकाबला करता। इसने परमेश्वर को लिया। यहाँ एक योजना है जिसने इसकी प्रतिज्ञा की है। एक मिनट में मैं इसे लूंगा। मैं उस वचन को एक मिनट के लिए थामे रहना चाहता हूँ। यद्यपि वे अपने को मसीही कहते हैं, उन्होंने धर्मसार अपना लिए हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए धर्मसार कि परमेश्वर के वचन का स्थान ले, ताकि वे धर्मसार ले सकें, क्योंकि मनुष्य ने इसे बनाया है। परंतु वे अपना विश्वास परमेश्वर पर रखने से डरते हैं कि वे इसका दावा करते हैं कि वे प्रेम करते हैं। ये ठीक बात है। और तब आप कहते हैं कि वो जीवन सुसमाचार के योग्य है, नहीं हो सकते। यद्यपि वे कलीसिया के सदस्य हैं, परंतु वे सुसमाचार के योग्य नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुसमाचार, यीशु ने कहा, सारे संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। और जब आप विश्वासियों में ये होने का इनकार करते हैं, तो आप में जीवन कैसे हो सकता है? कोई मतलब नहीं, आप कभी कोई बुरा शब्द नहीं बोल सकते, आप सारी 10 आज्ञाओं को मान सकते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अब भी सुसमाचार के योग्य नहीं है, समझे? ये नहीं हो सकता। वे याजक ये करते थे और फिर भी योग्य न थे। उसने कहा, तुम लोग अपने पिता शैतान से हो, जो अपनी उंगली उन मनुष्यों पर रख सकता था, एक दोषी चिन्ह, और वे बिना अनुग्रह के मार डाले गए। पवित्र लोग, और यीशु ने कहा, तुम लोग अपने पिता शैतान से हो। जब सुसमाचार अंदर आया, यद्यपि वे अपने आप को मसीही कहते हैं, वे अपने धर्मसार को पकड़े रहने में प्रेम करते हैं, अपने मतसारों से, ओ धर्मसार, आज के इस दिन के आधुनिक लोगों के विचारों को स्थापित और पूरा करता है। और एक मनुष्य जो आज के दिन सफल होने जा रहा है, उसे आधुनिक प्रवृत्ति के विचारों के साथ जाना होता है। मैं इसे अच्छे और स्पष्ट रीति से कह दूं, समझे? एक मनुष्य यदि आप सफल होने जा रहे हैं, तो आपको आज के आधुनिक विचारों के साथ बढ़ना होगा। वे आसपास जाते हैं, कहते हैं, ओ क्या वो प्रिय नहीं है, क्या ये शानदार नहीं है, वो वहाँ ऐसा सीधा रुका रह सकता है और हमारे साथ कभी भी 15 मिनट से अधिक नहीं रह सकता, और हमारा पास्टर इन चीजों पर हमें उलाहना नहीं देता। उस पास्टर के लिए लज्जा की बात है। कोई मनुष्य जो प्रचार मंच पर खड़ा हो सकता है और आज के दिन के पाप को देख सकता है और ना चिल्लाए, तो कुछ गड़बड़ है उस मनुष्य के साथ। वो सुसमाचार के योग्य नहीं है जिस प्रचार का वो दावा करता है। ये ठीक बात है। इसलिए ऐसा करने के द्वारा वे अपने लिए बहाने बनाते हैं, कहने के द्वारा। अब मेरी भक्त मंडली देखिए, अधिक समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति यहाँ आया कि विशेष बड़ी कलीसिया से, और वो एक शोध प्रबंध लिख रहा था, और उसने कहा, मैं दिव्य चंगाई पर लिख रहा हूँ। कहा, भाई ब्रणम, हम अपने नामधारी में आपसे प्रेम करते हैं, एक बहुत बड़े नामधारी, राष्ट्र का एक बड़ा, या संसार का। और उसने कहा, हम इस नामधारी में आपसे प्रेम करते हैं। वो ठीक यहाँ जेफरसन विले में था, परंतु कहा, मैं इस दिव्य चंगाई के विषय में मालूम करने आया हूँ। उसने कहा, केवल एक ही गलती है जो मेरी कलीसिया ने वास्तव में पाई है, समझे? उसने कहा, आप बहुत से पेंतेकोस्तलों से संबंध बनाए हुए हैं। मैंने कहा, भाई आप जानते हैं कि ये ठीक बात है। मैंने कहा, ये सच है, आप जानते हैं, मैंने सदा चाहा कि मौका मिले कि उनसे दूर रहूं। मैंने कहा, मैं बताता हूं क्या, मैं आपके नगर में आऊंगा, आपकी कलीसिया मेरी उत्तरदायी हो जाए। ओ, उसने कहा, वे नहीं करेंगे। मैंने कहा, यही जो मैंने सोचा। कहा, आप देखिए, मेरा नामधारी इसका पक्ष नहीं लेगा, ये ऐसा ही बहाना है जैसे मैंने ब्याह किया है या बैलों का जुआ खरीदा है। मैं चिंता नहीं करता आपके पास डॉक्टरेट की कितनी डिग्रियां हैं और आप अपने नामधारी के द्वारा कैसे देखे जाते हैं। उस प्रकार की सेवकाई सुसमाचार के योग्य नहीं है जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी कलीसिया का सदस्य जो इस प्रकार की चीजों का पक्ष लेगा और अपने आप को एक मसीही कहलाएगा और यहाँ निकल कर जिए और स्त्रियां अपने बाल कटवाएं और ऐसे वस्त्र पहने जो बाइबल कहती है उनके लिए नहीं है, और पुरुष लोग वैसे ही जीवन बिताएं जो वे कर रहे हैं, भक्ति का एक भेष, नशा पी रहे हैं और सिगार पी रहे हैं और बहुत सी शादियां कर रखी हैं और कलीसिया में डीकन हो गए हैं और यहाँ तक कि पास्टर भी हैं और आदि आदि, और लोग जो ऐसों के साथ रहते हैं इस प्रकार का जीवन सुसमाचार के योग्य नहीं है। एक स्त्री जो जाएगी और टेलीफोन पर आती है और बातें करती है और कलीसिया में उपद्रव मचाती है और इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का जीवन सुसमाचार के योग्य नहीं है जो कि हम सामने रखने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो कलीसिया को तोड़ता है और लोगों के बीच लड़ाई शुरू कराता है और इस प्रकार की चीजें, वो उस सुसमाचार के योग्य नहीं है जो हम प्रचार करते हैं। बिल्कुल ठीक, ये भक्ति का भेष भरना और सामर्थ का इनकार करना, परमेश्वर की सामर्थ जो आपको ऐसों से अलग रखती है। ध्यान दें, अब वे ये नहीं करते, वे ये नहीं करेंगे, उनके पास बहाने हैं कि उनकी कलीसिया इसमें विश्वास नहीं करती। वे अच्छा, परंतु यीशु कहेगा, आज रात्रि एक मनुष्य से कहेगा, उसके हृदय से बात करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ तू जाकर पूरा सुसमाचार प्रचार कर, मेरी कलीसिया इसका पक्ष नहीं लेती, प्रभु आप मुझे क्षमा करें यदि आप करेंगे, मेरे पास एक अच्छा कार्यभार है, मैं आप जानते हैं मैं एक पास्टर हूँ इस नगर की एक बड़ी कलीसिया, प्रभु हम वहाँ आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, जी हाँ श्रीमान हम निश्चय ही करते हैं मैं ये कर सकता हूँ, वही बहाना वही बात। इसलिए वे आत्मिक उत्सव में जो उसकी प्रतिज्ञा है उसमें नहीं आते, समर्थन प्राप्त वचन। क्या यीशु ने नहीं कहा जहाँ लोथ है उकाब वहाँ जमा होंगे, उकाब न कि टीसा बाज, अब उकाब, जहाँ ढलान है और वो लोथ तब टीसे जमा होते हैं, परंतु जहाँ ताजा साफ मांस है उकाब जमा होंगे। समझे, निश्चय ही जहाँ वचन है उकाब का भोजन वे इकट्ठे होंगे। इसलिए वे आत्मिक पर्व में नहीं आते जिसमें उन्हें निमंत्रण मिला है। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अमेरिका को निमंत्रण दिया है पिछले 15 वर्षों से इस महान बेदारी में, आत्मिक पर्व में? क्या वे आए? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। तब आने से इनकार कर दिया, क्या ये जीवन सुसमाचार के योग्य है? यद्यपि वे अपने आप को कहलाते हैं, जब एक व्यक्ति मेरे पास आया, अधिक समय नहीं हुआ, और आकर मेज पर बैठ गया और कहा, भाई बनम, मैं मेज के उस पार पहुंचना चाहता हूं, एक महान पुरुष, मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं कलीसिया में था और उससे प्रचार करते सुना था, बोला मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के दास हैं। मैंने कहा, धन्यवाद डॉक्टर, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे एक भाई के समान कितना प्रेम करता हूँ, और कहा, आपने मेरी रानी को यहाँ बैठे हुए देखा, मेरी पत्नी, आपको याद है? मैंने कहा, मुझे याद है। बोला, डॉक्टर ने उसे जीवित रहने के लिए 2 सप्ताह दिए उस कैंसर के साथ, और आप नगर में आए और आपने उसके लिए प्रार्थना करी, ऊपर देखा और एक दर्शन देखा, पीछे देखा और मुझे बताया, यहोवा यूं कहता है, वो चंगी हो जाएगी, उसकी पीठ में एक बड़ा निशान है, इस प्रकार से नीचे दब गया, एक बड़े जैसा दिखा, जैसे स्त्री के स्तन का भाग अंदर खिंच गया उसकी पीठ में, ठीक उसकी रीढ़ पर, और आज उसकी पीठ पर निशान भी नहीं है। कहा, वहाँ मेरी रानी बैठी है, आज एक जीवित। कहा, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि आपसे प्रेम करूँ, उस प्रार्थना के लिए, विश्वास की प्रार्थना, मैं कैसे ये विश्वास ना करूँ कि आप प्रभु के दास नहीं हैं, जब आपने मुझे देखा और बताया बिल्कुल ठीक जो घटित होगा। उसने कहा, अब मेरे पास आपके लिए कुछ है भाई ब्रणम। उसने कहा, मैं यहाँ एक महान पेंटिकोस्टल संगठन से संबंधित हूँ। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं ये जानता हूँ। उसने कहा, अधिक समय नहीं हुआ, मैंने भाइयों से बात की है और उन्होंने बताया कि मैं आपसे संपर्क करूं और आपको बताऊं कि ये एक लज्जा की बात है कि आप इस परमेश्वर की दी हुई सेवकाई को लेकर नदी से हटकर लोगों के झुंड को और इस प्रकार के आसपास में हैं। मैंने कहा, ये ठीक बात है। कहा, हाँ। कहा, परमेश्वर ने ये सेवकाई शक्ति स्थलों पर, बड़े स्थानों, विशिष्टताओं पर। मैंने देखा, शैतान ठीक तब बात कर रहा था। मैंने सोचा, हाँ, इस पहाड़ से नीचे कूद जा और दिखा, आप जानते हैं, इस भवन पर से, समझे समझे। मैंने सोचा, इसकी थोड़ी दूर तक अगुवाई करके ले जाऊं। मेरी बूढ़ी माँ कहा करती थी, गाय की रस्सी अधिक ढीली छोड़ दो, वो अपने आप को उसमें फंसा लेगी। मैंने कहा, क्या ये ठीक बात है? हाँ। कहा, ये एक लज्जा उसके द्वारा जो आप करते हैं। कहा, आप क्या हैं? आज आप अपने लिए खाना कठिनता से खरीद पाते हैं। और कहा, ओलर रॉबर्ट और उन लोगों को देखें, अंदर आए और आपकी 1/100 भाग की सेवकाई के साथ बाहर चले गए, देखिए वे कहाँ जाते हैं। मैंने कहा, जी हाँ, ये ठीक बात है, देखा। और उसने कहा, मेरा झुंड आपको ले लेगा, हम आपको ठीक वहाँ ले जाएंगे, जैसे जैसे हमारा एक भाई। वे सारे आपको अपनी संगति का दाहिना हाथ देंगे और हम एक हवाई जहाज किराए पर लेंगे और आपको आपकी मजदूरी $500 प्रति सप्ताह देंगे या अधिक यदि आप चाहेंगे और हम आपको हर मुख्य नगर में भेजेंगे इस राष्ट्र में। ये ठीक फिनिक्स एरिजोना में घटित हुआ मेज पर आमने सामने। और उसने कहा और हम आपका भुगतान करेंगे। कहा तब संसार बाहरी संसार वे विशिष्ट लोग बड़े बड़े व्यक्ति ऊंचे और ऊंचे। कहा आप सदा नीचे और बाहर के विषय में बातें करते हैं। हमारे पास ऊंचा और बाहर का है। कहा उन्हें प्रभु का हाथ देखने दें, तब मैं अपनी पत्नी को साथ लूंगा और दूसरे सिद्ध कर सकते हैं कि वे बातें जो आप कहते हैं घटित होती हैं। कहा जी हाँ श्रीमान ये शानदार रहेगा। अब देखिए वो मनुष्य DL LLD की स्थिति में पुस्तकों का एक लेखक, देखिए साहित्य का एक डॉक्टर, अच्छा लेखक, अच्छा व्यक्ति, समझे उसे पवित्र वचन नहीं मालूम। क्या आपको मालूम है कि स्वर्गदूत जो इस प्रकार के कार्य कर सकते थे कभी भी सादोम में नहीं गए। वो बुलाए हुए झुंड के साथ ही टिका रहा अब्राहम के साथ। उसे बस ये नहीं मालूम मैंने बस उसे अकेला छोड़ दिया, वहाँ बस थोड़ी देर बैठा रहा। मैं केवल ये देखना चाहता था कि पकड़ क्या थी। मैंने कहा अच्छा मुझे क्या करना होगा। कहा भाई ब्रैनम आप सिर्फ एक चीज जो उन्होंने कही, हमने थोड़ी सी चीजों पर विचार किया है, छोटी मोटी बातें जो आप सिखाते हैं कि आप बस उनको किनारे कर दें। मैंने कहा उदाहरण के लिए वो क्या है भाई। ओ उसने कहा आपका बपतिस्मा, आप जानते हैं आप वन्य जैसे लोगों के समान बपतिस्मा देते हैं, कुछ इस प्रकार से बोला, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें। मैंने कहा ओ, मैं आगे बढ़ गया और उसने कहा वो आरंभिक प्रमाण और स्त्री प्रचारक और थोड़ी सी मामूली इस प्रकार की चीजें। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा मुझे आश्चर्य है कि एक परमेश्वर का दास परमेश्वर के दूसरे दास से कहेगा इस सहयोग के लिए जो आपने मुझसे किया और मुझे भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं, और जानते हुए कि प्रभु का वचन या वचन का प्रकाशन भविष्यद्वक्ता के पास आता है, और आप पलट गए डॉक्टर पोप, यह आपकी अच्छी बुद्धिमानी नहीं दर्शाता, और कहेंगे और परमेश्वर के एक दास से कह रहे हैं और आप परमेश्वर के दूसरे दास से कह रहे हैं कि इन बातों पर समझौता कर लूं, उसके लिए ये जीवन से अधिक है स्वयं में। मैंने कहा नहीं श्रीमान, भाई पोप मैं किसी भी तरह से नहीं करूंगा, नहीं श्रीमान। ये क्या है, वहाँ अनंत जीवन का एक दाना है, जीना या मृत्यु, चाहे आप महान व्यक्ति हैं या महान व्यक्ति नहीं हैं। उस दिन मैं निकल गया, कोई अपमान नहीं इन दोनों व्यक्तियों के लिए। मैंने उधर की ओर देखा, वहाँ तुलसा ओक्लाहोमा में एक महान चित्र था ओल्डर रॉबर्ट का, एक नए स्थान में सेमिनरी बन रही है कि सेवकों को शिक्षा दे, इसके दाम हैं। और मैं जानता हूँ कि देमा शिकेरियन, भाई कॉल विलियम्स और वे जो इसकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हैं, $5 करोड़ $30 लाख की इमारत के साथ एक 35 साल लड़का, ये एक बड़ा भाग जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है। मैं सोचता हूँ मैं सेमिनरी के साथ, मैं इसके विरोध में हूँ आरम्भ से ही। और ये कहा ओल्डर रॉबर्ट का भविष्य का घर महान सेमिनरी होगा। नीचे सड़क पर जाओ, वहाँ एक महान आधुनिक चीज थी और ओल रॉबर्ट एक पुराने फटे तंबू में है, यहाँ कैंसास नगर में मेरी सभा में आए कैंसास में। उसने कहा टॉमी ओसबर्न का भविष्य का घर, ओ पुरुष, लगभग $30 या $40 लाख का इस प्रकार से खड़ा हो रहा है। और वहाँ टॉमी ओसबर्न एक बहुत अच्छा मसीही लोगों में से एक, वो एक वास्तविक परमेश्वर का भेजा हुआ मनुष्य है। वहाँ ठीक सड़क के पार खड़ा है छोटा अधीर लड़का, छोटा लड़का और लड़की एक कार में चारों तरफ घूमते बाहर निकल कर बोला भाई ब्रैनम मैं वहाँ पर था जब मैंने एक पागल को भागते देखा और मैंने आपको आपकी उंगली से उसके मुंह पर इशारा करते देखा और कहते यीशु मसीह के नाम में इसमें से बाहर आ जा, मैंने उसे आपके पैरों में पड़े देखा। उसकी इस भविष्यवाणी करने के बाद कहा आज रात्रि मैं तुझे इन 6,500 भक्त मंडली के लोगों के बीच तुझे नीचे पटक दूंगा। और कहा मैंने आपको वहाँ खड़े हुए देखा, कभी भी आवाज ऊंची नहीं की और कहा प्रभु के नाम में क्योंकि तूने परमेश्वर के आत्मा को चुनौती दी है आज रात्रि तू मेरे कदमों में गिरेगा। उसने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं किसके कदमों पर गिरूंगा। और मैंने कहा शैतान तू इसमें से बाहर आ जा। वो बस पीछे को गिर गया और फर्श पर मेरे पैरों को पकड़ लिया। उसने कहा परमेश्वर परमेश्वर है भाई ब्रैनम। कुल मिलाकर कहा मैंने अपने आप को 2 या 3 दिनों के लिए बंद कर लिया। वो उलाहने नहीं देता, वो इसके विषय में बताएगा, वो इस बात से लज्जित नहीं होता। बोला आप सोचते हैं कि मेरे पास चंगाई का वरदान है। मैंने कहा टॉमी इसे भूल जाओ, तुम्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा गया है, जाओ प्रचार करो, भाई बॉसवर्थ के साथ जाओ। मैंने उधर निहारा और मैंने देखा मैंने इन दोनों से पहले आरंभ किया है। मैंने सोचा वहाँ ओलो रॉबर्ट 500 मशीनों के साथ है जिसे कि मनुष्य के हाथों ने कभी नहीं छुआ। वे चिट्ठियाँ डाक में $40 लाख पिछले वर्ष, 40 लाख उस सारे पैसों का जो सारे मसीह संसार में लिया गया, उसका 1/4 एक व्यक्ति के पास आता है। सारे मसीह संसार का 1/4 एक व्यक्ति के पास आता है। क्या ही स्थान है, इसे देखने में वहाँ गया। और जब ओरल रॉबर्ट, मेरा भाई है, ओ मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो एक वास्तविक व्यक्ति है, वास्तविक जन, और मैं उससे प्रेम करता हूँ, और वो मेरे संसार के विषय में सोचता है और मैं भी उसके, हम बस वचन पर सहमत नहीं होते। और टॉमी ऑसबर्न अधिक अच्छा नहीं, मैं उसके संसार के विषय में सोचता हूँ, जिन लोगों से मिला हूँ उनमें से बहुत सो से अच्छा है टॉमी ऑसबर्न। और वे पुरुष, मैंने सोचा जब मैं उनके कार्यस्थल पर गया और देखा उनके पास क्या था, मैं सोचता हूँ जब वो मेरा देखने आएंगे तो मुझे लज्जा आएगी। एक छोटी टाइप मशीन और हम चिट्ठियाँ निकालते हैं और क्या ही बात, और इस समय की लंबी गाड़ी के पिछले छोर पर बैठा हूँ। मैंने सोचा वो क्या ही होगा, तब मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा अच्छा, ओरल रॉबर्ट का भविष्य का घर, टॉमी ऑसबर्न का भविष्य का घर एक दूसरे से बात नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ नीचे सड़क पर आ गया। मैंने सोचा परंतु मेरे विषय में क्या है, और किसी चीज ने कहा ऊपर देखो। सोचा हाँ प्रभु, मुझे अपना धन स्वर्ग में रखने दें, क्योंकि जहाँ मेरा हृदय है। अब ये बात मैं दुख में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये हुआ है और परमेश्वर जानता है कि ये सही बात है। समझे, जहाँ तेरा खजाना है। या आप कुछ महान बनना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं, आप कुछ नहीं हैं। आप उस स्थान पर पहुंचते हैं जब आप कोई महान नहीं बनना चाहते, आप मसीह के छोटे नम्र दास बनना चाहते हैं। यही समाधान है कुल मिलाकर। भाई बोझ और वे शिकागो में कलीसिया बना रहे हैं, उन्हें फिलाडेल्फियन आराधनालय उस नामधारी के लिए छोड़ना ही है। अब वे इस विषय में बातें कर रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जिसका कोट पीछे की ओर इस प्रकार से हो, कोई डीडी। मैंने कहा आप अपने मार्ग पे हैं। यदि आप कोई वास्तविक सही पादरी उस कलीसिया के लिए ढूंढना चाहते हैं, एक साधारण नम्र व्यक्ति को ढूंढें जो अपना नाम कठिनता से पढ़ सके और उसका हृदय परमेश्वर के लिए अग्निमय हो, उस व्यक्ति को लें, वही जिसे आप चाहते हैं। कोई जो इन सारी बातों को न जानता हो, कोई जो आदेश ना दे और न चलाए और तुम सबको सब प्रकार के कर्जे में डुबा दे और आदि आदि, और बस आपको परमेश्वर का वचन खिलाए, इस प्रकार का व्यक्ति लें। इसलिए वे आत्मिक पर्व में नहीं आएंगे। मुझे बंद करना है, अब मैंने अधिक समय ले लिया है। अब लगभग 6 मिनटों में हम विसर्जित हो जाएंगे, प्रभु ने चाहा तो। मैंने सुना कोई कहता है, परंतु भाई बनम अच्छा हो कि आप उस वक्तव्य को वापस ले लें। कह रहे हैं लोग तंत्रिका रोगी नहीं है, ये लोग तंत्रिका रोगी नहीं है, वे केवल शिक्षित हैं। तो फिर वे पढ़े लिखे अधीर हैं, ये ठीक बात है। जी हाँ, वे तंत्रिका रोगी नहीं, वे शिक्षित हैं। तो फिर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, समझे, आप समझते हैं। तो फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया उनके आज के व्यवहार की व्याख्या करें। यदि वे तंत्रिका रोगी नहीं है, मुझे बताएं किसने उन्हें ऐसा बना दिया है कि ऐसा व्यवहार करें जैसा वे करते हैं, यदि वे तंत्रिका रोगी नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति जो अपने नामधारी के लिए खींचता है लालची है। यीशु ऐसा नहीं था, उसे किसी भी विषय में जल्दी नहीं होती थी, समझे, वो लालची नहीं था, वो हमारा आदर्श था। अपराध राष्ट्र में आज कभी से अधिक अपराध है। क्या गड़बड़ है, किशोर अवस्था वाले कलीसिया के सदस्य जीवन ले रहे हैं, पुरुष अपनी पत्नियों और परिवारों को गोली मार रहे हैं और अपने बच्चों को जला रहे हैं, और अपराध की लहर को देखें, वे तंत्रिका रोगी नहीं है। तो फिर क्या बात है, उनके व्यवहार क्या है, शक्ति के लिए पागल राष्ट्र, हर कोई हर चीज लेना चाहता है बाकी, और एक झंडा बनाता है, एक राष्ट्र की उनका झंडा और उनका राष्ट्र, शक्ति के लिए पागल, अनैतिकता, क्यों संसार किसी समय में जो कभी था अनैतिक है, सड़क पर नंगी स्त्रियां, नंगी औरतें, और कहते हैं कि वे सही बुद्धि अवस्था में हैं, वे नहीं हो सकती, वे बस नहीं हो सकती। सुनिए, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसने कपड़े उतार रखे थे, वो सेनाएं थी, उसका चित्त ठिकाने नहीं था। जब यीशु ने उसे पाया और उसे उसकी सही मनोदशा दी, उसने अपने कपड़े पहन लिए, ये ठीक बात है। क्या है जो आपके कपड़े उतरवा देता है, शैतान, ये ठीक बात है। तब कहते हैं वे तंत्रिका रोगी नहीं है। यहाँ सड़क से आरंभ करें और नगर के 4 खंड बिना नंगी स्त्री को देखे पार करें और वापस आकर मुझे बताएं, ठीक है, ढूंढें। तब आप कहते हैं वे तंत्रिका रोगी नहीं है। तो फिर क्या गड़बड़ है, वे अपनी सही मनोदशा में नहीं हो सकते। एक सही मनोदशा वाली स्त्री ये नहीं करेगी, उसके पास अच्छी चेतना है, वो जानती है कि वो क्या पहनकर बाहर आई है, शैतान की कामुकता का झुंड वहाँ है, बस गंदी, अश्लील, बेढंगी, पियकड़ लोग, हत्यारे, हर चीज। आप कहते हैं अब संसार अधिक शराब पी रहा है, वे शराब के लिए अब अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं संयुक्त राज्य में बजाय कि वे परचून में। मैं सोचता हूँ ये, मैं भूल गया कितना गुना अधिक अल्कोहल का कर्जा हर वर्ष होता है राष्ट्र में जो पहले हुआ। और ये शराब व्यवस्था क्या करती है, आपको पागलखाने संस्थान में भेज देती है। कैंसर, जब चिकित्सा डॉक्टरों ने समस्त संसार से एक पत्रिका में लिखा और आपको बताया कैंसर ट्रकों के द्वारा सिगरेट चूहों पर इसे लगाया और ये सिद्ध किया कि ये आपके फेफड़ों में आपको कैंसर देता है, उसमें से 70% को सिगरेट से कैंसर होता है। और वे स्त्रियां और पुरुष गहरा सुट्टा मारेंगे और आपके चेहरे पर धुआं उड़ाएंगे। यदि ये तंत्रिका रोगी नहीं तो और क्या है? तंत्रिका रोग क्या होता है? जब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार और सिद्ध किया जा सकता था और स्वर्ग का परमेश्वर अग्नि स्तंभ के रूप में लोगों के ऊपर छाया और दिखाता है कि यीशु मसीह अपने आगमन के अंतिम दौर में है, उन्हें अंतिम चिन्ह दे रहा है और इस पे हंस रहे हैं और उपहास उड़ा रहे हैं और अपने आप को कलीसिया के सदस्य कहते हैं और फिर कहते हैं वे तंत्रिका रोगी नहीं है। इसकी व्याख्या करें, मेरा समय बीत रहा है, परंतु जरा पूछें, यदि वे तंत्रिका रोगी नहीं हैं, वे पढ़े लिखे तंत्रिका रोगी हैं, ये बिल्कुल ठीक है, उनकी स्थिति की व्याख्या करें, आप नहीं कर सकते। वे अपने बाल कटाते हैं, सांसारिक कपड़े पहनते हैं और इस प्रकार से सड़क पर घूमते हैं। और परमेश्वर की बाइबल इसके विरोध में चेतावनी देती है, यहाँ तक कि बाल कटी स्त्री को प्रार्थना करने से मना करती है और कहते हैं वो पुरुष, और वो ये करती है और वो अपने पति पर अपने लिए दावा करती है कि वो अपने में अनैतिक है और उसे पूरा अधिकार है कि उसे तलाक दे और उसे अपने से अलग कर दे। ये बिल्कुल ठीक बात है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है और स्त्रियां ये सुनती हैं और निरंतर छोटे बाल रखती हैं और अपने आप को मसीही कहती हैं। क्या ये तंत्रिका रोग नहीं है? तंत्रिका रोग क्या है? मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बताए तंत्रिका रोग क्या है। फिर जी हाँ, वे तंत्रिका रोगी हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त, डिग्री कॉलेज, हम अपने बालकों को शिक्षित करने में अधिक समय बिताते हैं, बीज गणित और जीव विज्ञान बजाय कि बाइबल के और यीशु मसीह के। इस गांव में कोई बालक नहीं, आपको नहीं बता सकता कि डेविड क्रॉकेट कौन है, उनमें से तिहाई नहीं जो बता सके कि यीशु मसीह कौन है, तो फिर ये तंत्रिका रोग नहीं, निश्चय ही ये है। कैसे हम इस पर आगे 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 बढ़ते रह सकते हैं कि वे कैसे करते हैं? बस याद रहे, और कलीसियाएं इसका समर्थन करती हैं जबकि बाइबल इसे दोषी ठहराती है। क्या सेवकाई तंत्रिका रोग है? शिक्षा तंत्रिका रोग है? ये बिल्कुल ठीक है, कलीसियाएं इसका समर्थन करती हैं। लूथ को याद करें, वो एक बुद्धिमान मनुष्य था, उसे देखिए एक मिनट के लिए। नहीं नहीं, चलिए नहीं, कुछ मिनट ऊपर हो गई हैं, मुझे क्षमा करें, ये बहुत ही आवश्यक है, ये बढ़ता जा रहा है। आप मुझे यहाँ सुनने के लिए आए हैं इस टेप को बनाने। देखिए देखिए, आइए एक मिनट के लिए रुकें, अपने हृदयों में एक सेकंड के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये देखने दे, अपनी समझ को खोल दे, परमेश्वर ऐसा करे। इसे देखें, जरा इस राष्ट्र को लें, केवल चलिए कहते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, बाइबल ने ये कहा, सदोम के पाप धर्मी लूत के प्राण को प्रतिदिन दुखी करते थे, उसके पास इतना पर्याप्त साधारण साहस नहीं था कि इसके विरोध में खड़े हो। ये ठीक बात है, वो ये नहीं कर सका क्योंकि वो नगर का नगर अधिकारी था, वो नहीं कर सका, परंतु बाइबल ने कहा कि सदोमियों के पाप उसके प्राण को दुखी करते थे। वो जानता था कि ये गलत था, परंतु उसमें ये करने का साहस नहीं था कि इसके विरोध में खड़ा हो। अब देखिए अमेरिका में कितने लूथ हैं। बीते कल उनकी बाइबल पढ़ रहा था कि दिन के लिए उनका संदेश तैयार करूं और पानी में यीशु मसीह के बपतिस्मे में पार करूं। उनमें से कितने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में होकर निकले। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। मरकुस 16, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। यूहन्ना 14:12, वो जो मुझ पे विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो तुम जो चाहो मांगो और ये हो जाएगा। कितने लूतों ने ये देखा, परंतु क्योंकि उनके बहाने उनके नामधारी के ये ढूंढो और बाइबल में देखो, उनकी भक्त मंडलियों को देखिए, बाल कटी स्त्रियां, और वे जानते हैं कि बाइबल इसकी निंदा करती है। देखिए सड़क पर जाएं, उनकी अपनी कलीसिया के सदस्य सड़क पर छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं और वे जानते हैं कि वचन इसके विरोध में है, परंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं कि इसके विरोध में बोलें, परंतु फिर भी लोग मसीही कहलाते हैं, उनका प्राण उन्हीं के अंदर इसके विरोध में चिल्लाता है, परंतु उनमें शक्ति नहीं है। यदि ये आधुनिक सादूम नहीं है, ये कहाँ पर है? परमेश्वर हमें किसी को दे जो इसके विरोध में चिल्लाए। ये ठीक बात है, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, पुलाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। आज हमें इसी की आवश्यकता है। ध्यान दें, ये आधुनिक सादोम है, याद रखें, समझे, सारा राष्ट्र आधुनिक सादोम और गमोरा हो गया। लूत वहाँ फिर से जीवित है नहीं, वहाँ सारे में, क्योंकि उसका ईमानदार विवेक उसे वचन के द्वारा बताता है कि वो गलत है। शिकागो में देखें, बड़ा वाला शिकागो, जब वहाँ 300 प्रचारक बैठे हुए थे और प्रभु ने मुझे उस रात्रि बता दिया कि वे क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए जाल बिछा रखा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। मैंने जाकर भाई कार्लसन को बताया, मैंने कहा आप इसे उस होटल में नहीं कर सकेंगे, आपको दूसरा स्थान लेना होगा और ये हरे रंग का कमरा होगा, और उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। क्या उन्होंने नहीं, भाई कार्लसन, उसने अपना सर झुका लिया। वो यहाँ कुछ दिनों पहले मेरे कार्यालय में बैठे थे मेरे लिए कि मैं आऊँ शिकागो की सभा में। कहा मैं ये कभी नहीं भूल सकता भाई बर्नम। और मैंने कहा उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ है। क्यों भाई कार्लसन, क्या आप मुझे बताने से डर रहे हैं? क्यों, आप और टॉमी हिक्स? उन्होंने अपना सर झुका लिया। मैंने कहा टॉमी तुम क्यों नहीं जाकर बोलते हो? कहा मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा मैंने सोचा तुमने कहा तुम मेरा पक्ष लोगे। मैंने कहा बीती रात्रि प्रभु ने मुझे बताया कि तुम आज वहाँ जा रहे हो और तुम्हें पता लगेगा कि वो भवन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम दूसरे भवन को जा रहे हो। डॉक्टर मीड इस ओर बैठेंगे और वो अश्वेत पुरुष, उसकी पत्नी जो गाते हैं, ठीक यहाँ पर बैठेंगे और आदि आदि, वे सब कहाँ कहाँ बैठेंगे। मैंने कहा वहाँ पर एक बुद्ध पुजारी होगा। और मैंने कहा अब मालूम करें वे मेरे विरोध में हैं, क्योंकि मैं पानी का बपतिस्मा प्रचार करता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने ये मेरे विरोध में पाया है, मैं सर्ववंश प्रचार करता हूँ और प्रमाण के विरोध में कि हर मनुष्य भाषाओं में बात करता है, उसके पास पवित्र आत्मा है और चीजें। मैंने कहा आओ और परमेश्वर को देखो। उसमें होकर वे वहाँ चले गए और तब से 2 घंटे बाद या ठीक कुछ दोपहर बाद उन्होंने भाई कार्लसन को बुलाया और उसने कहा वो व्यक्ति जिसने उन्हें देना था और उसका अग्रिम भुगतान कर दिया था, कहा हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रबंधक ने कहा ये पहले ही उठा चुके हैं एक संगीतकार को उस रात्रि के लिए या उस प्रातः के लिए, और वे इसे नहीं ले सकते। इसलिए हम नगर से और उस क्षेत्र से बाहर चले गए हैं। और उस प्रातः जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ खड़े हुए और भाई कार्लसन ने कहा केवल एक बात है, आप लोग भाई ब्रनम से असहमत हो सकते हैं, परंतु कहा वो इस बात से डर में नहीं है जो वो विश्वास करता है। उसने कहा मुझे ये बातें बता दी कि ये होगा ठीक वैसे ही जैसे ये है। उसने कहा अब वो यहाँ पर है, उसे अपने लिए बोलने दो। मैंने वो वचन लिया, मैं स्वर्गीय दर्शन का अनाज्ञाकारी नहीं हूँ जैसा पौलुस ने कहा। मैंने कहा मेरे लिए तुम्हारे पास ये है, यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा। इससे अच्छा है कि आप लोग 300 से अधिक अपने आप को डॉक्टर अमुक करके परिचय दें। मैंने कहा मेरे पास तो व्याकरण विद्यालय तक की शिक्षा भी नहीं है, परंतु मैं किसी भी मनुष्य को चुनौती देता हूँ कि अपनी बाइबल यहाँ लेकर आए और मेरे बराबर में खड़ा हो और जो भी कहा गया है उसके वचनों में से एक का इनकार करे। आपके पास यहाँ टेप पर है, यदि आप इसे सुनना चाहते हैं। वो सबसे अधिक शांत भीड़ थी जो कभी आपने सुनी हो। मैंने कहा क्या मामला है, क्या कोई यहाँ पर है आज रात्रि जो उस प्रातः की सभा में था? आइए देखें जो अपने हाथ रोके हुए हैं। जी हाँ ठीक है, निश्चय ही चारों ओर देखा। मैंने कहा तो फिर यदि आप मेरा समर्थन नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरा पीछा छोड़ो। ठीक है, बहुत शोर मचा जब वे निरुत्तर थे, परंतु आमने सामने आओ इस मामले के साथ, ये अलग है, ये ठीक बात है। ये वे लोग बाहर निकल गए। टॉमी हिक्स ने कहा मैं उन 300 टेपों को चाहता हूँ कि हर एक उस ढोंगी त्रियकता वाले प्रचारक को भेजूं जिन्हें मैं जानता हूँ। वे लोग आकर मुझसे हाथ मिलाने लगे, बोले कि हम आराधनालय में आकर और बपतिस्मा लेंगे। कहाँ हैं वे लोग? बहाने, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा नामधारी मुझे ये नहीं करने देगा। मैंने एक स्त्री ब्याही है, मैंने बैल खरीदे हैं, जुए वाले या जुआ बैलों का, बल्कि मैंने जमीन खरीदी है, मुझे उसे देखना है, समझे। उनमें से कुछ चीजें जैसे बहाने, क्या ये ठीक बात है? क्या वो जीवन सुसमाचार के योग्य है? यदि सुसमाचार सही है तो हम वो सब कुछ बेच दें जो हमारे पास है और इसके लिए जिएं, एक मसीह ही हो जाएं। जी हाँ श्रीमान, आमीन। अब ध्यान दें जैसा कि हम बंद करते हैं, परंतु उनके बहाने, उनके धर्मसार और उनके नामधारी, ये एक पेड़ के समान है। मैं भाई बैंक की ओर देख रहा था, उस दिन मेरे पास एक देवदार का पेड़ था, मैंने इसे लगाया था जब मैं यहाँ लगभग 15 वर्षों पहले आया था या अधिक, और मैंने उन दाखलताओं को देवदार के पेड़ों पर बढ़ने दिया और हम वहाँ पर अपनी घास काटने की मशीन को वहाँ नहीं ले जा सके। और वहाँ घास का एक ठूंठ भी नहीं था, जो भी है। और मैं वहाँ चला गया, एक आरी दी और उन टहनियों को आरी से काट दिया, जब तक कि वो देवदार का पेड़ ऊपर नहीं आ गया, जहाँ आप उस घास काटने वाली मशीन के साथ उसके नीचे जा पाए। और अब उसके नीचे बहुत सुंदर घास जो आपने कभी देखी हो वहाँ पर है। ये क्या था? बीज वहाँ पर था, मुझे वहाँ धूप चाहिए थी। और जब तक नामधारी आपके बहाने हैं, उस बीज पर छाया रखने का यत्न करते हैं, जो कि वास्तव में आप जानते हैं कि बीज वहाँ पर है, आप लूत का भाग ले रहे हैं। उन चीजों को वहाँ से फेंक दें और सुसमाचार का उजियाला उस पर चमकने दें, यीशु मसीह की सामर्थ्य। जी हाँ, उजियाले को उससे अलग रख रहे हैं जो उसे जीने नहीं देगा, क्योंकि यदि कभी उजियाला उस पर पड़ेगा, ये जीवन को ऊपर ले आएगा। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि उस प्रकार की सभाओं में ना जाएं, वे डरते हैं कि इस प्रकार का उजियाला उनके सदस्यों पर ना पड़ जाए। उस कुएं वाली स्त्री को याद रखें, वो एक वेश्या थी। वहाँ वे याजक खड़े थे, उन्होंने नतेल को बताते देखा, मैंने तुझे देखा जब तू अंजीर के वृक्ष तले था, और याजकों ने कहा वो बालजबूब है, ये भावी कहने वाला है, ये शैतान है। ये छोटी स्त्रियां जब वो वहाँ पहुँची अपनी अनैतिकता की अवस्था में, छह पुरुषों के साथ रह रही है, और जब वो वहाँ उस अवस्था में पहुँची जिस स्थिति में वो थी, और यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, बातचीत शुरू हो गई। उसने कहा जा अपने पति को यहाँ बुला कर ला। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है। कहा तूने सच कहा है, तेरे पास पांच हैं और एक जिसके साथ तू रह रही है तेरा पति नहीं है। उसने कहा मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। श्रीमान, मैं जानती हूँ कि जब मसीहा आएगा वो ये करेगा। यीशु ने कहा मैं वही हूँ। ये तय हो गया। जब उजियाला उस बीच पर पड़ा जो उस पुरानी वेश्या में रखा था, तो वेश्या के दिन समाप्त हो गए थे, और वो सड़क पर परमेश्वर की महिमा करते हुए निकल गई। कहा आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे वे बातें बता दी जो मैंने की हैं, क्या ये तो मसीहा नहीं है? ये क्या था? वो उजियाला उस बीज पर पड़ा जो वेश्या की छाया में पड़ा था। जी हाँ श्रीमान, अब आइए इसे ये कहते हुए बंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास और कितने पन्ने हैं, परंतु मैं निश्चय ही उन्हें नहीं लूंगा, लगभग 10 हैं, परंतु ये बस लगभग आधा हो गया। परंतु आइए ये कहते हुए बंद करते हैं, आइए किसी चीज की तुलना करते हैं एक बार, एक जीवन की जो योग्य है। चलिए संत पौलुस के जीवन की तुलना युवा धनी व्यक्ति से करते हैं। एक ही उजियाला दोनों मनुष्यों पर चमका, दोनों के पास एक सा निमंत्रण यीशु मसीह की ओर से था। ये ठीक बात है, वे दोनों ही अच्छे प्रशिक्षित थे वचनों में, वे दोनों धर्म ज्ञानी थे सदस्य। यीशु ने धनी युवा शासक से कहा आज्ञाओं को मान, कहा ये तो मैं अपने बालकपन से करता आ रहा हूँ। वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति था, ऐसे ही पौलुस दोनों वचन में पूरी रीति से प्रशिक्षित थे, परंतु दोनों के पास एक वचन था, एक के पास ज्ञान के द्वारा और दूसरे वाले के पास जीवन का जीवांश इसमें था। जब उजियाला पौलुस के सामने चमका, उसने कहा प्रभु तू कौन है? कहा मैं यीशु हूँ, मैं यहाँ हूँ। फिर वो तैयार था। उजियाला दोनों व्यक्तियों पर चमका, एक अंकुरित हो गया था, दूसरा नहीं। इसी प्रकार से आज है, कलीसिया आत्मिक, कलीसिया स्वाभाविक। धनी व्यक्ति के पास उसके अपने बहाने थे, वो ये नहीं कर सका। वो इस संसार के बहुत से मित्रों से भारी हो गया, वो साथियों को नहीं छोड़ना चाहता था। आज बहुत से लोगों के साथ यही मामला है। आप सोचते हैं क्योंकि आप एक सराय से जुड़े हैं, आप इसे नहीं छोड़ सकते, उस भाईचारे को, वे सब पीते हैं और इस प्रकार की चीजें वे ये करते हैं। ठीक है, उनके साथ चलें। सराय के विरोध में कुछ नहीं है, कलीसिया के विरोध में कुछ नहीं है, मैं आपके विषय में बातें कर रहा हूँ, समझे? जी हाँ, देखा, इसके विरोध में कुछ नहीं, क्योंकि छह में से आधा दर्जन दूसरे हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कलीसिया कुछ नहीं थी सिवाय एक सराय के, वो नामधारी, यदि वे परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। ध्यान दें, धनी व्यक्ति के पास उसके अपने बहाने थे, उसने अपनी गवाही कभी नहीं छोड़ी। यद्यपि हम पाते हैं कि उसका व्यापार बढ़कर बड़ा हो गया, उसके पास ज्ञान था, और वो ऐसे स्थान में पहुंचा कि जब तक कि उसने नए गोदाम अपनी चीजों को रखने के लिए नहीं बना लिए, और जब वो मरा और कुछ स्नातक अपने गोल कॉलरों के साथ उसका अंतिम संस्कार प्रचार किया गया, कोई संदेह नहीं। और जब उसने किया, हो सकता है उसने कहा, उन्होंने झंडा आधा चढ़ाया और कहा हमारा प्रिय प्यारा भाई, इस नगर का मेयर अब सर्वशक्तिमान की बाहों में है, क्योंकि वो इस कलीसिया का एक बड़ा सदस्य था, उसने ये वो ये किया और इस प्रकार से। और बाइबल ने कहा नरक में उसने आंखें उठाकर देखा, पीड़ाओं में पड़े, समझे? और याद रखें, वो अब भी नरक में अपनी आदत को बनाए हुए है। उसने लाजरस को अब्राहम की गोद में देखा और उससे कहा पिता अब्राहम, लाजरस को नीचे भेज दे। यहाँ अब भी उसे पिता कह रहा है, समझे? उसने अपना ज्ञान लिया और एक बुद्धिमान कलीसिया में चला गया। जब उजियाला उस पर चमका, उसने इसका इनकार कर दिया। यदि क्या ये आज आधुनिक चलन नहीं है कलीसिया का, मैं ये नहीं जानता। कोई मतलब नहीं, परमेश्वर उनके मार्ग में क्या चमकाता है, अग्नि का स्तंभ या ये जो भी हो सकता है। वे अब भी अपने ज्ञान के साथ हैं, वे इसकी व्याख्या कर सकते हैं और बुद्धिमान झुंड में जाते हैं अपनी सामाजिक स्थिरता के लिए। परंतु पौलुस तो पहले ही सामाजिक स्थिरता में था, उस महान ज्ञान के साथ, गैमलियल की अधीनता में एक महान ज्ञानी, महायाजक का दाहिना हाथ। इतना ही नहीं, वो याजक के पास तक गया और उससे आज्ञा पत्र लिया कि सारे पवित्र शोर करने वालों को जेल में डाल दे। परंतु जब उसके मार्ग में उजियाला चमका और उसने वही अग्नि स्तंभ देखा जिसने इसराइल की जंगल में होते हुए अगुवाई की, यीशु मसीह था, उसने कभी कुछ जो जाना था सब छोड़ दिया, वो जीवन में आ गया। क्या आप उस धनी व्यक्ति के जीवन को सुसमाचार के योग्य कह सकते हैं जो उसने सुना? यद्यपि वो एक विश्वासी था, क्या आप उस प्रकार के जीवन को पुकार सकते हैं? उन बुद्धिमानों और मनोरंजनों के बीच में उस रात्रि वहाँ पर जैसे सूरज नीचे न गया, एक सिक्की डबल रोटी दे रहे हैं और हो सकता है एक याजक प्रार्थना कर रहा हो इन सब के ऊपर, और उसके पास मनोरंजन थे और एक भिखारी वहाँ नीचे उसके फाटक पर पड़ा हो और उसने अपनी डबल रोटी दी और परमेश्वर में अपने बड़े विश्वास के विषय में बातें की हो और दिन निकलने के पहले अगली सुबह इसके पहले कि सूर्य ऊपर आए वो नरक में था। ये ठीक बात है, आपकी बुद्धिमानी वहाँ है। परंतु पौलुस जब उजियाला उस पर चमका, आइए इसके जीवन की तुलना करें और देखें कि ये योग्य है कि नहीं। क्या हुआ जब पौलुस उस पर उजियाला चमका? उसने अपना सारा ज्ञान छोड़ दिया और उस बुद्धिमानों के झुंड से अपने आप को अलग कर लिया और वो यीशु मसीह के आत्मा में चलने लगा। परमेश्वर की महिमा हो। उस समझदारी के साथ जितना वो हो सकता था, उसने यहाँ तक कि कभी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कभी नहीं किया। जब वो उन कुरिन्थियों के बीच आया, उसने कहा, मैं कभी भी तुम्हारे पास मनुष्य की बुद्धि के साथ नहीं आया, मैं कभी भी तुम्हारे पास बड़े बड़े शब्दों के साथ नहीं आया, क्योंकि तुम अपना विश्वास उसमें रखते हो, परंतु मैं तुम्हारे पास साधारणता में आया, यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ में, ताकि तुम्हारा विश्वास उसमें हो। वहाँ एक जीवन है, ध्यान दें। उसने कभी अपनी शिक्षा का प्रयोग नहीं किया, वो कभी बुद्धिमानों के साथ नहीं चला, वो मसीह के आत्मा के साथ चला, नम्र परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी, जब ये उनके मतसारों के बहुत ही विरुद्ध था। परंतु पौलुस ने उजियाला देखा और उसमें चला गया। ठीक बात है, मसीह के जीवन को, यीशु मसीह को उस युग में परावर्तित किया जिसमें वो जिया, ताकि लोग परमेश्वर के आत्मा को उसमें देख सकें। और नम्र ने इसका विश्वास किया, इतना कि वे अपने रुमाल भी लाना चाहते थे, वे उसकी देह से छुआ लेंगे, और उन्होंने विश्वास किया इतना कि वो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व है, और यहाँ तक कि वो जो कुछ छुएगा, उन्होंने विश्वास किया कि वो आशीषित हो गया। जी हाँ, वो क्या व्यक्ति था? उसने अपना जीवन, अपना धन और हर चीज को जो उसके पास थी, उसकी शिक्षा, सब भूल गया कि मछुआरों के साथ चले और भिखारियों और गलियों के आवारा कि अपने प्रेम का उजियाला यीशु मसीह को चमकाए। उसने कहा, मैंने 49 बार अपनी पीठ पर कोड़े खाए, मुझे परेशानी नहीं हुई। ये भी कहा, मैं अपनी देह पर यीशु मसीह के निशान रखता हूँ। वो छोटा बेचारा व्यक्ति इतनी बुरी अवस्था में, उसने कहा, मैं अपनी देह यीशु मसीह के दागों को लिए फिरता हूँ। कितना अंतर है इन महान ऊंचे पद वालों से जिनके चारों ओर याजक रहते हैं। और जब वो रोम में था और कोई उसके साथ नहीं खड़ा था और वे एक मंच बना रहे थे कि उसके सिर को वहाँ काट दें, वहाँ जहाँ उसने ये बताया, ओ प्रभु, उसने कहा, वहाँ मेरे लिए एक ताज रखा है कि प्रभु धर्मी न्यायी मुझे उस दिन देगा, और न केवल मुझे परंतु अब उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये वो जीवन है जो सुसमाचार के योग्य है। या एक पुत्र, वो मसीह के लिए खड़ा हुआ कि सुसमाचार उसके द्वारा परावर्तित हो। इसके पहले उसने किया, वो गया और सुसमाचार को सीख लिया, अरब को चला गया और 3 वर्षों तक रुका रहा और पुराने नियम को लिया और पुराने नियम के द्वारा दिखाया कि वो यीशु मसीह था, और उसने इसे अपने आप से परावर्तित होने दिया उन नम्र लोगों के झुंड को, ताकि वो जब उसने कहा, मैं जानता हूँ कि कैसे पेट भरा जाता है और मैं जानता हूँ कि कैसे भूखा और कमियों में रहा जाता है। एक मनुष्य उसकी जैसी शिक्षा के साथ और उस जैसा ज्ञानी वहाँ खड़ा है, गैमलियल की छात्रवृत्ति के साथ, एक महानतम शिक्षक वहाँ उस दिन का था और महायाजक के हाथों में हाथ डाले खड़ा है। भाई, वो लाखों डॉलर के योग्य था और वो सब प्रकार की इमारतें, यह ठीक बात है, परंतु उसने कहा मैं, उसके पास सिवाय एक कोट के कुछ नहीं था। और देमास ने एक मनुष्य को इस प्रकार की सेवकाई के साथ देखा। दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय, उसने कहा देमास मुझे छोड़कर चला गया और सारे दूसरे लोग इस वर्तमान संसार के प्रेम में। कहा जब तू आए मेरा वो कोट लेते आना जो मैं वहाँ छोड़ आया, अब ठंड होती जा रही है। एक मनुष्य इस प्रकार की सेवकाई के साथ और केवल एक कोट हो सका, परमेश्वर की महिमा हो। मुझे संत मार्टिन की याद आती है जब वो सुसमाचार के लिए खड़े होने का यत्न कर रहा था, और सारी बातें इसके पहले कि उसका मत परिवर्तन हुआ था, उस प्री नीसियन या नीसियन सभा में, नीसियन फादर्स इतिहास में, एक दिन वो वहाँ फाटक से निकल रहा था। वो फ्रांस की यात्रा से था और वहाँ लोग थे। एक बूढ़ा फटेहाल वहाँ पड़ा था, बिना कपड़ों के मर रहा था, और उन्होंने ये नहीं किया, वे पास से निकल गए और उस मामूली व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। संत मार्टिन वहाँ खड़ा हो गया और उसे देखा। उन्होंने कहा वो हर सिपाही के पास था। उनके पास उनका जूता चमकाने के लिए एक आदमी था, और उसने अपने सेवक के जूते चमकाए, और उसने अपना कोट उतारा और एक चाकू लेकर उसे आधा काट दिया दो में उसकी तलवार से, और उस बूढ़े फटेहाल को उससे लपेट दिया। कहा हम दोनों जी सकते हैं। वो घर गया और पलंग पर लेट गया, वहाँ पड़े हुए बूढ़े व्यक्ति के विषय में सोच कर रोया। किसी चीज ने उसे सीधे सीधे जगाया। उसने देखा वहाँ कमरे में यीशु मसीह को उसी कपड़े के टुकड़े में लिपटे खड़े देखा जो उसने भिखारी के लपेटा था। कहा तूने जो इन छोटे से छोटे के साथ किया, तूने मेरे साथ किया। वो जीवन सुसमाचार के योग्य है। आप जानते हैं उसने कैसे अपने जीवन को मोहर बंद भी किया, या आप नहीं जानते? पॉलीकार्प को देखिए, रोमन कैथोलिक कलीसिया के विरोध में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के लिए खड़ा हुआ, और उन्होंने उसे जीवित जला दिया। एक स्नान गृह को तोड़ा और उसे जलाया। इरेनियस को देखिए, उन बाकियों को जो इसके कारण सताए गए थे, जीवन योग्य है। देखिए पौलुस ने क्या कहा, इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में कहा उन्हें आरे से चीरा गया, दो हिस्से कर दिया, भटकते फिरे भेड़ों और बकरियों की खालों में और बीहड़ में थे और निस्सहाय और आदि आदि जिए, और संसार उनके योग्य न था। आप वही हैं, वो जीवन सुसमाचार के योग्य है। मैं और आप उनके सामने न्याय के दिन कैसे सामना करने जा रहे हैं इस प्रकार के मनुष्यों के साथ। अब पौलुस को देखें, हम आगे बढ़ेंगे। वो सुसमाचार के लिए खड़ा हुआ कि यीशु का जीवन उसमें से होकर बहे। कोई मतलब नहीं कैसे, कोई मतलब नहीं उसके विषय में कोई क्या सोचे। यहाँ महायाजक क्यों, वो गया और उसका सिर काट दिया गया। इसके लिए वो सुसमाचार के लिए योग्य प्रतिनिधि था। होने दिया, वहाँ देखिए, कोई मतलब नहीं लोगों ने क्या सोचा। अनंत जीवन बहाव उसके द्वारा बहाया गया, इतना कि उसने कहा मैं अपने भाइयों के लिए मसीह से श्रापित ठहरूंगा। अब आप जानते हैं आप क्या करते हैं जब आप अनंत जीवन पाते हैं। ये आपका प्रश्न है, ये आपका उत्तर है। आप बुद्धिमान का पक्ष लेते हैं या ये पक्ष, यदि वास्तव में आपके पास अनंत जीवन है। यही जो हुआ, यही जो घटित हुआ। पौलुस मसीह से श्रापित होने को तैयार है कि उसके लोग, अंधे अनपढ़ लोग जो उसके सुसमाचार को नहीं सुनेंगे। मैं सोचता हूँ मुझे अपने पर लज्जा आती है। मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार था क्योंकि वे मेरी नहीं सुनेंगे। मुझे प्रायश्चित का सा अनुभव हुआ और मैंने प्रायश्चित किया। समझे? ध्यान दें, परवाह नहीं दूसरों ने क्या सोचा। इस प्रकार का जीवन सुसमाचार के योग्य है। अब मैं बंद कर रहा हूँ। वो धनी मनुष्य, जैसा कि आप में से बहुत से हैं, बंद कर लिया और जीवन के वचन को अस्वीकार कर दिया, और एक कलीसिया के सदस्य हो गए और एक जीवन दर्शाया जो बाइबल में सिद्ध है। सुसमाचार के योग्य न थे जो उनसे स्वीकार करने को कहा गया। ये ठीक बात है। कैसे सुसमाचार इस प्रकार के अंधेरे उजियालों से चमक सका जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं। अब केवल एक ही मार्ग है कि योग्य जीवन जिए, कि मसीह और उसके वचन, जो कि वो वचन है, स्वयं से सिद्धता के साथ आपसे परिवर्तित हो, यहाँ तक परमेश्वर को प्रमाणित कर दे जो उसने वचन में कहा। क्योंकि मसीह मरा कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने एक बलिदान प्रस्तुत करे, और ये पवित्र आत्मा के रूप में वापस आया कि अपने आप को अपने लोगों में से परावर्तित करे, कि अपने कार्य को आगे बढ़ाए, अपने आप को आपके द्वारा दिखाए कि उसके वचन की प्रतिज्ञा पूरी हो इन आने वाले दिनों में। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सुना, जब उसने सुना मसीह आया और मसीह जल में उतरा, और यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना। किसी और ने इसे नहीं देखा, परंतु उसने इसे देखा कि ज्योति स्वर्ग से उतर रही है एक पंडुकी के समान, और एक आवाज कह रही है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। उसने इसे उतरते देखा, और यीशु जल में गया, इमैनुएल, इसके पहले कि एक प्रचारक जो एक अतिवादी समझा जाता था उस जल में गया लोगों के सामने और कहा, मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। यूहन्ना ने कहा, प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास क्यों आया है? दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, एक भविष्यद्वक्ता और उसका परमेश्वर। आमीन। क्या मैं खड़े होकर ये देखना पसंद नहीं करूंगा? देखिए, वे कठोर गहरी आंखें यूहन्ना की नीचे झुकी और उन कठोर गहरी यीशु की आंखों को देखा, शरीर में एक दूसरे के चचा जात भाई। यीशु ने कहा, यूहन्ना अब तो ऐसा ही होने दे, ये हमारे लिए आवश्यक है कि सारी धार्मिकता को पूरा करें। यूहन्ना ने सोचा, हाँ वो ये एक बलिदान है, इसके पहले कि बलिदान को उपस्थित किया जाए उसे धोना आवश्यक है। तब उसने कहा, आ जा, और उसने उसे बपतिस्मा दिया। आमीन। दूसरे शब्दों में हमारे लिए आवश्यक है कि सारी धार्मिकता को पूरा करें। यीशु ये जानते हुए कि वो पुरुष सच्चा था, कहा, इसके समान कोई पुरुष स्त्री से कभी नहीं जन्मा, वो एक भविष्यद्वक्ता से अधिक है, तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, ये भविष्यद्वक्ता से बड़ा है। और यीशु उसके हृदय को देख रहा था और ये जान रहा था, उसका अपना चचेरा भाई उससे वहाँ आमने सामने मिला। यूहन्ना ने कहा, प्रभु मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू क्यों मेरे पास आया है? कहा यूहन्ना, अब तो ऐसा ही होने दे, परंतु याद रख, ये हमारे लिए आवश्यक है कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करें, और मैं एक बलिदान हूँ, मुझे उपस्थित होने से पहले धोया जाना चाहिए। ओ प्रभु, और जब आज सांझ के उजाले चमक रहे हैं, जब कोई मनुष्य अपनी सही मनोस्थिति में नहीं है, परंतु क्या नहीं कहा जा सकता कि कोई भी बाइबल विद्वान जिसने बाइबल में देखा जानता है कि ये अंतिम दिन है? तब ये हमारे लिए आवश्यक है कि इन बड़ी दीवारों से नीचे आ जाएं या इन चीजों से अलग हो जाएं और यीशु मसीह की धार्मिकता में आ जाएं इस अंतिम दिन में और परमेश्वर की मोहर को ले लें, इसके पहले शैतान हमें पशु का चिन्ह दे दे। ओ प्रभु, हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस दिन का उजियाला आप में उठे, कि परमेश्वर के आज्ञाकारी दास हो जाएं, और फिर आत्मा के फल आपके जीवन में सदा रहें, और ये वो जीवन है जो सुसमाचार के योग्य है। बंद करते हुए मैं ये कह दूं, केवल एक मार्ग है, केवल एक मार्ग है कि आप सुसमाचार के योग्य जीवन जी सकते हैं, कि स्वयं सुसमाचार का हर बिंदु आप में आए और अपनी प्रतिज्ञाओं को परावर्तित करे, उन्हें प्रमाणित करे, परमेश्वर आप में जिए कि आज के दिन की प्रतिज्ञा का समर्थन करे, जैसे कि यीशु ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना ऐसा ही होने दे, ये ठीक बात है, परंतु हम लोग इस दिन के संदेश वाहक हैं और हमें सारी धार्मिकता पूरी करनी है, और यदि हम आज के दिन के मसीही हैं, तो यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें और वो वचन है, इसका इनकार ना करें, कहें कि यही सत्य है, और इसे अपने हृदय में जगह दें, आत्मा के फल पर ध्यान दें, आप पर और हर प्रतिज्ञा को पूरा करें जो उसने बाइबल में की है। परमेश्वर अपना वचन पूरा करना चाहता है और उसके पास कोई हाथ नहीं है परंतु मेरे और आपके, उसके पास आंखें नहीं है परंतु मेरी और आपकी, उसके पास जुबान नहीं है परंतु मेरी और आपकी। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, डालियों में फल लगते हैं, दाखलता डालियों को शक्ति देती है, ये जीवन जो योग्य है। मेरी प्रार्थना है उनके लिए जो रेडियो पर या टेप के देश में, और वे जो उपस्थित हैं, होने पाए सारे अनुग्रह का परमेश्वर स्वर्ग का हम पर अपने धन्य पवित्र आत्मा को हम सब पर चमकाए, कि हम आज रात्रि से आगे को जीवन को जी सकें, कि परमेश्वर कहेगा, मैं आनंदित हूँ, उस अनंत आनंद में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए पृथ्वी के रचने से पहले तैयार किया गया है। स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आशीषें आप सब लोगों पर भेजे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप स्त्रियों को आशीषित करेगा आज रात्रि जिनके छोटे बाल हैं, इस प्रकार से कि आप देखेंगी और आप इस दिन के आधुनिक चलन से हट जाएंगी और अनुभव करें कि बाइबल कहती है कि आपको ये करना चाहिए, और यदि आप अनैतिक कपड़ों के पहनने के दोषी हैं, कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके हृदय पर अपना अनुग्रह बरसाए कि आप इसे फिर कभी ना करें, कि इसके लिए फिर कभी दोषी ना ठहरें, पवित्र आत्मा आप पर इसे उजागर करे और आपको दिखाए। होने पाए जो बगैर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के हैं, आप पुरुषों जो पत्नियां आपके पास हैं और उन्हें घर का स्वामी होने दें और आपकी अगुवाई करे। होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि अपना पैर जमाए और उस स्त्री को वापस उसकी सही मनोअवस्था में वापस लाए। जी हाँ, और अनुभव करें कि मसीह में वो आपका स्थान है, न कि एक नियंत्रण करने वाला, परंतु आप घर के स्वामी हैं। याद रहे, वो तो मूल सृष्टि में भी नहीं थी, वो तो केवल एक उप उत्पाद है आपकी, जो कि परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई है कि आपकी देखभाल करे, आपके कपड़े साफ करे, आपका खाना तैयार करे और आदि आदि। वो आप पर तानाशाह नहीं है। तुम अमेरिकन स्त्रियों अपने चेहरों पर रंग पोत कर इधर उधर भागी फिरती हो और तुम्हारी नाक ऊपर हवा में वर्षा होगी तुम्हें डुबा देगी, और तब सोचती हो कि तुम एक प्रकार की तानाशाह हो, तुम कोमल हो, परंतु न कि परमेश्वर का वास्तविक पुत्र। ठीक है, होने पाए परमेश्वर आपको पुरुषों का अनुग्रह परमेश्वर के पुत्रों के समान देने पाए कि इस प्रकार की निर्थक बातों को रोके। ये ठीक बात है। होने पाए वो आपको अनुग्रह दे कि उन सिगरेटों को फेंक दें, उन गंदे चुटकुलों को सुनना छोड़ दें, वे सारी निरर्थक बातें हैं। परमेश्वर के पुत्र हो जाएं कि हम उस जीवन में चल सकें जो कि सुसमाचार के योग्य है। और कोई सड़क पर जाता है, कहता है यदि कभी कोई मसीही था तो वो जा रहा है, वहाँ वो जाता है कि परमेश्वर अपने को उसके द्वारा दिखाता है और वो व्यक्ति एक वास्तविक मसीही है जो कभी हुआ था। आप सोच सकते हैं वो पुराने चलन की दिखती है, वो एक सच्ची महिला है, वो ये है एक सम्मानजनक मसीही बने, क्योंकि हम यहाँ परदेशी हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर ऊपर है। हम एक राजा के पुत्र और पुत्रियाँ हैं, एक विशेष राजा के। हम हमारे जीवन सम्मानित जीवन है, हम एक जीवन जिए जो आदर वाला होगा। ये बात जिसका हम दावा करते हैं कि एक मसीही हैं, और यदि आप उस प्रकार का जीवन नहीं जी सकते तो फिर मसीह कहलाना बंद कर दें, क्योंकि आप केवल एक निंदा का कारण हैं। धन्यवाद लोगों, ये गर्म रात्रि है, यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कोई भी नष्ट नहीं होगा उस दिन। मैं विश्वास करता हूँ कि आप और मैं मिलकर परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाएंगे, ताकि मैं इस योग्य हो सकूँ कि सदा उसके लिए खड़ा हूँ जो सत्य है, आपको आघात पहुँचाने के लिए नहीं, न ही कभी आपसे आहत होने को, समझे। यदि मैं सही प्रकार का पिता होऊंगा, यदि मैं अपने बच्चों को कुछ भी करने दूं, मैं उनको सही करूंगा। कोई भी प्रेम यही करेगा, प्रेम सही करने वाला होता है। मुझे याद है कि आपने मुझे एक टिप्पणी लिखी थी उस दिन, पैट वो मेरे पास अब भी है और प्रेम सुधार करता है, बाइबल ऐसा कहती है, और यदि ये ठीक नहीं है, यही कारण है कि परमेश्वर हमें ठीक करता है, वो हमसे प्रेम करता है। होने पाए अब से हम एक जीवन जिए जो योग्य हो, मिठास और कोमलता के साथ। कोई ध्यान ना दे, कहे भाई धन्य परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि ये उसके पास है। वो अन्य भाषा में बोली, वो आत्मा में नाची, ये ठीक बात है, परंतु यदि उसमें आत्मा के फल नहीं है तो आत्मा वहाँ नहीं है, वो केवल किसी प्रकार के आवेशों की नकल कर रही है या कुछ, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल आत्मिक फल का जीवन जी सकता है, केवल इसी मार्ग से वो ये कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं एक क्षण के लिए। होने दे, परमेश्वर जिसने अपना उजियाला इस अंत के दिन में चमकाया है जो मेरे सामने है, उसकी बाइबल का और इन स्वर्गदूतों के चित्र, ये रहस्यमय ज्योति पिरामिड के रूप में, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ये वहाँ कैसे है, वे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। परंतु पिता, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें एक महीने पहले बताया, इसके पहले ये घटित हो, और हम आपके आभारी हैं। वे लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, प्रभु आज रात्रि पाप से दूर चले जाएं, अविश्वास से। होने पाए जैसे मुझे अपने बहनों के विरोध में बोलना पड़ा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनसे प्रेम नहीं करता प्रभु, परंतु मैं देखना नहीं चाहता कि शैतान उन्हें उड़ा कर ले जाए जब तक वे मर कर गिर जाएं इन्हीं दिनों में, और आपसे उस अवस्था में मिलने का यत्न करूं परमेश्वर के सत्य को सुनने के बाद। इस प्रकार से वे इस बात को अनुभव करें, ये उन्हें स्वयं ही करना है कि जाकर वचनों में ढूंढें और देखें यदि ये ठीक है। अपने घुटनों पर आएं, तब निष्कपटता से कहें, परमेश्वर क्या ये सत्य है, तब ये बहुत आवश्यक हो जाएगा प्रभु यदि वे इसके प्रति सच्चे हो जाएं, क्योंकि आपका वचन सत्य है। लोग बैठे हुए हैं, उनमें से बहुतों के पास वे बातें होंगी जिससे उन्हें आघात लगा होगा, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बातें की हैं और वे शांत बैठे और सुना। घड़ी बीत रही है, सांझ के समय में देरी हो रही है, और ये समय में भी देरी हो रही है जिसमें हम रह रहे हैं। सूरज नीचे जा रहा है, संसार ठंडा हो रहा है, परमेश्वर अंधकार जल्द ही छा जाएगा और फिर प्रभु का आगमन की कलीसिया को उठा ले। प्रभु, हम इसके लिए आपका कितना धन्यवाद करते हैं। हम आप प्रार्थना करते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी दिव्य उपस्थिति से आशीषित करेंगे। हर जो इस टेप को सुनता है प्रभु, सारे संसार में वे उन सारे पुराने धर्मसारों और चीजों से अलग हो जाएं और आकर जीवित परमेश्वर की सेवा करें, आकर उसमें खर्च करें, दक्षिण की रानी के समान करें। वो आई, 3 महीने लगे कि वहाँ पहुँचे जहाँ वो मनुष्य था जो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहा था या स्वर्ग का परमेश्वर सुलेमान। यीशु ने कहा वो पृथ्वी की दूसरी छोर से आई कि सुलेमान की बुद्धि की बातें सुने, और देखो यहाँ सुलेमान से बड़ा है। और हम जानते हैं सुलेमान से बड़ा यहाँ पर है, वो महान पवित्र आत्मा यहाँ पर है, लोगों में होकर कार्य कर रहा है। पिता, हम इसके लिए आपका कैसे धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब आशीष है हमारे प्रिय पास्टर भाई नेविल को आशीष मिले। प्रभु, जैसे मैं उन्हें देखता हूँ, मैं उनके प्रेम के परिश्रम के लिए सोचता हूँ, मेरा हृदय बस उछलता है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, उसे देखते हुए जैसे वो अपनी पत्नी और अपने छोटे बालकों को देखता है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप उसे शक्ति दें, उसे साहस दें, उसे बहुत सारे वर्षों की सेवा के लिए आशीषित करें। ये महान कटाई का खेत जिसमें हम हैं, इन सारे सेवक भाइयों को जो आज रात्रि यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत से दूसरे स्थानों से आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके साथ होंगे। वहाँ जूनी और भाई रुडेल और वे बहुमूल्य पुरुष लोग जो इस कलीसिया की छोटी कलीसियाएं यहाँ पर खड़े हुए समाचार के लिए उजियाले को थामे हुए हैं, नगर के विभिन्न भागों में इसी उजियाले के लिए, इसके लिए यत्न कर रहे हैं, उन लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। उनका उत्साह बढ़ाएं और उन्हें अनुग्रह दें कि इस महान परीक्षाओं में खड़े हों, और आदि आदि जो इस पृथ्वी पर मसीहों को सिद्ध करने के लिए आती हैं। बीमारों और अपाहिजों को चंगा करें प्रभु, इस आने वाले सप्ताह में हमारे साथ हों, हमें साहस दें। होने पाए ये छोटा टूटा फूटा संडे स्कूल का पाठ इस दिन का इनके हृदय से कभी दूर ना हो, ये इस पर दिन और रात ध्यान करें, इन आशीषों को प्रदान करें। पिता, ये मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप उसे प्रेम करते हैं, आप इसका विश्वास करते हैं, आइए हम अपने अच्छे गाने को फिर से गाएं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, जैसा कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बहन अनग्रीन कहाँ है, क्या वो यहाँ है? उनमें से एक या बहन जिसने पियानो बजाया, यहाँ एक महिला थी, मैं उसे नहीं देखता। जी हाँ, वो यहाँ है, महिला यहाँ है, ठीक है। आज रात्रि मैंने चाहा सारे सम्मान के साथ, परंतु मैंने भाई अनग्रीन को नहीं देखा। मैं उसे चाहता था कि वो मेरे लिए आज रात्रि गाए, तू कितना महान। मैं समझता हूँ भाई घर चला गया। देखिए, इस प्रातः मैंने उस गाने को सुना और निश्चय ही मैंने इसकी सराहना की। ओ प्रभु, ये बस मेरे हृदय में गूंज गया और मैं चाहता था कि उसे गाते हुए सुनूं, तू कितना महान। अब आइए हम गाएं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, हर कोई मिलकर। अब बस अपनी आंखें बंद कर लें, आइए अब उसकी ओर देखें, कहें प्रभु यदि मुझमें ये कोई भी शारीरिकता है, इसे इसी समय बाहर कर दें, इसे बाहर निकाल दें। और आप बाहर जो इस टेप को सुनते हैं, जब आप इसे गाने को सुने तो हमारे साथ गाएं, फिर ठीक अपनी कुर्सी में जहां आप बैठे हैं, यदि वहां कुछ है, यदि आप वचन से दोषी ठहरते हैं, यदि आप नहीं सोचते कि ये वचन है, तो वचनों में खोजें, देखिए यदि ये ठीक है, ये आपके लिए आवश्यक है, इसका अर्थ जीवन या मृत्यु है। और तब जबकि हम इस गीत को गाते हैं, यदि आपके जीवन में संसारिकता है, क्या आप अपनी कुर्सी से अपना हाथ नहीं उठाएंगे? क्या आपके बालकों और पत्नी ने अपने हाथ उठाए हैं? आपके प्रियजन जो आपके आसपास हैं, गाएं मैं उससे प्रेम करता हूं और अपना जीवन उसे दे दें, कहें प्रभु मुझे सारी बुराइयों से शुद्ध कर। जबकि हम इसे गाने को गाते हैं, हम खड़े हो जाएं। मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को चंगा करेंगे, ये जो इन रुमालों को अपनाने जा रहे हैं, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में आशीषित करता हूं, आमीन। और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। अब इस महान आशीष में बहन इसे बजाती रहें, अपनी आंखें बंद रखें और सोचें। अब एक मिनट के लिए आइए हम अपने हृदय में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझ में खोजें, क्या मैं आपसे वास्तव में प्रेम करता हूँ? आपने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरे वचनों को मानोगे। और फिर आप अपने हृदय में कहते हैं प्रभु मैं आपके वचन को मानूं, मैं इसे अपने हृदय में छिपा लूं कि फिर कभी आपके विरोध में पाप ना करूं, कि ये आपने जो कहा उसका अविश्वास करूं। अब जबकि हम गाते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ, आइए जो हमारे पास में है उससे हाथ मिलाएं, बस बढ़ें, कहें भाई या बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे और वास्तव में शांत रहें। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे भाई, मैं परमेश्वर आपको आशीष दे बहन और खरीदा, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे के वृक्ष। अब आइए हम अपने हाथ उसकी ओर उठाएं। मैं उससे प्रेम करता हूँ क्योंकि आपको वो मिला जो आप करना चाहते हैं, आपको छोड़ना है मुझे। और मेरे उद्धार को खरीदा कैलवरी के वृक्ष पर। आप उससे प्रेम करते हैं, क्या वो आश्चर्यजनक नहीं? मैं आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ बालकों, ये मेरा क्या भला करेगा यदि मैं यहाँ खड़े होकर इन बातों को कहूँ, यदि मैं अपने हृदय में ये न सोचूं कि इससे आपकी सहायता होने जा रही है। जब मैं थका हुआ और टूटा हुआ हूँ, मैं बड़ी कठिनता से यहाँ खड़ा नहीं रह सक पा रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं और मेरे जूते, मैं उनमें तब तक खड़ा रहता हूँ जब तक कि पसीना आ जाता है और सारी बातें, जब तक मेरे पाँव घिस कर खुरदरे नहीं हो जाते और मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब मैं और अधिक लड़का नहीं रहा और मैंने 3 या 4 घंटे का उपदेश दिए हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना और दिन रात जा रहा हूँ। मैं क्यों यहाँ पर खड़ा हूँगा ये करने के लिए? आप जानते हैं इन 30 वर्षों में यदि ये लोकप्रियता के लिए था मैंने इसे छोड़ दिया होता। आप जानते हैं मैं पैसा नहीं लेता, आप ये जानते हैं मैंने नहीं लिया। क्या मैंने कभी आपको प्रभु के नाम में कुछ बताया जो घटित नहीं हुआ? आप जानते हैं ये ठीक बात है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है जो मेरे हृदय में आप में से प्रत्येक के लिए है। मेरी इच्छा है मैं सकूँ, मेरी इच्छा है मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकूँ और कहूँ परमेश्वर मुझे उनकी सहायता करने दें, मुझे ये करने दें, मैं ये नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने ही आप खड़ा होना है, समझे? मैं विश्वास करता हूँ इन्हीं किन्हीं दिनों में हम सारे ऊपर जा रहे हैं और यदि हम सो जाएं उस समय से पहले मैं आपसे ले लिया जाऊं। याद रहे मैं आपसे वहां मिलूंगा, मैं जानता हूं ये वहां है, वही दर्शन जिसने आपको सारी बातें बताई सिद्ध होते हुए घटित होना है, ठीक जैसा उसने कहा है। इन सारे वर्षों में कोई नहीं ये कभी कह सकता है कि मैंने आपको कभी कोई ऐसी बात बताई जो घटित हुआ हो, सिवाय जो हुआ हो सारा संसार ये जानता है। आपने प्रचार मंच पर कभी नहीं देखा हर किसी को जो बताया सही सत्य था, समझे? ये सदा हुआ है, उसी परमेश्वर ने मुझे बीते हुए को देखने दिया, समय का पर्दा। मैंने उन स्त्रियों और पुरुषों को देखा, अपने बाहें मेरे चारों ओर डाल रहे थे और मुझे गले लगा रहे थे, बोले ओ भाई ब्रणम, मैं बस बैठ नहीं सकता, इसलिए यदि मैं थका हुआ हूँ जो भी है मैं जाऊँगा, मेरी पीठ दुखती है और मैं हर दिन, मैं 54 वर्ष का हो गया हूँ, आप जानते हैं आपको हर दिन अतिरिक्त परेशानी होती है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर मुझे थामे रहे, मुझे साथ साथ थामे रहे कि वचन का प्रचार करूं, तत्व पर खड़ा रहूं, जब तक मैं ये ना देखूं मेरा लड़का जोसेफ अच्छा बड़ा हो गया है और पवित्र आत्मा से भर गया, मैं इस पुरानी बाइबल को ले सकता हूं और उसके हाथ में रख दूं, कहूं पुत्र इसे अपने जीवन के अंत तक लेकर चलना, इस पर समझौता न करना। मैंने सोचा संभवतः बिली सुसमाचार प्रचार करेगा, परमेश्वर ने उसे कभी नहीं बुलाया, परंतु मैं विश्वास करता हूँ जोसेफ को, यहाँ तक कि छोटा औसत लड़का है वो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने उसे बुलाया है। यही कारण है कि बच्चे उसके साथ नहीं रह सकते, वो एक अगुआ है और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है। मैं उसे वचन के मार्ग में शिक्षित करना चाहता हूँ, वचन का मार्ग जो प्रभु का है, ताकि वो वचन को ना छोड़े। मैं इसे स्वयं करना चाहता हूँ यदि परमेश्वर की इच्छा है, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ और पीछे बैठूँ और उसे वहाँ प्रचार मंच पर खड़े हुए देख सकूँ, कहा ये वही सुसमाचार है जिसके लिए मेरे पिता खड़े हुए, वो वहाँ बैठे हैं बूढ़े और थके आज रात्रि, परंतु मैं उनका स्थान लेना चाहता हूँ और उनके जूतों में पैर डाले वहाँ खड़ा है, तब मैं ऊपर देखूंगा और कहूँगा प्रभु अपने दास को शांति में विदा होने दे, यही जो मैं जी से देखना चाहता हूँ जब तक वो समय ना आए। तब क्या हो यदि मैं दूसरी पीढ़ी में उठूंगा मैं नहीं सकता, मुझे इस पीढ़ी के साथ आना होगा, मुझे आपके साथ खड़ा होना है। आप लोग हैं जिनके लिए मुझे खड़ा होना है और परमेश्वर के सामने हिसाब देना है उस सुसमाचार का जो मैंने प्रचारा। क्या आप सोचते हैं कि मैं यहाँ आपको घुमाने का यत्न करने के लिए खड़ा हूँ किसी चीज से जो मैंने सोची सही थी? मैं आपकी हिम्मत बढ़ा रहा होता कि जाकर ये करना, परंतु मैं जानता हूँ कि ये सब गलत है। मैं आपको इससे बाहर निकालना चाहता हूँ, उसमें ले जाता है जो ठीक सच में अपने हृदय से परमेश्वर के पास मेरा लेखा है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हर एक से वास्तव में दिव्य मसीही प्रेम। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता मेरे भविष्य में क्या है, परंतु मैं जानता हूँ कि कौन मेरा भविष्य थामे हुए है, इसलिए मैं उसमें विश्राम करता हूँ। मैं इस प्रचार मंच को उस व्यक्ति को देता हूँ जिस पर मेरा सबसे बड़ा भरोसा है, यीशु मसीह के सेवक के समान, हमारा पास्टर भाई नेविल।